السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء کا ہم مطالعہ کریں, آیت نمبر 94 سے آغاز کریں گے. سات پر اور آخری رکوع ہے سورہ کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, آمین یا رب العالمین. یہاں سے اختتام تک ایمان بالآخرت کا ذکر آ رہا ہے اور شرائط قبولیت اعمال بیان ہو رہی ہیں. فرمایا کمائی یا عمل من الصالحات, اور جو کوئی کرے نیک اعمال, وہ مومن, اب وہ ہو بھی صاحب ایمان, فلا کفرانا لسعیہ, تو نہیں جو ہے رد کی جائے گی اس کی کوشش, وَإِنَّ لَهُ الْكَاتِبُونَ, اور بے شک ہم اس کو گویا لکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین بٹھائے اور وہ جو ایک ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے اور جو ہم اعمال کر رہے ہیں سب لکھے جا رہے ہیں, ہمارے اقوال بھی ہمارے اعمال بھی. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور ناممکن ہے کسی بستی والوں پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا, اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, کہ وہ یعنی لوٹیں گے ہمارے حضور میں, یعنی یہ یعنی جن لوگوں کو ہلاک کیا گیا وہ بالآخر اللہ کی جنابی میں لوٹنے والے ہیں. آگے جو ہے وہ بیان الساعة آ رہا ہے اور قیامت کی علامات کا ذکر آ رہا ہے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. اور پچھلی دفعہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ چین اور روس کے شمال مغربی میدانی علاقوں کے وحشی لوگ ہیں اور جو پہلے بھی آبادیوں پر حملہ کرتے رہے, اور ذوالقرنین نے پھر یہاں پر ایک 50 میل لمبی دیوار قائم کی تھی, اور یہی دور تھا جو ہوانگ لی نامی ایک بادشاہ نے دیوار چین بھی بنائی تھی جو کہ 1500 میل لمبی تھی انہیں سے بچنے کے لیے. فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ, اب وہ ہر بلندی سے نیچے اترتے چلے گے. تو ایکویٹر کے اوپر کا علاقہ ہے وہاں سے نیچے کی طرف آنا, یعنی یہ اصل آبادی نیچے ہی ہے تقریباً دنیا کی. یہ جو یوریشیا کہلاتا ہے یہاں پر 85% سے زیادہ دنیا کی آبادی اسی علاقے میں. تو بہرحال وہ بھی گویا اوپر میدانوں سے نیچے کی طرف جو ہے وہ ہر طرف سے آتے رہیں گے. ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا برآمد ہونا ہے, اور یہ بہت بڑا فساد دنیا میں مچائیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں ایک بیماری پیدا کر دے گا جس میں یہ سب ہلاک ہو جائے گی. فرمایا واقترب الوعد الحق, اور نزدیک آ گیا ہے وعدہ سچا یعنی قیامت کا. فإذا هي شاخصة الابصار, یک یک اوپر ہی اٹھی رہ جائیں گی آنکھیں. الذین کفروا, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا, اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم تو رہے غفلت میں اس آفت کے بارے میں. بل کنا ظالمین, بلکہ وہ اقرار جرم کریں گے کہ ہم ہی ظالم تھے. ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا. انکم ما تعبدون من دون اللہ, بے شک تم جنہیں پکارتے تھے پوچھتے تھے اس اللہ کے سوا, حسب جہنم, وہ سب ایندھن ہوں گے جہنم کا. انتم لہا واردون, اور تم سب اس میں جو ہے گویا وہاں پہ وارد ہو کر رہو گے. لو کان ہا اولائی آلہا, اگر ہوتے یہ بت باقی معبود, ما ورادوہا, تو وہ پھر نہیں جھونکے جاتے جہنم میں. یعنی جو ان بتوں کے پجاری ہیں اور یہ بت, یہ سب جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. آگے جو ہے بیان ہو رہا ہے وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یعنی یہ مشرکین اور ان کے باطن معبود یہ سب اس جہنم میں لگیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ, وہاں انہیں اس میں ان کا ہوگا چلانا. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, اب وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے, یعنی ان کی وہاں کچھ نہ سنی جائے گی. آگے اس آیت پر جو ہے مشرکین نے جو ہے مذاق کا اسے نقطہ بنایا. انہوں نے کہا یوں تو انبیاء کو بھی پوجا گیا, فرشتوں کو بھی ہم اللہ کی بیٹیاں کہتے, تو کیا وہ بھی جہنم میں ہوں گے؟ تو اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اِلَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى, اور یقیناً وہ لوگ جن کے لیے پہلے ہی مقدر ہو گئی تھی ہماری طرف سے نیکی, اولئک انھا مبعدون, اور وہی لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے. تو انبیاء اور فرشتے تو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, اور ٹھیک ہے ان کے ساتھ لوگوں نے اگر ظلم بھی کیا کہ انہیں خدائی میں شریک کر دیا تو اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں, और उनके लिए पहले ही मुकद्दर हो चुका कि वो अल्लाह की रजा हासिल करके रहेंगे और अल्लाह की रजा के मुकाम यानी जन्नत में होंगे। अब आगे अंजाम मोहसिनीन आ रहा है, ला यस्माउना हसीसा, और वो सुनेंगे भी नहीं उसकी आहट तक, वहम फी मश्तहत अनफुसहुम खालिदून, अब उन नेमतों में जिन्हें जहां चाहेंगे जो चाहेंगे उनके नफ्स उसमें हमेशा रहेंगे, ला यहज़ुनुहुमुल फज़ाउल अकबर, और नहीं गमजदा करेगी उन्हें वो जो है बहुत बड़ी क़यामत की आवाज, वततलक्काहुमुल मलाइका, अब मुलाकात करेंगे उनसे फरिश्ते, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुआदून, और वो कहेंगे ये है वो तुम्हारा दिन जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यौमा यत्कस्समा, और जिस दिन हम लपेट देंगे आसमान को, कतय्यिस सिजिल्लिल कुतुब, जिस तरह के लपेटा जाता है कागज जो है वो खतूत का, तो पहले खतूत लिखे जाते थे लंबे से जो है वो बार दफा कपड़े पर, और कागज को इस तरह रोल करके एक रोल सा बनाकर उसे रखा जाता था, तो बहुत लंबा सा भी खत हो वो रोल होके लिपट के बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, इसी तरह यहां कहा जा रहा है कि इतना बड़ा आसमान ही गोया अल्लाह लपेट देंगे ये पूरा। अब ये सारे मुतशाबिहात में से इसकी हकीकत से हम वाकिफ नहीं है। तो फरमाया कमा बदाना वला खल्क़िन नुईदुहु, और जिस तरह हमने पैदा किया था खलकत को उसी तरह हम दोबारा पैदा करेंगे, वादा अलैना, ये वादा है हमारे जिम्मे, इन्ना कुन्ना फाइलीन, और हम ऐसा जरूर करने वाले, तो जितने भी जानदार हैं उन्हें मौत के बाद दोबारा क़यामत के दिन जिंदा किया जाएगा। आगे बशारत आ रही है, वलकद कतबना फिज़्ज़बूर, और बेशक हमने लिख दिया था ज़बूर में, मिन बादे ज़िक्र यानी नसीहत के बाद, अन्नल अर्ज़ यरिज़ुहा इबादिया सालिहून, कि बेशक इस जमीन का मैं वारिस बनाऊंगा अपने नेक बंदों को, इन्ना फी हाज़ा लबलागा, बेशक इसमें पहुंचा देना है यानी इस कुरान में, लिक़ौमिन आबिदीन, इबादत जुदा लोगों को। आगे अमूमे बेसत रसूल बयान हो रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए नबी बेशक हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसमें तो एक तो ये पता चलता है कि आपसे किसी एक कौम एक इलाके और कुछ लोगों की तरफ नहीं भेजे गए बल्कि तमाम जहान वालों की तरफ भेजे गए, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर क़यामत तक जितने लोग आएंगे उन सब की तरफ आपकी नबूवत और रिसालत है। अलबत्ता यहाँ कहा गया है कि आप रहमत बनाकर तमाम जहान वालों के लिए भेजे गए, तो रहमत का मामला क्या है कि आपका दीन मुकम्मल हुआ, आपके तरीके ही बेहतरीन तरीके हैं, और इसी में तमाम इंसानियत की निजात है, यानी हर एक को उसका हक मिल गया है, ये वो शरीयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। आगे तौहीद का जिक्र, कुल इन्नमा युहा इलैया, ए नबी कह दीजिए कि बेशक वही किया जाता है मेरी तरफ, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि बेशक तुम्हारा माबूद तो बस एक ही माबूद है, फहल अंतुम मुस्लिमून, बस क्या तुम भी फरमाबरदार इख्तियार करते हो, फइन तवल्लौ फकुल आज़न्तुकुम अला सवा, बस अगर वो मोड़ लें तो नबी कह दीजिए कि मैंने तो बस तुम्हें बिल्कुल यकसा तौर पर बता दिया, आगाह कर दिया, वइन अदरी अकरीब अम बईद मा तुअदून, और मैं नहीं जानता क्या वो या वो करीब है या भी दूर है जिसका तुमसे वादा किया जाता है, यानी अजाब या आखरत दोनों का वादा था, नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा, दूसरा ये कि क़यामत आया चाहती है, तो आप फरमा रहे हैं कि मुझे भी नहीं मालूम कि वो कितना करीब है या कितना दूर है, इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौल, और बेशक वो जानता है जाहिर बात को भी जो कि कही जाती है, वयअलमु मा तक्तुमून, अब अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, तुम्हारी नीयतें इरादे क्या हैं इंटेंशन क्या है, उनसे भी अल्लाह वाकिफ है। अब हिकमत ताखीर अज़ाब भी बयान हो रही है, दो वही नादरी, मैं नहीं जानता, लअल्लहु फितनतुल्लकुम, शायद जो आजमाइश है तुम्हारे लिए, ये जो इसमें ताखीर है अजाब में, व मताउ निलाहीन, और फायदा उठाना है थोड़ी मदद तक के लिए, या तो इसमें भी फितना है आजमाइश है कि तुम मजीद से मजीद जो है नाफरमानियों में आगे बढ़ते रहो, या ये तुम्हें थोड़ी मोहलत है कि जो मजे करने चंद दिन के कर लो, फिर अजाब तो आ रही है और क़यामत तो आई जानी, आला रब्बी रब्बे हुकुम बिलहक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए ए मेरे रब, फैसला कर दीजिए इंसाफ के साथ, व रब्बुना रहमान, और हमारा परवरदिगार तो रहमान है, अल मुस्तआन अलामा तसिफून, और जिससे मदद की तलब की जाती है उन बातों में जो तुम बयान करते हो, यानी शिर्क और कुफर और जो तुम्हारी इस्लाम से मुखालफत है उसमें हम इससे मदद चाहते हैं, वो रहमान से ही मदद चाहते हैं। अगली सूरह सूरह हज, पांच मजामीन जो है इसमें आ रहे हैं, सूरत बरज़खी सूरत कहलाती है, بیٹھے گا. اس میں جو مضامین آ رہے ہیں اس میں پہلا مضمون ہے آخرت کا بیان اور اس کے حوالے سے, پھر دوسرا مضمون حج اور قربانی اور اس سے متعلق احکامات, پھر تیسرا مضمون آ رہا ہے قتال فی سبیل اللہ, اور چوتھا مضمون مشرکین سے جو کشمکش ان کی طرف سے مطالبہ معجزہ اور اس کا جواب, اور پانچواں مضمون جو ہے وہ قرآن کی دعوت کا بیان آ رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے مضامین سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے سیشن میں گزر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قیامت کے بیان سے آغاز ہو رہا ہے. جیسے کہا گیا تھا تین طرح کے نفقہ ہیں, جو پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اسے نفقہ الفضاعہ کہتے ہیں, اور اس میں یہاں ایک عجیب ہنگامہ شروع ہوگا اور اسی کے ذکر سے سورت کا بھی آغاز ہوا ہے. پھر دوسرا نفقہ تو سائقہ ہے جس میں ہر جاندار کو ماتاری ہو جائے گی. پھر تیسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اسے نفقہ القیامہ کہتے ہیں. ہم نے کہا تھا قیامت کے لیے اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے لیکن عربی میں دو لفظ ہے, الساعۃ اور القیامہ. الساعۃ کہتے ہیں دا ڈومز ڈے, دا ڈے آف ڈسٹرکشن, یعنی جب ہر چیز تباہ برباد کر دی جائے گی اور جب تمام جانداروں پر موت طاری کر دی جائے گی اسے کہتے ہیں الساعۃ, اور جب دوبارہ جانداروں کو زندہ کیا جائے گا اسے عربی میں کہتے ہیں القیامہ. ہم دونوں کو اردو میں قیامت ہی کہتے ہیں, اس لیے جو ہے سزا وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک روایت ہے کہ قیامت جمعے کے دن واقع ہوگی تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب جمعہ تو گزر گیا اب چھ دن جو ہے اب قیامت نہیں آ سکتی. وہ بھائی وہ ریزریکشن والی قیامت, دا ڈے آف ریزریکشن, جب اللہ تمام جانداروں کو دوبارہ کھڑا کریں گے وہ ہے جمعہ. لیکن ڈومز ڈے جو ہے الساعۃ اس کا کسی کو نہیں پتا, صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ کب ہوگی, تو اس کے لیے کسی دن کا تعین نہیں. اب آئیے پہلے نفقہ جو ہے نفقۃ الفضاء یا نفقۃ الاولی, اس کے اثرات بیان ہو رہے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے خطاب عام ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, فرمایا کہ انسانوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. ان زلزلہ الساعات شیء عظیم, اور بے شک یہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ آگے جو اس کے اثرات بیان ہو رہے ہیں اس میں خواتین پر اثرات اور مردوں پر اثرات. خواتین جو زیادہ معروف ہیں وہ اپنے جذباتی لگاؤ سے ہیں اور ان میں جذبات بڑے جو ہے کھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سے ہوتے ہیں, خصوصاً اپنے نامولود بچوں سے انہیں خاص محبت ہوتی ہے, وہ اس کی خاطر اپنی نیند اپنا سب کچھ قربان کرنے لگتی ہیں, اپنے سینے سے چمٹا کر رکھتی ہیں اور اپنی پروا بھول جاتی ہیں اس بچے کی خاطر. لیکن یہ قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ وہ اپنے نامولود بچوں سے غافل ہو جائیں گی. خبر اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنی عقل مندی عقل فراست پر زیادہ ناز کرتے ہیں, لیکن قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ وہ مرد ایسے ہوں گے جیسے یہ نشے کے عالم ہے. تو یہ تصویر کھینچی جائے گی. تو فرمایا یوم ترونھا, جس دن تم اسے دیکھو گے, تذہل کل موضعات عما ارضعت, تو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اسے جسے وہ دودھ پلاتی تھی, اپنے بچوں سے مائیں غافل ہو جائے گی. وتذعو کل ذات حمل حملہ, اور ڈال دے گی وقت سے پہلے ہی ہر حاملہ اپنا حمل. تو جب بہت ہی کوئی خوفناک منظر ہوتا ہے تو ڈر اور خوف ایسا ہوگا کہ حمل گر جائے گی, اور شیر خوار بچوں سے بھی. اب اس میں بالکل جنرل ہے مائیں, اب یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ تمام مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور وہ حاملہ جتنی بھی ہیں ان کے حمل گر جائیں گے, اتنا خطرناک منظر ہوگا. وترى الناس سکارا, اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ مست ہوں گے. وما هم بسکارا, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. تو یہ جو بے ہوشی ہوگی اور یہ مستی ہوگی وہ نشے کی نہیں ہوگی, بلکہ فرمایا ولکن عذاب اللہ شدید, مگر اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, انسان کی نادانی, اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيضٍ, اور اتباع کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. تو اللہ ایک ہے لیکن وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں, اس کے بارے میں مثالیں دیتے ہیں اور طرح طرح کے اپنے فلسفے بگاڑتے ہیں. آگے ولایت شیطان کا انجام بیان ہو رہا ہے. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ, اور لکھ دیا گیا اس پر کہ جو کوئی دوستی کرے گا ولایت کرے گا یعنی اس شیطان سے, فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ, تو وہ تو اسے گمراہ کر دے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ, اور اسے چلائے گا جہنم کے عذاب کی طرف. आगे सकलीन इंसान के मराहिल भी आ रहे हैं। तो बहरहाल ये बात जो है कुरान में कई जगह बता दी गई कि जो शैतान को दोस्त बनाएगा तो दुनिया और आखिरत में बर्बाद होगा। ये हमारे हाथ में होता है और बाद दफा उलमा ने इसे समझाया कि शैतान जो है वो दाने डालता है और ये गुनाहों के साथ बात दिखाता है। जब आदमी उसकी बातों में आगे एक दफा फंसता है तो हमेशा के लिए कैद हो जाता है। जैसे शिकारी परिंदों को पकड़ने के लिए दाने नीचे बिछा देता है लेकिन साथ ही जाल भी होता है। वो परिंदों को जाल नहीं नजर आता, उन्हें बस दाने देख रहे होते हैं, वो उसके लालच में उतरते हैं, हमेशा के लिए कैद हो जाता है। तो यही मामला शैतान का भी है, वो चंद सब बात दिखाता है और फिर आदमी जब उनकी खातिर उसकी बातों में आता है तो हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है। आगे मौत के बाद जिंदा किए जाने की अपनी दलील दी जा रही है। या युहन्नास, ए इंसानो, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम शक में हो दोबारा उठाए जाने के एतबार से, फैन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, तो बेशक हमने तो तुम्हें पैदा किया मट्टी से, सुम्मा मिन नुत्फा, फिर नुत्फे से, सुम्मा मिन अलाका, और फिर अलाका, अलाका कहते हैं कोई ऐसी शय जो किसी दूसरी शय से मुअल्लक हो या मुतअल्लिक हो। इंसान जब जनीन की कैफियत में होता है बिल्कुल छोटा तो अपनी माँ के रहम से मुअल्लक रहता है, उससे मुतअल्लिक होता है। आम वैसे आपको तर्जमे में जमे हुए खून की बूंद, इसका अक्सर लोगों ने तर्जमा किया है। सुम्मा मिन मुज़गा, फिर उस अल्लाह ने तुम्हें बना दिया मुज़गा। मुज़गा कहते हैं समथिंग दैट्स बीइंग च्यूड, तो जिस तरह आप च्युइंगम को जब हम चबाते हैं तो उस पर दांतों के निशान आ जाते हैं। तो एक सोमाइक स्टेज होती है इंसान की डेवलपमेंट की, उसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई चबा हुआ कोई चीज हो, तो उसे मुज़गा कहा गया। मुखल्लकत हो गैर मुखल्लका, यानी जो मुकम्मल होता है अधूरा भी होता है, लेकिन भाई ये ना लगो ताकि वो वाजे कर दे तुम पर, वह नुकरू फिल अरहाम मानशा, और हम ठहराते रहम में उसे जो जिसे चाहे। अब ये आज की साइंस कहती है कि एक दफा जो सीमेन इजैकुलेशन होता है तो 300 मिलियन स्पर्म जो है वो मौजूद होते हैं उसमें, लेकिन अल्लाह फिर उनमें से जिसे चाहता है उससे फर्टिलाइजेशन हो जाती है और वो रहम में जाकर उसे वो करार पकड़ता है। इला अजल मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक, यानी वलाए हमल तक जो अक्सर बेचते हैं जो है 7 से 9 महीने। सुम्मा मुखरिजुकुम तिफ्ला, फिर हम निकालते हैं तुमको बच्चा बनाकर। सुम्मा ले तबलुगु अशुद्दकुम, फिर हम जिंदा रखते हैं तुमको जो है तुम्हारी पुख्ता उम्र तक यानी जवानी तक। वमिनकुम मन युतवफ्फा, और तुम में से बात वो है कि वो कब्ज कर लिया जाता है या उसको जो है वो फौत हो जाता है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, और तुम में से बात वो भी है जो लौटा दिया जाता है एक रजील उमर तक यानी इंतहाई बुढ़ापे तक। उसमें कैफियत क्या होती है, लिकैला यअलमा मिन बादे इल्मिन शैया, ताकि वो ना जाने बात जानने के कुछ भी। वतरल आदा हामिदा, अब आगे ये एक तो यानी इंसान को अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, इसके हवाले से उसकी अपनी जिंदगी के मराहिल हैं और उसके डेवलपमेंट के मराहिल हैं कि किस तरह अल्लाह ने मिट्टी से बना दिया, फिर नुत्फा कैसा हकीर पानी है और उससे तुम अल्लाह ताला ने हम जैसे इंसानों को पैदा कर दिया, यानी इतना हकीर है कि हम उसका नाम लेना पसंद नहीं करते लेकिन हम बने उसी हकीर गंदे पानी से। तो जो अल्लाह नुत्फे से तुम्हें बना सकते हैं वो मौत के बाद क्यों नहीं खड़ा रह सकता, उसको अब तो कुछ था भी नहीं, अब तो फिर भी तुम्हारी हड्डियां और कुछ तो बाकियात है। इसी तरह अगली दलील जो है वो आफाकी आ रही है आसमान के हवाले से, और जो है यानी आफाकी मनाजिर को बयान करके बताया जा रहा है कि जो अल्लाह ये कर सकता है वो तुम्हें भी मरने के बाद जिंदा कर सकता है। वतरल अर्दा हामिदा, और तुम देखते हो जमीन को मुर्दा पड़ा हुआ। फैजा अंजलना अलैहल मा, पर जब हम नाजिल करते हैं उस पर पानी, एहतज्जत वरबत, तो हरकत में आ जाती है, उभरती है, यानी उसमें एकदम से जो है नबातात पैदा होने शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल सादी पड़ीली बंजर जमीन उसमें लहलाती हुई फसल खड़ी हो जाती है। व अम्बतत मिनकुल लिज़ौज बहीज, और उसमें उगाती है हर किस्म की खुशनुमा चीजें। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अब इससे नताइज क्या निकलते हैं कि ये सब इसलिए कि वो अल्लाह ही बरहक है जो मुर्दा जमीन में से जिंदा जो है वो सब्जे को निकाल सकता है और इतने हकीर से कतरे से तुम्हें बना सकता है, वो अल्लाह मौत के बाद भी जिंदगी दे सकता है। तो फरमाया वअन्नहु युहयिल मौता, और कि वो जिंदा करता है मुर्दों को, और तीसरी हकीकत वअन्नहु अला कुल्ली शयइन कदीर, और बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अब मौत के बाद जिंदगी है, मजीद बयान। वन साथ आती अतुल्ला रही बफीहा, और कि क़यामत आने वाली है और इसमें कोई शक नहीं। वन अल्लाह या बासु मंसिल कबूर, अल्लाह दोबारा उठाएगा उनको जो कब्रों में, तो जो कोई मुर्दा है उसे बहरहाल एक दिन जिंदा किया जाएगा और हिसाब किताब होगा। आगे फिर जो है शिर्क के लिए कोई दलील इनके पास नहीं है, ये मजमून आ रहा है। वमिन अन्नास मन युजादिल, और लोगों में से वो भी है जो झगड़ा करता है, फिल्लाहि बिगैर इल्म वला हुदा वला किताब मुनीर, अल्लाह के बारे में जबकि ना कि उसके पास कोई इल्म होता है, ना कोई हिदायत होती है और ना कोई रोशन किताब होती है। तो ना अकली दलील है शिर्क के लिए, ना नकली दलील है उसके पास, ना ही कोई इल्मी दलील है उसके पास शिर्क के लिए, फिर भी झगड़ा करता है कि नहीं अल्लाह तो ये बहुत सारे हैं, अल्लाह ने फला को ये इख्तियार दे दिया या फला जो है वो फला मनसब ने अल्लाह के बराबर, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। तो फरमाया सानी सानिया इत्फी, और मोड़ते हुए अपने पहलू को, लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि वो गुमराह करे लोगों को अल्लाह के रास्ते से, लहू फिर दुनिया खिज़्यू, और ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में भी रुसवाई है, वनुज़ीकुहु यौमल क़यामति अज़ाबल हरीस, और हम चखाएंगे उसे क़यामत के दिन जला देने वाला अजाब। आगे सबब अजाब भी दोबारा बयान हो रहा है, ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक, ये है बदले उसके जो भेजा है आगे तुम्हारे दोनों हाथों ने, वन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल्आबीद, अभिषेक अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है अपने बंदों पर। आगे मुनाफ़िकाना किरदार उसका नतीजा बयान हो रहा है, वमिनन्नासि मन याबुदुल्लाहा अला हर्फ, और लोगों में से वो भी है जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे किनारे, फइन असाबहु खैर, अगर उन्हें पहुंच जाती कोई भलाई, इत्मान्ना भी, तो उससे मुतमईन हो जाते हैं, वइन असाबतहु फितना, और अगर पहुंचती है उन्हें कोई आजमाइश, इनकलब अला वजह, तो फिर पलट जाता है अपना रुख पर, खसरत दुनिया वल आखिरा, तो फरमाया कि खसारा है ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत का, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, और यही सबसे सरी खसारा। तो असल में ये तीन किरदार कुरान में जो है बार बार बयान हो रहे, एक मोमिनीन सालिहीन का है, जब दीन कबूल करते हैं तो अपना सब कुछ लगा देते हैं अल्लाह की इताअत में, फरमाबरदारी में जो कर सकते हैं वो कर गुजरते हैं, दूसरे कुफार जो रसूल की मुखालफत में अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपने बातिल निजाम और नजरियात को उसकी प्रोटेक्शन में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और तीसरे होते हैं मुनाफिकीन जो पूरी तरह कमिट नहीं होते, बस कलमा पढ़ लिया अब किनारे किनारे चल रहे होते हैं, फायदा हो रहा तो ठीक है, जहां कोई आजमाइश आई तो फिर कोई पहचाने का भी नहीं कि मुसलमान नहीं है। तो ये जो है ये रविश अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लामा कहते हैं तू बचा बचा कर ना रखे से, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज़, ये तो जो जान भी है तो दी हुई अल्लाह ही की है, जो सलाहियत है अल्लाह ही की है, जो माल है अल्लाह ही का है, अगर वो अल्लाह की राह में लग रहा है खबर है तो वही कामयाब, जिसका जितना ज्यादा अल्लाह की राह में लग रहा है वही उतना कामयाब है, जो बचा बचा कर रखा है तो कोई फायदा नहीं, ये तो वो जाय कर रहा है वो सारे सरमाए को। तो फरमाया या तो वो मिन दून अल्लाह, अब वो पुकारता है सिवाय अल्लाह के, माला या दुर्रहु व माला यनफाउ, जो ना तो उसे कोई जरर पहुंचा सकता है और ना उसे कोई फायदा पहुंचा सकता है, गैर अल्लाह की बेबसी है, जालिका हुआ जलालुल बई, और फरमाया कि यही है बहुत दूर की गुमराही, यदू लमन ज़र्रहु अक़रबु मिन नफ़ी, अब वो पकाते उन्हें जिनका जिनका जरा जल्दी पहुंचने वाला है बनिस्बत उनके नफे के, अल्लाह को छोड़कर जिन्हें खुदाई में शरीक कर रहे हैं उससे नुकसान ही ज्यादा होने वाला है। तो फरमाया लबिअसल मौला व लबिअसल आशीर, अलबत्ता बहुत बुरा है दोस्त और ऐसा बहुत ही बुरा है साथी, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, आगे मोमिनाना किरदार उसके नतीजे, बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, जन्नत तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे से बहती होंगी नहरें, इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह करता है जो वो चाहता है, कोई उसे रोकने वाला है, जो अल्लाह चाहता है वो करता है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है, और यह आयत जो है वो मुश्किलातुल कुरान में से भी मानी जाती है, और इसमें कुफार की नाकामी और नाउमीदी की मिसाल बयान हो रही है, मन काना यज़ुन, जो शख्स ये ख्याल करता है अल्लाह यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि कभी मदद नहीं करेगा, यानी उसकी मुराद अल्लाह के रसूल की अल्लाह दुनिया और आखिरत में, फल यमदुद बिसबबिन इलस्समा, तो उसे चाहिए कि लटकाए एक रस्सी आसमान से, तब यहां समा से मुराद आसमान भी लिया गया और छत भी लिया गया, सुम्मल यक्ता, फिर वो काट डाले उस रस्सी को, यानी वहीं से अपना ताल्लुक तोड़ के देख ले, या अगर उसने छत से रस्सी टांगी है तो जमीन से अपना ताल्लुक तोड़कर देख ले
فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیث، پھر دیکھے کیا دور کر دے گی اس کی یہ تدبیر اس کی شکایت کو جس سے وہ ناخوش ہے. تو مراد یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، یعنی اللہ اس کے رسول کے مخالفین ہیں، تو ان پہ مثال دی جا رہی ہے کہ اگر وہ وہیں سے اپنا تعلق کاٹ بھی لیں تو کیا اس سے ان کے دلوں کو خوشی اور اطمینان حاصل ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اور آدمی پریشان ہوتا ہے. دوسری اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ پھر یہ کریں کیا چھت سے ایک رسی لگائے اور زمین سے اپنا تعلق منقطع کر لیں، یعنی پھانسی لگا لیں اپنا، تو کیا یہ موت ان کے لیے خوشی اور غم کی نجات کا باعث بنے گی؟ جو کہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال اب اس میں گویا یہ بیان ہو رہا ہے کہ امید ہونی چاہیے اللہ سے، کسی بھی صورت میں اللہ سے جو امید کی رسی ہے وہ نہیں کٹنی چاہیے. نہ ہو نا امید کے نا امیدی زوال علم و عرفہ ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں. آگے ترغیب الی القرآن، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کی صورت میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ، اب یہ فیصلہ خداوندی بیان ہو رہا ہے، وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں، صابی اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، ستارہ پرستی بھی ان کے یہاں تھی، ملائک پرستی بھی تھی، اور ہر مذہب سے کچھ نہ کچھ چیزیں انہوں نے جمع کرنی تھی. اور نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، مجوس آتش پرستوں کو کہتے ہیں. اور فرمایا والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، کون صحیح تھا، کون کس کے عقائد درست تھے، کون واقعی صحیح طرح سے زندگی گزارا تھا. اللہ تعالیٰ حتمی فیصلہ قیامت میں کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ورنہ اللہ نے تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجے، سیدھا راستہ دکھا دیا، ابھی بھی کوئی حجت کرتا ہے اور جھگڑتا ہے، تو بہرحال پھر الٹیمیٹ فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. آگے ساری کائنات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، مضمون آ رہا ہے. الم ترى ان الله يسجد له ما في السماوات وما في الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں اور ہر وہ جو زمین میں، اہل آسمان بھی اہل زمین بھی، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو سجدے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جھک جانا، بلکہ یہ کہ سب عاجز اور لاچار ہیں اللہ کے آگے، اور اسی کے بنائے بنتی ہے، ورنہ اس کے وہ اگر نہ چاہے تو کسی کی کچھ نہیں بن سکتی. اور مزید کہا والشمس والقمر والنجوم، اور اسی طرح سورج اور چاند اور ستارے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. والجبال والشجر والدواب، اور پہاڑ اور درخت اور سارے یہ چوپائے. وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی. وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ایسے بھی کہ ثابت ہو چکا ان پر عذاب. کچھ تو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن وہ بھی مجبور ہیں، ان کا جسم بھی عاجز ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے. ہمارا اپنا جسم 99% اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. ہم کتنا بھی چاہیں کہ دل حرکت نہ کرے تو ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم کتنی بھی دیر چاہیں کہ میں چلو 10 منٹ سانس نہیں لیتا، لیکن 1.5 منٹ سے زیادہ آدمی روک نہیں سکتا. آدمی کتنا ہی کہے کہ میرے بال سفید نہ ہو، لیکن یہ ہماری مرضی نہیں چلتی. یہ جسم اللہ کی مرضی کی اطاعت کر رہا ہے، گویا اللہ کے آگے یہ بھی سجدہ ریز ہے. تو فرمایا کہ بہت سے انسان خود اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی جن پر جو ہے وہ عذاب ثابت ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ رسوا فرما دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم، تو نہیں ہے اسے کوئی عزت دینے والا. اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، آیت سجدہ بھی سجدہ کر لیں. بسم اللہ اول و آخرہ، جو ہم نے پچھلی آیت نمبر 17 میں پڑھا تھا کہ بالآخر فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا مسلمانوں، یہودیوں، صابیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور مشرکین کے معاملے میں. اب آ رہی ہے فیصلہ خداوندی کی تفصیل. آ رہی فرمایا ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، اور یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں، یعنی مومن اور کافر، فرمایا جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا، بس وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا انجام بیان ہو رہا ہے. قطعت لہم ثیاب من النار، تو قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی. یُسَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ، اور پگھل جائے گا جو کچھ جو ہے ان کے پیٹوں میں ہوگا اور کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے، والجلود ان کی کھالیں پگھل جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے ہوں گے ہتھوڑے لوہے کے، کُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا غم کی وجہ سے، اُعِيدُوا فِيهَا تو لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور حکم کا وہ ہوگا کہ چکھو اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس بدترین انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آگے پھر مومنین کا انجام بھی آ رہا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، یحلون فیها من اصابر من ذهب ولؤلؤ اور وہ پہنے ہوئے ہوں گے وہاں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، ولباسهم فیها حریر ان کا لباس وہاں ہوگا ریشم کا، وهدوا الى الطیب من القول اور ان کو ہدایت کی گئی تھی پاک کلمے کی یعنی کلمہ توحید کی، وهدوا الى صراط الحمید اور انہیں ہدایت کی گئی تھی تعریف کیے ہوئے راستے کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب آگے حج اور قربانی سے متعلق احکامات آ رہے ہیں اور اس میں پہلے جو ہے اسباب ناکامی بھی بعض لوگوں کا فرمایا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام اور جو لوگوں کو روکتے ہیں مسجد حرام سے، یہاں مسجد حرام کے ذکر سے آگے تھے جو حج اور عمرے اور قربانی کے احکامات بھی ساتھ ہی جڑے ہیں، الذین جعلناه للناس یعنی وہ بیت الحرام جسے اللہ نے بنا دیا ہے لوگوں کے لیے جمنے کی جگہ یا عبادت گاہ، سواء العاکف فیہ والباد اور برابر ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس میں اور باہر سے آنے والوں کے لیے۔ تو ایک رائے یہ کہ معتکفین سے مراد وہاں کے مقامی لوگ ہیں اور والباد سے مراد باہر سے آنے والے ہیں، تو سب کے لیے یہ جگہ برابر ہے۔ اس میں ایک رائے یہ بھی نکلتی ہے کہ زمین جو ہے یہ سب کے لیے ہے، وہ عبادت گاہ ہے، اس کا کرایہ لینا اس کا جواز نہیں ملتا۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ فرمایا اور جو چاہے اس میں بے الحادم بے ظلم کہ وہ کجروی اختیار کرے ظلم سے، نُزِخُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تو ہم چکھائیں گے اسے بڑے دردناک عذاب کا مزہ۔ آگے عظمت بانی کعبہ بیان ہو رہا ہے کعبے کے ذکر کے بعد، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ اور جب مقرر کر دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت یعنی بیت اللہ کی ایک جگہ، اللہ تشرک بھی شیئا تو اب انہیں اللہ تعالیٰ نے تین احکامات دیے جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے، نمبر ایک کہ شریک نہ ٹھہرائیے میرا کسی چیز کو، نمبر دو وطاہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود اب پاک رکھیے میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، دوسرا حکم تھا۔ پھر تیسرا حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور اعلان کیجئے جو ہے پکاریے لوگوں کو حج کے لیے، یَأْتُوكَ رِجَالًا وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل، وَعَلَى كُلِّ زَامِرٍ یا پھر دبلے پتلے اونٹوں پر، يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اور وہ آئیں گے بہت دور دراز راستوں سے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ مشاہدہ کریں اپنے منافع کا، یعنی یہاں ایک حج کے موقع پر ایک بڑا کاروبار کا بھی اور تجارتی بھی گڑھ ہے اور اسی طرح ایک عالمی کانفرنس بھی ہے مسلمانوں کی، پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کریں ان معلوم دنوں میں، 11 12 13 تاریخیں، علامہ رضا کہم من بہیمت الانام اور ان جانوروں پر جو ہم نے دیے انہیں چوپائے مویشیوں میں سے، یعنی اب یہ ایام تشریف بھی ہیں ان میں قربانی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، فکلوا منہا واطعم البأس بائس الفقیر تو خود بھی کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بدحال کو اور فقیر کو۔ تو کفار کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ ہدی پیش کرتے تھے تو اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے خود بھی کھاؤ اور پھر باقی لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، آبادی تھی نہیں لیکن کہا آپ آواز لگائیں، انہوں نے کہا آواز کون سو لے گا، اللہ نے کہا یہ میرے ذمہ آپ کا جو ہے آپ بس آواز لگائیں۔ تو جو ہے بخاری مسلم میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے आवाज लगाई और उसके जवाब में अब ये तन्बीहा कहते हुए रहती दुनिया तक लोग जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हाजिरी देते रहेंगे अल्लाह के इस घर का।
मुफस्सिरीन लिखते हैं फनादा आला जबली अबी खुबैस,
बस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफा के सामने एक और पहाड़ी है अबी खुबैस पहाड़ी काबा के सामने, वहां तशरीफ ले गए
उस पर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई या यूहन्ना सो इन्ना रब्बुकुम बिना भाई,
ए लोगों बेशक अल्लाह ने अपना घर बना लिया
वा औजब अलैकुम अलहज
और वाजिब कर दिया फर्ज कर दिया तुम पर
हज करना फअजीबू रब्बकुम
बस अपने रब की पुकार का जवाब है। चनाचे इसके जवाब में जो है वो तमाम हाजी जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हाजिर हो या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक हाजिर हूँ मैं अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं,
इन्नल हमदा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लक
के सारी तारीफ आप ही के लिए है, सारी नेमतें आप ही की हैं और ये मुल्क का बादशाह आप ही के लिए है और कोई आपका शरीक नहीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मैं हाजिर हूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ये कहते हुए पूरी दुनिया से लोग जो है इस घर पर पहुंचे। हालांकि वो जगह बिल्कुल वीरान थी और कोई ऐसी आबादी नहीं थी, कोई सब्जा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म पर अब रहती दुनिया तक लोग जो है ये आवाजें लगाकर इस पुकार का जवाब देते रहे।
आगे तवाफ ज़ियारत का जिक्र आया सुम्मल यगज़ू तफ़तहुम से दूर करे अपना महल वल यूफू नुजूरा हूं और पूरी करें अपनी नजरें वल यतवफू बिल बैतल आती और तवाफ करें इस कदीम घर का।
तो हज के दिनों में पाबंदी होती है, नाखून नहीं तराश सकते, बाल नहीं कटा सकते और जो है वो दो चादरों में आदमी रहता है, फिर उसे जो है 9 ज़िलहज्जा को 8 से वैसे तो हज शुरू हो जाता है, 8 को मीना में आना है, फिर 9 को अरफात में जाना है, फिर 10 को कई काम जो है करने हैं, यानी पहली रमी करनी है बड़े शैतान की, फिर नहर करना है जानवर और फिर हलफ करवाना है, तो उसका जिक्र आ रहा है कि अब जब तुमने ये कर लिया तो अब जो अच्छी तरह अपने जिस्म से मैल कुचैल को दूर करो यानी नहा धो लो, फिर आदमी जो अपने घर वाले लिबास पहन लेता है और उसके बाद जो है तवाफ ज़ियारत होता है। तो फरमाया जा रहा है उसके बाद फिर इस कदीम घर का तवाफ करो। तो हज के हवाले से मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हज गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह बुखारी शरीफ की रिवायत है आपने फरमाया हज मबरूर का अजर सिर्फ जन्नत है, तो यानी ये अगर मकबूल हो जाए हज तो जन्नत जो है वो मुकद्दर हो जाती है, बहुत बड़ा अजर सवाब है हज का।
तो मैं ज़ालिक तो ये उमूर हज है वमन युअज़्ज़िम हुरमातिल्लाह और जो कोई जो है वो एहतराम करता है अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुरमतों का फहुवा खैरुल लहु इंदा रब्बी तो यही बेहतर है उसके लिए उसके रब की तरफ से वो अहिल्लत लकुमुल अनाम और हलाल किए गए तुम्हारे लिए चौपाए। तो अब तहरीमात गैरुल्लाह की तरदीद है, आगे जो है अब ये आप देखेंगे चौपायों का जिक्र इल्ला मा युतला अलैकुम सिवाय उनके जो तुम पर तुम्हें पर सुनाया गया,
पहले आ गया कि चार किस्म की चीजें हराम जो थी और चार दफा हम पहले पढ़ा है फजतने वो रिक्सा मेनल अवसान बस बचते रहो नापाकी से बुतों की बचतने वो कौलदूर और बचते रहो झूठी बात से। तो बुतों की नापाकी के साथ ही झूठी बात की नापाकी बयान हो गई, तो हम झूठ को कोई अहमियत ही नहीं देते, वो हमारा मामला ही क्या और डील ही क्या और वो दिन ही क्या जिसमें झूठ ना बोला जाए, जबकि कुरान उसे बड़ी अहमियत दे रहा है, इतने बड़े जुर्म के साथ जो है अल्लाह ने दूसरी चीज ये बयान की यानी बुतों की नापाकी से बचो और इसी तरह झूठी बात से बचो।
मशरिक की आगे मिसाल आ रही है
वो नफा अल्लाह और बिल्कुल यकसू होगा अल्लाह के लिए गैर मुशरिकीन अभी और बगैर शरीक ठहराए शरीक ठहराए उसका किसी को वमन युशरिक बिल्लाह और जो कोई शिर्क करेगा अल्लाह के साथ फकअन्नमा खर्रा मिनस समा तो गोया वो ऐसा है जैसे वो गिर गया हो आसमान से फतख्तफुहु तैर बस उसे उचक ले जाए परिंदे औ तहवी बिहिर या उसे उड़ा ले जाए तेज हवा फी मकान इन सहेल किसी दूर के मकान में आसमान से गिरा और जो है किसी दरमियान ही नहीं या तो हवा उड़ाकर ले गई परिंदे उड़ाकर किसी जो है बयाबान में डाला है। तो ये मामला है शिर्क करने वाले का यानी उसने रब तो बनाया लेकिन उसने ऐसी चीज को रब बनाया जिसने उसे तबाही और बर्बादी तक पहुंचा दिया। आगे अलामत तकवा बयान हो रही है जालिक और ये जो उमूर अभी बयान हुए वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह और जो कोई ताज़ीम करता है अल्लाह के शायर की, हमने कहा था शहीदा हुए जिसे देख कर अल्लाह याद आ गया और इसमें रसूलुल्लाह भी शायरुल्लाह में से है, बैतुल्लाह भी है, किताबुल्लाह भी है, सफा मरवा भी अल्लाह की निशानियों में से, और इसी तरह हाजी ये भी अल्लाह की रजा के खाते निकल रहे होते हैं, हदी के जानवर ये सब जो है शायरुल्लाह में से।
तो जो इनकी इज्जत करता है वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इज्जत करता है, और ये उसके दिल के तक्वे का इजहार इसलिए फरमाया कि वमन युअज्जिम शायर अल्लाह, और जो कोई ताजीम करता है अल्लाह के शायर की, फइन्नहा मिन तक्विल कुलूब, तो बेशक ये दिल के तक्वा में से है। लकुम फीहा मुनाफिउ इला अजल मुसम्मा, और तुम्हारे लिए इसमें इन जानवरों में गोया फायदा है कुछ मुद्दत तक के लिए,
यानी उनका दूध इस्तेमाल कर सकते हो, उनका सवारी कर सकते हो, सामान उनका लादा जा सकता है, लेकिन जब हज के लिए वहां पहुंचे हो तो फिर जो है आदमी वो हदी का जानवर हो जाता है, फिर उसकी कुर्बानी भी पेश की जा सकती।
सुम्मा महिलुहा इलल बैते लतीफ, और फिर उनका गोया पहुंचाना है, जिबा करना है कदीम घर के करीब।
अब इसमें जमी हरम जो है वो शुमार होता है, वैसे तो कदीम घर से मुराद काबा है, लेकिन पूरा मेला तक का ये इलाका जो है ये सब हदूद हरम के अंदर है,
वहां पर कुर्बानी पेश की जाएगी। बलिकुल्ल उम्मतिन जालना मन सका, और हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर कर दी है कुर्बानी, लियस्कुरुस्मल्लाही आला मा रज़क़हुम, ताकि नाम लिया जाए अल्लाह का उन पर जो अल्लाह ने अता किए हैं बतौर रिस्क के उन्हें, मैं बहीमत लाना, यानी मवेशियों में से, ये चौपायों में से मवेशी। अब ये कौन है, बकरा भेड़ बैल गाय या ये ऊंट, ये मवेशी कहलाते हैं, इनके पाव आगे से फटे हुए होते हैं और ये चलने के बाद जुगाली करते हैं, इनका एक एक्स्ट्रा मेला होता है, तो वो ये उसमें पहले निगल लेते हैं और फिर बाद में उसे रिकॉजिटेट करके मुंह से फिर जुगाली करते रहते हैं, उसे चबा के अच्छी तरह फिर दोबारा निकल रहे होते हैं। तो ये जानवर जो है ये मवेशी कहलाते हैं, तो इन पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इन्हें कुर्बानी के लिए पेश किया जाए। फइलाहुकुम इलाहुन वाहिद, और तमाम माबूद तो बस एक ही माबूद है, फलाहु अस्लिमु, बस उसी के लिए सरे तस्लीम खम करो, वबशिरिल मुखबतीन, और खुशखबरी दे दीजिए आजजी इख्तियार करने वालों को। आगे मुखबतीन की चार और सिफतें आ रही हैं, अल्लाह ताला ये हमें भी पैदा फरमाए, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ ऐलान कर दिया कि ये मुखबतीन को खुशखबरी दे दीजिए, तो आजजी इख्तियार करने वालों के लिए बशारत है। अब ये कौन लोग होते हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, नंबर एक, ये वो लोग हैं जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल दर्द उठते हैं। नंबर दो, वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, और वो सब्र करने वाले उन मसाइब पर जो उन्हें पहुंचते हैं, यानी डटे रहते जमे रहते हैं दीन पर। नंबर तीन, वलमुकीमिस्सला, और वो कायम करने वाले हैं नमाज की। और नंबर चार, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिक़ून, और जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करने वाले हैं, तो वो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। अल्लाह ताला ये सिफात हमें भी पैदा फरमाए। आगे शायरुल्लाह में से एक का जिक्र, वलबुदना जालनाहा लकुम मिन शायरिल्लाह, और ये जो कुर्बानी के ऊंट हमने बनाए हैं उनको तुम्हारे लिए निशानियों में से अल्लाह की, तो ये भी शायरिल्लाह में से वो ऊंट जो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार किए जाए। लकुम फीहा खैर, तुम्हारे लिए इनमें भलाई है, फज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ, बस नाम लिया करो उन पर अल्लाह का कतार बांधकर। फैजा वजबत जुनूब हुआ, फिर जब जमीन पर लग जाए उनके पहलू, फकुलू मिन्हा, तो खाओ उनमें से, वात एमुल खानिहा वल मौतर, और खिलाओ किनात करने वाले को भी, और जो है वो मुस्तरिफ को भी जो जबट जबट के मांगते हैं उसे भी दे दो उसमें से। कजालिका सखरना लकुम लअल्लकुम तशकुरू, और ऐसे ही मुसक्कर कर दिया हमने उसको तुम्हारे लिए ताकि तुम शुक्र करो। कितना बड़ा ऊंट होता है, लेकिन कैसे अल्लाह ने हमारे ताबे कर दिया, एक बच्चा जो है वो रस्सी पकड़ के उसे चला कर ले जा रहा होता है, और यहाँ पर ऊंट को नहर करने का तरीका भी गोया आ गया कि उन्हें कतार में खड़ा किया जाए, फिर नहर किया जाए, और जब उनका खून एक खास मिकदार से ज्यादा निकल जाता है तो कमजोरी तारी हो जाती है, उनके पहलू जमीन पर लग जाते हैं, और गोया जब वो अच्छी तरह और उनकी जान निकल जाए तो फिर उसमें से इस्तेमाल करो, खुद भी खाओ और जरूरतमंदों को भी खिलाओ। आगे शर्त कबूलियत कुर्बानी आ रही है, ला यनाल अल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा, हरगिज नहीं पहुंचता अल्लाह को इन जानवरों का गोश और ना उनका खून, वला की यनालहु तक्वा मिनकुम, लेकिन उसे तो पहुंचता है तक्वा तुम्हारी तरफ से, तो ये खून और गोश तो यहीं रह जाता है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और असल चीज जो अल्लाह तक पहुंचने वाली है वो हमारी नीयतें और इरादे हैं। इसलिए जो है वो बहरहाल इब्ने माजा की रिवायत है, आपने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी ना सूरतें देखता है ना माल, बल्कि वो तुम्हारे दिल देखता है और तुम्हारा इखलास देखता है। इसी तरह सहाबा ने पूछा कि ये कुर्बानी क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है। तो सहाबा ने पूछा कि हमारे लिए इसमें क्या है, तो आपने फरमाया जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी। तो अब जरा गिनने बैठ जाए बकरे के बाल तो समझ आ जाएगा, तो बेशुमार है, तो बहुत बड़े अजर सवाब का बायस है। और इसी तरह वो लोग जो इसकी इस्तेदात नहीं रखते कि जानवर कुर्बान कर सके, तो उन्हें भी अल्लाह के रसूल ने शामिल फरमाया। अबू दाऊद की रिवायत है, आपने फरमाया कि जब जलहज्जा का महीना शुरू हो तो चाहिए कि ना बाल तरश आओ ना नाखून तरश आओ, और जब 10 जिलहज्जा आ जाए तो फिर बाल भी तरश वालो और नाखून भी तरश वालो, तो ये तुम्हारी तरफ से कुर्बानी होगी। गोया कुर्बानी का सवाब ऐसे लोगों को भी मिल जाता है, यानी अब वो माली इस्तेदात नहीं रखते, लेकिन अगर वो हाजियों की तरह अपने नाखून और बाल ना कटवाए और 10 दिन बाद 10 जिलहज्जा को कर लें, तो उन्हें भी कुर्बानी का सवाब अल्लाह ताला देते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला तक ना तो इन जानवरों का खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, लेकिन तक्वा पहुंचता है तुम्हारी तरफ से। कज़ालिका सख़्खरहा लकुम, और इसी तरह ताबे कर दिया अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे लिए, तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम उस अल्लाह की बड़ाई बयान करो तरीके पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी है। वबशिरुल मोहसिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए नेकोकारों को। तो ये भी एक बहुत बड़ी सआदत है, ये इबादत है कुर्बानी की। तो जो लोग हज कर रहे होते हैं वहां दमे शुक्र होता है, वहां उनकी कुर्बानी हज का एक हिस्सा है। तो ये जो हम जुलहज्जा में कुर्बानी कर रहे होते हैं 10, 11, 12 और बाद 13 को भी अहले हदीस भाई कहते हैं, तो ये अय्याम तशरीफ में, तो इन दिनों की कुर्बानी ये वाजिब कुर्बानी है, उसके अलावा है। तो जो हज पर जा रहा हो या तो वहीं दोनों कर लें, हज की कुर्बानी भी और ये कुर्बानी भी, वरना वो यहां अपने लवाकिन को कहता जाए कि भाई वो उसकी तरफ से भी कुर्बानी कर लें, तो ये अलहदा से जरूरी है। और जैसे कि आया कि इसमें असल चीज हमारी नियत और इरादा है, तो ये जो कुर्बानी करें ये अल्लाह की रजा के लिए करें, और ये असल में किसकी याद में ये कुर्बानी है, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब आप जरा गौर करें, 100 साल बूढ़ा शख्स और वाहिद इकलौती औलाद, और वो भी कोई 1-2 साल की नहीं, अब 13 साल का नौजवान है जिससे उम्मीदें बन जाती, और 100 साल के बुढ़ापे का इकलौता सहारा। अब फिर अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि इसे जबा कर दो मेरे साथ, तो बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ही बात कही कि जो अल्लाह का हुक्म मुझे मंजूर। चनाचे बेटे को ले गए, लिटा दिया और उसकी गर्दन पर छुरी रख दी और चला दी। वो तो अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा भेज दिया और वो कुर्बान हो गया, वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बच्चे पर छुरी चला दी थी अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, और ये साबित कर दिया कि उनके नजदीक सबसे बड़ी मोहब्बत किसकी है, वो अल्लाह की। तो हम भी जब ये कुर्बानी की इबादत करें तो जहन में यही तसव्वुर होना चाहिए, हर एक का कोई ना कोई इस्माइल है, तो वो गौर करे कि अल्लाह की खातिर वो ये कुर्बानी दे सकता है। किसी का इस्माइल उसकी औलाद है, किसी का कारोबार है, दुकान है, गाड़ी है, कोई कैरियर है, तो हर शय एक मोमिन में ये जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दे। तो बहरहाल अब हमने तो उसे एक फूड फेस्टिवल बनाया ना, और वो जानवर आता नहीं तो उसमें क्या क्या हमने चीजें पैदा कर दी। एक तो झूठ खरीदा 50 का होगा, बताएंगे 80 का, और फिर ये कि उसका डिस्प्ले होता है बकायदा, भाई अल्लाह के लिए कर रहे हो, इखलास होना चाहिए, चीजें छुपा के होनी चाहिए। चले आपके घर में जगह नहीं, बाहर आपने, लेकिन बकायदा फ्लड लाइट्स लगती है, उसके लिए बकायदा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और फिर मोहल्ले वालों को दिखाया जाता है, तो ये तो सब मेहनत जाए। और वो जानवर अभी खड़ा ही होता है तो वो पूरी लिस्ट बन जाती है कि कितने किलो के जो है हंटर बीफ होगा और पार्चे होंगे और कबाब होंगे और ये होंगे वो। भाई इसमें कहीं वो नियत भी है अल्लाह की रजा की और वो काम या वो इखलास हो रहा है, वो तो कहीं खत्म ही हो जाता है। तो अल्लाह ताला इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादात में इखलास पैदा फरमाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिन वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज और रोजा और कुर्बानी और हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। जिस अल्लाह के लिए ये सब काम कर रहे हैं उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। वो जानवर ये गर्दन पर बिस्मिल्लाह व अल्लाह अकबर भी चढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह से जो एक ताल्लुक करना चाहिए था इस इबादत के बाद वो होता ही नहीं है। तो वो रस्मात रह गई, बाकी वो रूह खत्म हो चुकी। तो मेरा फरमाया वबशिरुल मोहसिनीन, और या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी दे दीजिए नेकोकारों। आगे इज़्ने क़िताल का जिक्र आ रहा है और वादे नुसरत बयान हो रहा है। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह मुदाफ़त करता है उन लोगों की जो ईमान लाए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़वानिन कफूर, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता हर ख़यानत करने वाले और नाशुक्रे।
उज़िना लिल लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दे दी गई उन लोगों को जिनसे लड़ाई की जाती है इस बात की कि इस वजह से कि उन पर ज़ुल्म किया गया। وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर पूरी तरह आ जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिशन एक मकसद के साथ भेजे गए थे, मकसद था गलबा दीन। चुनाचे पूरा मक्की दौर जो है उसमें आपकी हिदायत थी कुफ्फु अयदीकुम, अपने हाथों को बंदा रखो। मुसलमान तादाद में कम थे, अब कोई ऐसी बात करना जिससे जो है कुफार जो है वो मुतनफिर हो जाए बहुत ज्यादा और उनके कतल पर आमादा हो जाए, तो वो जो है उससे आपने से बचाया और कहा कि अपने हाथ बंदे रखो। लेकिन जब हिजरत का अमल हुआ तो इस दौरान ये सूरत नाज़िल हुई, इसलिए इसे बज़ज़ती सूरत कहते हैं। इसमें इख्तलाफ है कि मक्की है या मदनी है, क्योंकि हिजरत के दौरान नाज़िल हुई और दरमियानी ये सूरत है। और जलालैन में आया कि हाज़ी अव्वलु आया नुज़िलत लिल जिहाद, ये पहली आयत थी जो जिहाद के लिए नाज़िल हुई, और इसमें इजाजत दे दी गई कि वो जो हाथ बंद थे अब खुले। और फिर जब मुसलमान मदीना पहुंच गए तो वहां पहली सूरत जो नाज़िल हुई सूरह बकरा, उसमें आयत नंबर 216 में हुक्मे क़िताल था कि अब लड़ो इनसे, और हो सकता है तुम्हें एक चीज ना पसंद हो लेकिन वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है एक चीज को तुम पसंद करते हो लेकिन उसमें वो तुम्हारे लिए शर हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया जंगों का, और हम जानते हैं बदर से लेकर फतह मक्का तक, फतह मक्का में जाकर दीन जो है वो गालिब हुआ जब मुसलमानों को फतह हुई। तो आप एक मिशन के साथ थे और उसमें ये बहुत अहम वक्त था कि अब कहा जा रहा है कि आपको इजाजत दी जा रही है लोगों को किताल की और अल्लाह इनकी मदद पर पूरी तरह आ जाए। आगे बयान मजलूमियत आ रहा है, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक, यानी वो लोग जो निकाले गए अपने घरों से ना हक, इल्ला यकूलू रब्बुना अल्लाह, सिवाय इसके कि वो कहते हैं कि अल्लाह हमारा है, यही जुर्म था। इस वजह से मक्के में उनका रहना दुश्वार हो गया, उनकी जान पर बन गई और फिर मजबूरन हिजरत करनी पड़ी। वलौला तक़ुल्लाहु नासा बाज़हुम बिबास, और अगर अल्लाह ना मुदाफियत करता लोगों की बाज़ों की बात से, लहुद्दिमत सवामिउ व बियाउ व सलावातु व मसाजिद, तो ढा दिए जाते सारी खानकाहें और गर्जे, और इसी तरह यहूदियों की इबादत गाहें और मसाजिद। युस्करु फी हस्बुल्लाही कसीरा, यानी जिनमें जिक्र किया जाता है अल्लाह का बहुत कसर से। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह, और अल्लाह लाजमन मदद करेगा उनकी जो उसकी मदद करेंगे। अल्लाह की मदद कैसे करेगा, ये अल्लाह ने ना कहा होता तो ये बड़ा शिरकिया जुमला हो जाता, कोई ये दावा करे कि मैं अल्लाह की मददगार हूं, तो ये तो बहुत ही ऐसी बात है जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। अब ये एजाज है कि जो लोग अल्लाह के दीन का काम करते हैं अल्लाह ताला उन्हें अपना मददगार करार दे रहा है, वरना अल्लाह को किसी की मदद की आदत नहीं। हम तो उसके दर के भिखारी और फकीर, हम क्या मदद करेंगे अल्लाह। तो लेकिन इसमें एक एजाज है, यानी अल्लाह ने अपने जिम्मे शर्त लगाई है कि मैं लाजमन उन लोगों की मदद करूंगा जो मेरी मदद करेंगे, यानी मेरे दीन की नुसरत करेंगे। इन्ना अल्लाह कवी होना जी, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है और गालिब है। आगे खुनफा के फराइज आ रहे, अल्लादीना इमकन्ना हूं फिलहाल, और बोलो कि अगर हम उन्हें जो है वो कुवत दें तमक्कुन दें जमीन में तो वो क्या काम करेंगे। नंबर एक, अकामुस्सलाह, वो नमाज कायम करेंगे। नंबर दो, वो आता वो ज़कात, और वो ज़कात जो है उसका निजाम कायम करेंगे। और नंबर तीन, वह अमरु बिल मारूफ, और वो भलाई का हुक्म देंगे। और नंबर चार, बना हुआ ने मुनकर, और वो बुराइयों से मना करेंगे। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह के कब्जे में है तमाम कामों का बिलाखिर अंजाम। तो असल में जब भी मुसलमानों को जमीन पर जो है वो ताकत मिलेगी और हुकूमत मिलेगी तो ये काम है जो मतलूब है अल्लाह, इसी के लिए जिहाद और क़िताल क्यों है, ताकि जो एक अमन कायम हो जाए और लोगों के लिए अल्लाह की इबादत आसान हो जाए, उसके ये बड़े बड़े ज़राए। आगे जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का मजमून, और चौथा मजमून यहां से मुशरिकीन से कश्मकश का। वही युकज़्ज़िबू का, ऐ नबी अगर ये आपको झुटलाते हैं, फकत कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व आद व थमूद, तो झुटलाया है इनसे पहले भी लोगों ने, कौम नूह अलैहिस्सलाम ने, कौम आद ने, कौम समूद ने भी, गोया अपने रसूलों को। व कौम इब्राहिम व कौम लूत, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी। व असहाबु मदयन, और अहले मदयन ने भी। وَقُذِبَ مُوسَى اور تکذیب کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی بھی فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ بس ہم نے مہلت دی ان کافروں کو اور مجرموں کو مہلت کیوں دی جاتی ہے فرمایا ثم اخذتهم پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ بس کیسی تھی ہماری گرفت تو یہ جو مہلت ہوتی ہے اس لیے نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں بلکہ یہ مہلت ہوتی ہے کہ اگر موقع ہے توبہ کر لیں ورنہ پھر اللہ جب گرفت کرتا ہے تو پھر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا آگے سبب ہلاکت بھی بیان ہو رہا ہے فَقَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا بس کتنی ہی بستیاں تھیں نافرمانوں کی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا وَهِيَ ظَالِمَةٌ حالانکہ وہ ظلم کرتے تھے فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا پھر وہ پڑی کی پڑی رہ گئی اپنی چھتوں کے بل وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٌ اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے رہ گئے وَقَصْرٍ مَّشِيدٌ اور نہایت ہی عالیشان محل وہ خالی اور ویران رہ گئے ان کے رہنے والوں کا اللہ کا گویا عذاب آ گیا آگے درس عبرت حاصل نہ کرنے والوں کے دلوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے افلم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں فتکون لهم قلوب یعقلون بها کہ ہوتے ان کے دل کے اس سے جو ہے وہ کچھ فہم حاصل کرتے او آذان یسمعون بها یا ہوتے ان کے کان جس سے وہ بات سن سکتے فانها لا تعمل ابصار کیونکہ اندھی نہیں ہوتی آنکھیں ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دلوں میں تو آنکھیں تو ہیں سب نظر آ رہے ہیں لیکن حق اور باطل پہچان نہیں پا رہے صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہا میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں اسے پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ دل اندھے ہوئے آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں لیکن دل اندھے ہیں جس سے حق کا راستہ نہیں دیکھ سکتا تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں دل کا نور علیحدہ ہوتا ہے اسی کو حکمت اور دانائی بھی کہتے ہیں تو اللہم ارنا الحقیقت اشیائی کا ماہیا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا جیسا کہ وہ ہے آگے بیان قیامت آ رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ جلدی مانگتے ہیں نبی آپ سے عذاب وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے یہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وہ ہزار سالوں کے برابر ہے تمہاری گنتی کے اعتبار سے تو اللہ کی تدبیر ہے اور وہ جو ہے اپنی تدبیر چلا رہے ہیں اور اللہ کے دن جو ہے بہت وسعت رکھتے ہیں ہمارا دن تو بہت تیزی سے گزرتا ہے لیکن اب طریقہ گرفت سے باری تعالیٰ بیان ہو رہا ہے یعنی پہلے اللہ مہلت دیتے ہیں اس میں جو جن میں بھی خیر ہوتا ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن جو ڈھیٹ ہوتے ہیں بالکل وہ گناہوں میں آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے گرفت ہو جاتی ہے وَقَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے مہلت دی ان کو وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا جو کہ ظالم تھے ہم نے سمجھا کہ ظالم کا اچھا بیشتر جگہ ترجمہ کیا ہوگا شرک کرنے والے مشرک تھے اب بس ہم نے پکڑ لیا ان کو وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور ہماری طرف لوٹ کر آنا فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ بے شک میں تمہاری طرف جو ہے وہ بالکل کھل کر خبردار کر دینے والا ہوں ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ان کے لیے مغفرت اور بہت ہی عزت والی روزی اور ڈرایا بھی جا رہا ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کی اس میں مین میں اس نکالنے کی اولئک اصحاب الجحیم فرمایا کہ وہی لوگ جہنم والے ہیں اب شیاطین ہیں انس کے بعد شیاطین ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اور نہیں بھیجا ہم نے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول آنا کوئی نبی إِلَّا إِذَا تَمَنَّى مگر جب وہ بات کرتے تھے أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ تو شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال دیتا تھا جو ہے ان کی قرات میں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ بس مٹا دیتا اللہ اس وسوسے کو جو ڈالتا ہے شیطان ثم یحکم اللہ آیاتی پھر محکم فرما دیتا ہے اللہ اپنی آیت کو واللہ علیم حکیم اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے تو یہ بھی جو ہے یہ مشکلات القرآن میں سے اور اس میں بہرحال مفسرین نے یہ رائے رکھی ہے کہ انبیاء ایک بات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم بیان بتا رہے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ یہ مشرکین اور کفار کے دل میں اس سے متعلق جو ہے کوئی شبہ ڈال دیتا ہے اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی ہے جب وہ آیات آئیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے مردار تو ان کے دلوں میں آیا کہ واجبا جو خود مار دیتے وہ حلال ہے جو اللہ نے مار دیا وہ حرام ہے یہ کیا بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے फिर इस वसवसे को दूर कर देता है जिस पर से वो चाहता है, वरना इसी में उलझ जाते हैं बाद लोग कि भाई मुर्दार को अल्लाह का मारा है। आज जब मेडिकल साइंस बताती है कि मुर्दार के साथ और कितनी खराबियां हैं उस इस तरह के जानवर का गोश्त खाने, लेकिन बहरहाल अगर वो ना देखा जाए तो मरना तो एक ही बात है, अल्लाह मार दे तो और तुम भी दिबा कर देते हो, मर तो जाता ही है जानवर, जिंदा तो खाते नहीं। तब ये इश्काल पैदा कर देना कि जो अल्लाह ने मारा हुआ है वो क्यों हराम हो गया। तो आगे हिकमत वसवसा बयान हो रहा है कि ये जो अल्लाह मौका दे देता है शैतान को वसवसा अंदाजी की, इसकी क्या हिकमत है। लिया जाला मा युल्की शैतानु फितना, ताकि अल्लाह बना दे उस वसवसे को जो डालते हैं शैतान आजमाइश का जरिया इम्तहान। लिल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज, उन लोगों के लिए जिनके दिलों में है मर्ज, इशारा मुनाफिकीन की तरफ, इनके दिलों को अल्लाह ने बयान फरमाया कि इनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने बढ़ा दिया इन्हें इस रोग के अहबाज। वो रोग क्या है कि हर आदमी में अपनी जान और माल की मोहब्बत होती, लेकिन मुनाफिकीन में ये मोहब्बत हद से बड़ी भी होती, यानी हर एक को अपना जान माल प्यारा है लेकिन क्या अल्लाह से भी ज्यादा, क्या इस्लाम से भी ज्यादा, क्या अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा। तो एक मोमिन को तो नहीं होता, उसके नजदीक अल्लाह पहले बाद में उसका जान और माल है, लेकिन मुनाफिक के लिए पहले जान और माल आ जाता है, बाद में सारा अल्लाह और रसूल बाद में चले जाते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ने इन वसवसों को आजमाइश बना दिया है उन लोगों के दिलों में जिनके दिलों में मर्ज है, यानी जो मुनाफिक है। बल खासियाती गुलूबों, और दूसरे वो जिनके दिल सख्त है, ये इशारा है कुफार की तरफ। सूरह बकरा में इनके दिलों को पत्थर से तशबीह दी गई है, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो जाता है। तो वह इन ज़ालिमीना लफी शिकाकिन बईद, और बेशक ये दोनों किस्म के ज़ालिम ये पड़े हुए हैं बहुत दूर की मुखालफत में। वलियअलमल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और ये अब वसवसा डालने की दूसरी हिकमत, और ताकि जान ले जिनको दिया गया है इल्म, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक, कि यही हक है जो अल्लाह ने वही किया है, जो वही किया गया है उनके रब की तरफ से। वयुमिनु बिही, और ताकि वो उस पर ईमान ले आए। وَتُثْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, और ताकि आजी इख्तियार करें उनके दिल। وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ, और बेशक अल्लाह ही हिदायत करने वाला है। الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, उन लोगों को जो ईमान लाए सीधे रास्ते की तरफ। तो शैतान की वसवसा डालने की दो हिकमतें बयान हो गई, एक ये कि इसके जरिए मुनाफिकीन और कुफार को मजीद जो है उनके लिए आजमाइश बना दिया जाए वसवसों, और वो उन वसवसों में पढ़कर दीन से और दूर हो जाए, और जो अहले इल्म है उन्हें इन वसवसों से और ईमान हासिल हो जाता है कि जो अल्लाह ने फरमाया वही सही है, उनका ईमान बढ़ जाता है और वो सीधे रास्ते पर गामजन हो जाता है। आगे इन दोनों फरीकों का हाल बयान हो रहा है। पहले कुफार का हाल, वला यलालुल्लज़ीना कफरू, और हमेशा रहेंगे वो लोग जो काफिर हैं, फी मिरयतिन मिन, शक में उसके बारे में, हत्ता तातियहुमुस सआतु बख्ता, यहां तक कि आई जाए क़यामत अचानक, अब या अतिया हम आजाब योम नफीम, या आ जाए उनका आजाब एक नहायत मनहूस दिन। अलमुल्क यौम इज़्ज़िन लिल्लाह, और उस दिन हुकूमत होगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, या हुकुमो बैनहुम, और वो अल्लाह फैसला कर देगा जो है वो तुम्हारे दरमियान। फल्लज़ीना, उनके दरमियान, फल्लज़ीना आमनू वआमिलुस सालिहात, अब दूसरा फरीक उसका हाल मोमिनीन का, बस वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए, फी जन्नत नाई, वो नेमतों भरी जन्नतों में होंगे। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, इसके मुकाबले में वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, फाउलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, बस उन लोगों के लिए होगा बहुत रुस्वा करने वाला अजाब। तो ये गोया अल्लाह की तरफ से फैसला सुना दिया गया। आगे तरगीब आ रही है हिजरत के हवाले से। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, सुम्मा कुतिलू औ मातू, तो या तो रस्ते में शहीद कर दिए गए या रस्ते की मसाइल में ही मौत आ गई। लयज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, तो लाजमन अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देगा, बहुत ही उम्दा रिज़्क़ देगा। वइन्नल्लाहा लहुवा खैरुर राज़िक़ीन, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन राज़िक़ है। तो गोया तरगीब दिलाई जा रही है। अब हमारे लिए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट होना मुसीबत होती, पहले घर देखते हैं, फिर वहां देखते हैं बच्चों का स्कूल क्या होगा, फिर यहाँ नौकरी में क्या सहूलत और वो है, और बाकी घर वालों को इसमें क्या फायदे नुकसान हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से शिफ्ट होते हैं और परेशानी रहते हैं कि भाई अभी बहुत मुश्किल हालात हैं, दो चार पांच दस दिन में जाकर सेटल होंगे, और यहाँ हिजरत का पता ही नहीं था कि वहां मदीना तक पहुंच भी सकेंगे या नहीं, रस्ते ही में हलाक हो जाएंगे, मुश्किन हमें कतल कर देंगे, पता नहीं वहां लोग हमें कबूल करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ तो अपने घर वाले सब छोड़कर जा रहे, दुबई से मिलना होगा नहीं होगा, यहाँ तो कारोबार चलता रहा था, वहां कारोबार जमेगा नहीं जमेगा, सब परेशानियां थी, उसके बावजूद हिजरत करें।
तो अल्लाह ताला की तरफ से वादा आ रहा है कि हम बेहतरीन रिस्क देंगे। फरमाया इन अल्लाह लहुवा खैरु राज़िकीन, और बेशक अल्लाह ही बेहतरीन रिस्क देने वाला। लयुदखिलन्नहुम मदखलन यरज़ौना, और वो जरूर दाखिल करेगा उन्हें ऐसे मुकाम में जिसमें वो खुश हो जाएंगे। व इन अल्लाह लअलीमुन हलीम, और बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले और बहुत बदबा है। आगे आ रहा है कि बदला लेना जायज है। ज़ालिका वमन आकब, और ये होगा उस शख्स के लिए जिस पर सख्ती की गई। बेमिसली मा ओ के बाबी, यानी वो अगर बदला ले तो उतनी सख्ती की जाए जितनी उस पर की गई। सुम्मा बुगिया अलैह, फिर जुल्म किया गया उस पर। लयंसुरन्नहुल्लाह, तो अलबत्ता जो है मदद करेगा जो है उसकी अल्लाह। इन अल्लाह लअफूवुन गफूर, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला और जो है बख्शने वाला है। आगे गलबा मोमिनीन के दो असबाब बयान हो रहे। ज़ालिका बिअन्नल्लाह युअलिजुल लैला फिन नहारी व युअलिजुन नहारा फिल लैल, और ये इसलिए कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दिन को रात में। और ये भी बहरहाल ये अल्लाह की कुदरत है, और जो अल्लाह इतनी कुदरत रखने वाला है। व अन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, और ये इसलिए कि अल्लाह ही बराक है। وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ, और जिसको वो पुकारते हैं उस अल्लाह के सिवा वो बातिल है। وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, बेशक अल्लाह ताला ही आली शान वाला और बड़ाई वाला है। तो ये अजबाब है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वही रात और दिन का निजाम चलाए हुए, और वही आली शान वाला और बड़ाई वाला है। तो जाहिर है जो उसको मानने वाले हैं वही कामयाब होने वाले हैं, और जो अल्लाह के साथ जुल्म करके शिर्क करने वाले हैं वो फिर नाकाम होने वाले। अब 12 दलाइल अक़ली आ रहे हैं शिर्क की मजम्मत के एतबार से। कितने आ रहे हैं जी? 12। तो ये हम रुकू, इस रुकू में यही गालिब मजमून है। अलम तरा अन्नल्लाह अंजला मिनस समाई माअ, क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह ही ने नाजिल किया आसमान से पानी। तो पहली दलील क्या है? तौहीद के एतबार से, यानी कोई और है जो अल्लाह के अलावा बारिश भेज सके? तो मुशरिकीन में से कोई ये दावा कर सकते हैं कि बारिश तो हमारा फला बुद्ध करता है, या फला बाबा जी जो है वो चाहे तो बारिश होगी वरना नहीं होगी। तो ये किसका किसकी कुदरत है? या अल्लाह की कुदरत है। नंबर 2, फतुज बेहुल आदो मुखजरा, और हो जाती है उससे जमीन सरसब्ज। इन अल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बीन है और हर शय से बाखबर है। नंबर 3, लहू माफ इस्लामाबाद, उसी का है जो कुछ आसमानों में, तमाम चीजें और तमाम अहले आसमान उसी के हैं। और नंबर 4, वमा फिल अर्ज, और जो कुछ जमीन में है उसका मालिक भी अल्लाह है। तो मालिक हकीकी कौन है? वो अल्लाह है, उसके अलावा कौन है जो मिल्कियत का हकदार हो। वइन्नल्लाह लहुवल गनी, 5वीं दलील, कि बेशक अल्लाह ही बेनियाज है। हमने कहा था कि वाहिद हस्ती अल्लाह की जिसे किसी चीज की हाजत नहीं, न ऑक्सीजन की, न पानी की, न खाने की, न हमारी इबादत की, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। और नंबर 6, अल हमीद, वो आपसे आप जो है तारीफ किया हुआ है। और नंबर 7, अलम तरा अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिल अर्ज, क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह ने ताबे कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में। और नंबर 8, वल फुल्का तजरी फिल बहरी बे अमरी, और किश्ती को जो चलती है समंदर में उसके हुक्म से, आप एक सिक्का लोहे का ऊपर रखें समंदर के वो नीचे डूब जाएगा, और टनों वजनी जो जहाज है वो उसमें चल रहे हैं। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत। और नंबर 9, वयुम से कुछ समा, और वो थामे रखता है आसमान को, अंतकाल कि वो गिर ना पड़े जमीन पर, इल्ला बिज़्नी, मगर उसके इज़्ज़त से। इन अल्लाह बिन नासिल रऊफ रहीम, और बेशक अल्लाह लोगों का बहुत मेहरबान मुसलसल रहम करने वाला है। और 10वीं दलील, वहुवा अल्लज़ी अहयाकुम, और वही है अल्लाह जिसने तुम्हें जिंदगी दी। तो अल्लाह के अलावा और कौन है जो मखलूक को बना सके और जिंदगी दे सके। और नंबर 10, बल्कि 11, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुम्हें जो है मौत देगा। और नंबर 12, सुम्मा युहयीकुम, फिर वही तुम्हें जिंदा करेगा। तो एक जिंदगी अभी दी है, फिर वो मौत देने वाला भी अल्लाह ही है, और फिर मौत के बाद जिंदा कौन करने वाला है वो भी अल्लाह है। इन्नल इंसान अला कफूर, लेकिन इंसान बहुत ही नाशुक्र है। हर उम्मत के लिए इबादत का तरीका है। लिकुल उम्मत इन जानना मन सका, और हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर कर दिया इबादत का तरीका। हम नासिकू, जिस पर वो चलते हैं, फला यू नाज उन्नका फिल अम्र,
बस ना झगड़ा करे वो आपसे इस मामले में। वदउ इला रब्बिक, वो यानी वदउ इला रब्बिक, बस आप बुलाइए उन्हें अपने रब की तरफ। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक आप बिल्कुल सीधी राह पर है। तो हर एक की शरीयतें मुख्तलिफ थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहकाम जो दिए गए थे यहूद के लिए, और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो इंजील लाया उसमें जो इबादत के तरीके थे। अब अल्टीमेट और मुकम्मल जो रंग अल्लाह ताला चाहता है और जो तरीके इबादत के चाहता है वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है। इसलिए सबका मामले अगर उलझे कि भाई नहीं तरीका तो यूं था यूं, तो कहा गया भाई हर उम्मत के लिए अलग तरीका, और आप जो है वो अब सीधे रास्ते पर गामजन। वैन जाद अलू का फकुल्लाह आलम बीमा तामल, और अगर वो झगड़ा करें आपसे तो कह दीजिए कि अल्लाह ही खूब जानता है जो तुम करते हो। अल्लाह याकुम बैनकुम यौमल कयामा, अल्लाह फैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान कयामत के दिन। फीमा कुम तुम फीही तख्तलिफून, उन तमाम बातों में जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो। वसत इल्मे बारी ताला, अलम तालम अन्नल्लाह यालमु मा फिस्समाई वल अर्द, क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में। इन्ना ज़ालिका फी किताब, और बेशक ये सब कुछ एक किताब में दर्ज है, नाम अमाल लोगों ने लिया है, और इसी तरह जो अल्लाह के पास लोहे महफूज है। इन्ना ज़ालिका अल्लाह ही असल, और ये पहले से सब कुछ लिख लेना मालूम होना ये अल्लाह पर बहुत आसान है। वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह, और वो इबादत करते हैं पूछते हैं अल्लाह के सिवा। मालम युनज़िल बिही सुल्तान, उन चीजों को कि नहीं नाजिल की अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील, किसी किताब में आसमानी किताब में सिर के लिए कोई दलील नहीं। तो फरमाया बमा लैसा लहुम बिही इल्म, और ना ही उनके पास इसकी इसका कोई इल्म है, यानी ना कोई अकली दलील है ना कोई नकली दलील। नकली दलील क्या होती है? जो सीना पसीना आ रही हो। नकल का मतलब वो चीटिंग नहीं, नकल उसे कहते हैं जो अल्लाह ने इल्हाम किया है। तो कुरान और हदीस ये सब नकली दलाइल है, नकल से आया, यानी जैसे अल्लाह ने दिया वैसे ही नकल होते रहे, एक ने दूसरे को बताया उसने तीसरे को बताया, तो ये नकली दलाइल कहते हैं। और जिसमें अकल लगा के जो आदमी नतीजा निकालता है उसे अकली दलाइल कहते हैं। तो शिर्क के लिए ना कोई नकली दलाइल है ना अकली दलाइल। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, और नहीं है ज़ालिमों का कोई भी मदद का। वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बैना, और जब पढ़ी जाती है उन पर हमारी वाज़े आयात। तारिफु फी वुजूहिल्लज़ीना कफरू मुनकर, तो आप मालूम कर लेते हैं चेहरों से उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया नाखुशी के असरात। यकादूना यस्तूना बिल्लजीना यतलूना अलैहिम आयातिना, करीब है कि वो हमला ही कर दे उन पर जो पढ़ते हैं उन पर हमारी आयात। यानी इतनी नफरत और गुस्सा है कि एक ही अल्लाह का जिक्र आ रहा है और हमारे माबूदों का कोई तस्करा नहीं है, तो इस पर ये नफरत का वो अल्टीमेट है कि वो हमला ही कर दे। कुल अफा उनबे हुकुम बेशर्रिन मिन ज़ालिकुम, मैं नबी कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बताऊं बदतरीन शर इनमें से। अन्नार, यानी वो है आग। वादा अल्लाह लजीना कफर, अब वादा किया है उस आग का अल्लाह ने उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया। बिअसल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है लौटने के अरबाज से। एक रुकू रह गया इंशाल्लाह बाद में करेंगे, उसमें थोड़ी सी जो है वजाहत भी ज्यादा है। इंशाल्लाह चार रकात नमाज जो है वो तरावी अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सूरह हज का आखिरी रुकू हम करें, और छह आयात पर मुश्तमिल है ये। इसमें इब्तदाई चार आयात में तमाम इंसानों को दावत ईमान, उसमें भी आप गौर कीजिएगा कि दो आयात में तौहीद का जिक्र है, एक आयत में रिसालत है, और एक आयत में आखरत की दावत को कबूल करने की दावत। तो चार आयात में दावत ईमान, अब तक ईमान कबूल करने वालों को आखिरी दो आयात में दावत अमल है। तो अब ईमान ले आए हो तो फिर ये तकाजे ईमान के उनको अदा करो। अब बहुत जोरदार मुकाम है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गैरुल्लाह की लाचारगी की मिसाल, और इसी से तौहीद को वाज़े किया जा रहा है। या युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला, ऐ लोगों बयान की गई है एक मिसाल, बस गौर से सुनो उसे। एक समय होता है सुनना, एक इस्तमिया खूब कान लगाकर गौर से सुनना। इन्नल्लज़ीना तद'ऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक हो जिन्हें तुम पुकारते हो उस अल्लाह के सिवा। लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ ला, उनकी हकीकत यह कि एक मक्खी तक नहीं बना सकती अगर ये सबके सब जमा हो जाए। तो मक्खी इंसान की नजर में बड़ा हकीर कीड़ा है, हम अपनी नाक पर भी मक्खी को बैठना गवारा नहीं करते। और कहा जा रहा है जिन्हें तुम अल्लाह के मुकाबले वो खुदा बना रहे हो, ये सब मिलकर एक मक्खी तक नहीं बना सकते।
और मक्खी बनानी तो दूर की बात है। वही असलुब हुमुस जुबाबो शैया, अगर छीन ले जाए उनसे मक्खी कोई चीज, फरमाया ला यस्तन के जूह में, तो वो उससे छुड़ा नहीं सकते उसको।
तो हालत ये मक्खी बनाना बहुत दूर, मक्खी अगर कोई चीज छीन कर ले जाए तो इनसे ले नहीं सकते। तो ये असल में हकीकत है गैरुल्लाह की। और इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए इसमें आप सबको मिला लें, यानी खुद तो वैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन उनके अलावा बड़े बड़े बादशाह जिन्हें खुदा बनाया गया, और इसी तरह जो है अंबिया कराम या मलाइका जिन्हें भी खुदा कहा जाता है, वो सब भी मिल जाए तो भी एक मक्खी तक नहीं बना सकते। आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है, लेकिन साइंसदान सारे मिलकर एक लिविंग सेल नहीं बना सकते। हालांकि इन्हें पता है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है और ये किस तरह जो है वो सब कुछ है, वो सारी कंपोजिशन जमा कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जिंदगी डालना होता है वो किसी के बस में नहीं। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज कहलाती है, ये भी क्या होता है, एक जिंदा सेल वालिद का लेते हैं, एक जिंदा सेल जो है माँ का लेते हैं, और वो अमल जो रहम में होना चाहिए वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर कर लेते हैं, और दोनों जिंदा सेक्स सेल्स को आपस में मिलाकर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उन सेलों को उठाकर रहम मादर में रख देते हैं, और इसे बड़ा गाते हैं कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो इसमें हालांकि एक जो प्रोसेस जो है वो माँ के रहम में हो रहा होता है वो उन्होंने बस माइक्रोस्कोप के नीचे किया है, बाकी जिंदगी तो डालने की उनमें कोई सलाहियत नहीं।
तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बजाय तो इनसे बुतों की और गैरुल्लाह की बेबसी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन यही आयत एक एजाज भी है कुरान का। और कुरान का एजाज ये है कि बहुत आम सी मिसाल दी जाती है जो एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी के लिए भी बहुत कुछ समझ का बाइस बनती है, बड़े पढ़े लिखे आदमी के लिए भी इसमें बहुत कुछ होता है। तो मक्खी बजाय एक आम इंसान के लिए हकीकी है, लेकिन वो शख्स जिसने जिंदगी लगाई और जवाद उसी पर खसूस इंसेक्ट के ऊपर, और वो जानता है कि मक्खी भी कोई कम चीज नहीं है, यानी इसके अंदर जिंदगी के वो तमाम निजाम मौजूद हैं जो बाकी चीजों में होते हैं। ये सांस भी ले रही है, इसके अंदर सर्कुलेशन भी है, इसकी रिप्रोडक्शन भी है, और फिर मजीद ये कि ये उड़ना भी जानती है। तो अगर गौर करें तो ये जो आम मक्खी है इसे मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, हाउस फ्लाई को, छह अल्लाह ने इसकी टांगें दी और इन टांगों के ऊपर बारीक बारीक क्लॉज है, इसलिए हर तरह की सरफेस पे बैठ जाती है, यानी वर्टिकल दीवार पर भी बैठ जाती है और छत के ऊपर अपसाइड डाउन भी बैठ जाती है, और कितना भी आप देखें स्लिपरी सरफेस हो शीशा भी उसके ऊपर भी बैठ जाती है। फिर खास बात यह कि अल्लाह ताला ने इसकी टांगों में तेज बट रख दी, तो जब इसे कोई चीज चखनी होती है तो बस उस पर चलती है तो उसे जायका मालूम हो जाता है। अगर पसंद की होती है तो एक शकर इसके अंदर अल्लाह ने दिया स्ट्रॉ की तरह, और वो निकालती है वो चीज निकल भी लेती। तो ये आप देखिए जरा सी मक्खी, जैसे दो सेट्स ऑफ विंग्स हैं इसके पास, दो बड़े पर होते हैं दो छोटे पर होते हैं, और ये जो बजिंग इसका साउंड होता है वो इसके परों से निकल रहा होता है, और ये तकरीबन 200 टाइम्स पर सेकेंड फ्लिपिंग करती है अपने परों की, यानी जो पर है ये एक सेकेंड में 200 मरतबा जो है ये उन्हें फड़फड़ा सकती। फिर आप देखेंगे कि इसके कंपाउंड आईज हैं, मेरी आपकी आंख में एक लेंस डला है, इसकी एक आंख के अंदर 4000 लेंसेज होते हैं, और 360 डिग्री का विजन होता है इसका, आप कहीं से भी हाथ लेकर जाए उसे नजर आ रहा होता है कोई, यानी 360 डिग्री विजन है, इतना सा वो कीड़ा है, लेकिन एक सेकंड के अंदर जो है वो 100 इमेजेस बन रहे हैं उसके दिमाग में। और फिर ये एक वक्त में 500 अंडे देती है ये मक्खी, और इसे पेस्ट भी कहते हैं, और ये वेक्टर ट्रांसमिशन और डिजीज ट्रांसमिशन में भी इसका बड़ा रोल है। तो आप देखें ये बजाय तो मामूली कीड़ा है, लेकिन इसी पर आदमी गौर करे तो कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत का शाहकार है ये मक्खी जो अल्लाह ने बना दी और जिसे हम बड़ी इकारत से देखते हैं। और दूसरी तरफ इसी आयत में हम बुतों की इकारत भी आ गई कि भाई ये सब मिलकर भी एक जरा सी हकीर सी मक्खी नहीं बना सकते। इस सब का नतीजा क्या है, ज़ाउफत तालिबु वल मतलूब, बहुत ही कमजोर और हकीर है ये तालिब भी और इनका मतलूब भी। तो इससे जो है बहुत खुद जो है वो समझा है, और डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम जो है उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है कुरान और इल्मे जदीद, और उसमें उन्होंने इस नुक्ते को उठाया है कि इंसान कहलाने का हकदार वही है जिसका कोई ना कोई मकसद हो, कोई आइडियल हो, कोई आजरश हो, और कोई उसका मिशन और विजन हो बाकी हैवानात से बढ़कर। तो वो असल में इंसान कहलाने का हकदार है।
और फिर जितना बड़ा मकसद होता है उतना ही आला सीरत और किरदार इंसान में पैदा होता है। देखिए मैं आपसे कहूं, ये सामने कोरंगी रोड है, कितने लोग हैं जो मेरे साथ पैदल चलेंगे कोरंगी रोड तक? तो जरा हाथ उठाकर बताएं, आप में से कितने मेरे साथ चलने के लिए तैयार है कोरंगी रोड तक पैदल यहां से? तो सब हाथ उठा रहे हैं माशाल्लाह, इतना दूर है भी नहीं, बहुत करीब है। मैं कहूं यहां से एयरपोर्ट तक पैदल, अब कितने हाथ उठाए? एक फिर भी उठ गया। यहां से लाहौर पैदल और यहां से पूरी दुनिया पैदल। तो आप देखिए जितना ऊंचा आप अपना एम लेकर जाएंगे उतना ही ज्यादा सलाहियतें और स्टैमिना और अजम वो इंसान को चाहिए। तो इससे डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम कहते हैं कि इंसान का नस्बुल ऐन जितना पस्त होगा उसका सीरत और किरदार भी उतना ही पस्त होगा। इंसान का नस्बुल ऐन जितना आला होगा उसका सीरत और किरदार भी उतना ही आला होगा। तो एक आदमी जो सेल्फ सेंटर्ड होता है तो सेल्फिश, उसका सीरत और किरदार भी बहुत घटिया होगा। वो अपने 2 रुपए बनाने के लिए कौम के 2 करोड़ रुपए बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसे अपने 2 का फायदा ज्यादा है और कौम के 2 करोड़ बर्बाद होते हैं तो हो जाए। इससे बेहतर शख्सियत होगी जो आप देखेंगे जो कौम परस्त होता है, जिसे पैट्रियोटिक कहते हैं, तो अपनी कौम और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अपनी जाती मफादात की कुर्बानी देता है। लेकिन इस पैट्रियोटिक से भी बढ़कर ह्यूमैनिटेरियन होता है, उसे सिर्फ अपनी कौम की फिक्र नहीं होती, उसे तमाम इंसानों की फिक्र होती है। लेकिन उससे बेहतर कौन है? जो गॉड सेंटर्ड होता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है, क्योंकि उसे फिर सिर्फ अपना नहीं, ना अपनी कौम, ना सारे इंसान, बल्कि कुल मखलूकात से मोहब्बत होती है, क्योंकि सारी मखलूक किसकी है? वो अल्लाह ही की है। तो उसे पानी की भी फिक्र होती है, उसे जमीन का भी ख्याल होता है, उसे नबातात का भी ख्याल होता है, उसे हैवानात की भी फिक्र होती है, उसे इंसान की भी फिक्र होती है। तो जो वहां तक पहुंचता है उस तक जो है कोई नहीं पहुंच सकता। यानी यजदा पर कमंद आवर ए हिम्मत मर्दाना, मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पर जो डालते हैं कमंद। तो हमें अल्लाह को अपना महबूब अपना मतलूब बनाना चाहिए, और इसी को सूफिया बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो वहां मतलूब और मकसूद कौन होना चाहिए? अल्लाह होना चाहिए। इसी तरह नहीं है कोई मतलूब सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई मकसूद सिवाय अल्लाह के, और नहीं है कोई महबूब सिवाय अल्लाह के। तो ये सारे दर्जात हैं कि जो हमें लेने चाहिए। इंसान के दिल में आइडियल और उसकी जिंदगी का मकसद और मतलूब वो अल्लाह की रजा होनी चाहिए। तो जिसका ये मकसद और मतलब होगा तो उसकी जिंदगी में आप देखेंगे उसका सीरत और किरदार उतना ही आला और अच्छा होगा। तो बहरहाल यहां पर ये भी एक बड़ा गहरा नुक्ता है। आगे फिर अब तौहीद के जिक्र के बाद जो है वो फरमाया कि दूसरी आयत आ रही है तौहीद पर कि शिर्क की असल वजह क्या है? मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि अल्लाह की कदर करने का हक था। तो असल वजह ये होती है, इसलिए इमाम ने तहमिया रहमतुल्लाह अलैह वो शिर्क की 2 किस्में बताते हैं, शिर्क फिर तलब और शिर्क फिर मारफा। यानी अगर अल्लाह के अलावा जिंदगी का और कोई मकसूद और मतलब है तो वो भी शिर्क है उसके नजदीक। तो असल में जिंदगी का मकसद और मतलब क्या होना चाहिए? अल्लाह की रजा। और दूसरा किस्म है शिर्क फिर मारफा, यानी अल्लाह की पहचान में धोखा खा जाना। और ये भी एक वजह बनती है कि इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना मकसद बना ले, कोई अपने कैरियर को, कोई अपने प्रोफेशन को, कोई अपने कारोबार को, कोई अपनी बिरादरी को। हालांकि सबसे बड़े जो मकसद होना चाहिए था वो अल्लाह की रजा होनी चाहिए। तो फरमाया मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर का हक था। इन अल्लाह अल्लाह कवीयुन अजीज, और बेशक अल्लाह बहुत ताकतवर और जो है सब पर गालिब है। और जितनी इंसान के दिल में अल्लाह की कदर होगी उतनी उसकी जिंदगी में जिहाद नजर आएगा, यानी अल्लाह की अल्लाह को राजी करने की जद्दोजहद नजर आएगी। चुनाचे अब एक आयत में फिर ईमान पे रिसालत का जिक्र और एक आयत में उसके बाद ईमान पे आखिरत का जिक्र। तो फरमाया अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुला व मिनन नास, अल्लाह ताला चुन लेता है फरिश्तों में से भी जिसे चाहता है अपने पैगंबर के तौर पर, इंसानों में से भी। तो ये सिलसिला है रिसालत जो है, और आप कहेंगे इसमें वसायत वही जो है वो 3 है। सबसे पहले ये कि अल्लाह का पैगाम है इंसानों के नाम, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने यह पैगाम किसे दिया? रसूल मलक फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने ये पैगाम किस तक पहुंचाया? रसूल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और रसूल बशर ने यह पैगाम किसे दिया? उम्मत मुस्लिमा। लेकिन ये पैगाम है किसके लिए? तमाम इंसानों के लिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे दूसरों तक पहुंचाएं। ये 2 लफ्ज होते हैं इस्तीफा और इस्तबा। इस्तीफा कहते हैं बस टू चूज ये होता है इस्तफा, और इस्तफा होता है टू सेलेक्ट, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब आदमी को कोई चीज चूज करनी होती है तो कोई मकसद नहीं होता, बस आप बाद में गए सौ फूल से आपने एक उठा लिया, तो ये क्यों लिया, बस आपको ये पसंद आया, तो ये इस्तफा होता है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों में से और इंसानों में से इस्तफा किया, जिसे चाहा पसंद कर लिया अपने इस काम के लिए। और एक होता है इज्तबा, इसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्म बना है मुज्तबा। तो इज्तबा होता है टू सेलेक्ट, और सिलेक्शन होता है किसी मकसद की खातिर। तो बहरहाल ये इसका भी आगे जिक्र आ रहा है। तो यहाँ इस्तफा बयान हुआ है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम बनता है मुस्तफा। तो ये अल्लाह का सिलेक्शन है कि उसने फरिश्तों इंसानों में से अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जो है मुंतखब कर लिए। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला तो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला, लेकिन इंसान में सलाहियत नहीं है कि वो अल्लाह की आवाज बराह रास्त सुन सके, और इंसान की आंखों में ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला को बराह रास्त देख सके। इसलिए उसने ये सिलसिला रखा है अंबिया का और फरिश्तों का, जिनके जरिए फिर इंसान तक अल्लाह ताला की बात पहुंचाई जाती है। तो भाई यालम बैना इधी मा खलफा हूँ, अब आखिर कर दिया है, वल्लाह जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। वही अल्लाह तो जाओ उमूर, अल्लाह की तरफ तमाम मामला लौटाए जाने के लाने, और ये कौन सा वक्त है, ये क़यामत का वक्त है। तो बहरहाल इन चार आयतों में एक भरपूर दावत है तौहीद के अदबार से, और जो मुशरिकीन है और जो झूठे माबूदात है उनकी बेबसी भी बयान कर दी, और फिर ये कि रिसालत क्या है वो भी बयान हो गई, और आखिरत का भी जिक्र आ गया। अब मानने वालों के लिए दावत अमल है, और चार पांच बातों का जो है वो मुतालबा आ रहा है। फरमाया या अय्युहल लजीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इरकाउ वसजुदू, रुकू करो और सजदा करो। पहला मुतालबा रुकू करो, दूसरा है सजदा करो। अब हम जानते हैं ये रुकू और सजदा ये नमाज के अराकीन है, और इससे मुराद जो है वो नमाज कायम करना। तो आगे हम देखेंगे कि सिर्फ नमाज ही मतलब नहीं है, बल्कि अरकान इस्लाम का मुतालबा है कि अब ईमान ले आए हो तो अरकान इस्लाम अदा करो। उसमें सबसे पहले कौन सा है, वो नमाज है, जनाज़े नमाज से बात शुरू की गई। और फरमाया वअबुदू रब्बकुम, नंबर तीन, और इबादत करो अपने रब की, और नंबर चार वअफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, और खैर के काम करो, नेकी के काम करो ताकि तुम फला पा सको। तो इबादत, इसमें खास बात तो ये है कि नमाज का अलहदा जिक्र है, इबादत का अलहदा जिक्र है। तो अक्सर बेहतर हम नमाज रोजे ही को इबादत समझते हैं, जबकि ये इबादत है, और इबादत क्या है, पूरी जिंदगी में हर मामला अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करना, और अल्लाह की मुकम्मल इताअत और मोहब्बत के जज्बे के साथ जिंदगी का एक एक मामला जो है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करना, ये इबादत। और वफ़अलुल खैर में भलाई के काम है जिनसे लोगों को फायदा पहुंचे। तो फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। ये सजदा यहाँ पर इमाम शाफी के नजदीक है, वरना जी ज्यादा सजदे अमूमन बातचीत सुन जी बातें उनमें ये सजदा नहीं। आगे फिर पांचवा मुतालबा आ रहा है, वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, और जिहाद करो अल्लाह की राह में जैसा कि उसकी राह में जिहाद करने का हक है। अब इसके जो है वो चार वजूहात भी आ रही है कि क्यों हमसे ये अल्लाह ताला मुतालबा करें। पहला मुतालबा रुकू का, फिर सजदे का, फिर इबादत करो अपने रब की और भलाई की काम करो, और मजीद ये कि अल्लाह के राह में जिहाद करो। क्यों? नंबर एक, हुआ इज्तबा को, बस अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया। अब ये इज्तबा होता है सिलेक्शन, और बात आई थी कि जैसे यहूदी कहते हैं कि वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, तो यहाँ मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने यही मुकाम दिया है कि हम चूजन लोग हैं अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ने हमारा सिलेक्शन किया है। वजह क्या है? क्योंकि अब अल्लाह का पैगाम और जो लोगों तक जाना है, इसमें दरमियान में जो वास्ता रह गया वो यही उम्मत रह गई है जो ईमान लाई है। अब ये जो अल्लाह की वही है कुरान और शरीयत, वो हमें दूसरों तक पहुंचाना है। तो नंबर दो, वमा जअला अलैकुम फिद दीन मिन हरज, और ये जिहाद अल्लाह की राह में इसलिए करो क्योंकि उसने नहीं रखा दीन में कोई हरज। और नंबर तीन, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये दीन के लिए जद्दोजहद, ये जिहाद, ये तरीका है तुम्हारे वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हुवा समाकुम अल-मुस्लिमीना मिन क़ब्लु व फी हाज़ा, उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इस कुरान में भी और इससे पहले किताबों में भी। और नंबर चार, लियकूना रसूलु शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल हो जाए तुम पर गवाह, व तकूनु शुहदा अलन्नास, और तुम हो जाओ गवाह लोगों पर। तो ये गवाही जो है सबसे पहले तो कौली देनी है कि भाई ये अल्लाह का दीन सच्चा है, लेकिन अगर हमारा
अमल इसके मुताबिक नहीं है तो हम ही अपनी दावत की सबसे पहली रुकावट है। इसलिए उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह की वो बात याद आ जाती है, जब ये रशिया में कम्युनिस्ट इनकलाब अपने जोरों पर था तो वो गए यहाँ से और उन्होंने लेनिन से मुलाकात करनी चाहिए, उसकी सेक्रेटरी से हुई, लेनिन से तो मौका नहीं मिला, और उन्होंने फिर उसे समझाया इस्लाम का पूरा निजाम, निजाम मईशत और माशर और निजाम हुकूमत कैसे चलता है, तो वो बड़ा मुतासर हुआ। लेकिन मौलाना कहते हैं बस उसने मेरी दो घंटे बात सुनी, लेकिन उसकी एक बात सुनकर मेरी आंखें झुक गई, फिर उठनी लगी। उसने कहा मौलाना जो निजाम आप बता रहे हैं ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये बताएं कि आपने अपने आने से क्यों नहीं कायम किए, तो ये इतनी अच्छी चीज है तो आप क्या नजर आनी चाहिए थी, आप क्या तो है नहीं तो हम क्या करें। तो ये एक मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है कि हम जिस दीन के दाई हैं उस पर अमल करने वाले नहीं, हमने अपने यहां उस अल्लाह की बड़ाई को नाफिज नहीं किया, ना हमारे पांच छह फुट के जिसम पर अल्लाह बड़ा है, ना हमारे घर में अल्लाह बड़ा है, ना माशरे में अल्लाह बड़ा है। तो अल्लाह की बड़ाई की हम बात तो कर रहे हैं, वो निजाम तो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कहीं मौजूद नहीं। तो इसलिए ये जो ये जिम्मेदारी है शहादत अलम नास की कि लोगों पर गवाह बन जाना, ताकि क़यामत के दिन वो ये ना कह सके कि अल्लाह हम जानते नहीं थे और इनके पास अमानत थी इन्होंने पहुंचाई नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी, ये अदा उसी वक्त होगी जब हम एक साइजेबल मुल्क पे दीन के पूरे निजाम को गालिब करके दिखा सकें, फिर हम लोगों से कह सकेंगे कि आओ भाई लोगों देखो ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम, आओ भाई लोगों देखो ये होता है माशी निजाम, कि हमने किस तरह जो है 0% इंटरेस्ट पर मईशत को कहां से कहीं पहुंचा दिया, हमारे यहां से गुर्बत खत्म हो गई, आओ भाई देखो ये होता है माशरती निजाम, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है, और जो है देखो किस तरह हमने है जो है नॉर्थ के दरमियान गैप खत्म कर दिया, कैसे लोग सहूलत से अमदो अमान से, लेकिन ये तो हमारा कोई नहीं है कहने का, क्योंकि हमने अपने घरों में अपने माशरे में इसे कायम करके ही नहीं दिखाया। तो बहरहाल ये हमसे मुतालबा है, अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया हुआ मौलाकुम, बल्कि बात से वो बिल्ला और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह को, क्यों हुआ मौलाकुम, वो तुम्हारा का एहसास है, फनेम अल मौला व नेम अल नसीर, और वो कैसा अच्छा कारसाज है और कैसे ही अच्छा जो है वो मददगार है। तो बाल कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो बात अगर समझ आ गई है, अल्लाह का रिसालत का आखरत पर ईमान रखते हो तो ये दीन के तकाजे हैं आगे जो हमसे किए जा रहे हैं, अरकान इस्लाम को अदा करो, नंबर दो भलाई के काम करो, और नंबर तीन जो है वो अल्लाह की राह में जिहाद करो। अगर इन्हीं को इसमें जमा कर दिया जाए तो अल्लाह ताला हमें ये करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम कैसे किए थे, आपने एक जमात बनाई और उसके जरिए जो है फिर दीन की इकामत की जद्दोजहद की और लोगों को दावत दी कि दीन क्या है, जिन्होंने उसे कबूल किया आपने उन्हें मुनज़्ज़म किया, उनकी तरबियत फरमाई, और फिर जिन्होंने मुखालफत की आपने 13.5 बरस उस मुखालफत का जवाब सिर्फ समय से दिया। लेकिन जब आपने कुव्वत आ गई हिजरत के बाद तो एक लंबा जो है मामला है किताल का, तकरीबन 6 साल है जो आपने फिर किताल किया है, आपने तलवार ली और बातिल के अलमबरदारों से मुकाबला किया और गजवा बदर से लेकर फतह मक्का तक 28 गजवात और 54 सराए, यानी टोटल आप देखेंगे 82 फौजी वही बात है, उसके बाद ये दीन गालिब हो। तो अल्लाह ताला हमें भी इसी तरीके पर काम की तौफीक अता फरमाए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि ला युस्लिमु आखिरु हाज़िहि उम्मत कमा चला भी अबल, इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह नहीं हो सकती मगर उसी तरीके पर जिस तरीके पर इसके पहले हिस्से की इस्लाह हुई। तो घरों में बैठ के अपने अपने नौकरियां अपने अपनी कारोबारों को देखने से दीन का काम नहीं होता, दीन के काम के लिए इकट्ठा होना होगा, मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी और उसका फायदा भी फिर सभी को होगा जब ये एक हक का निजाम गालिब हो जाएगा, हर एक को उसका हक मिलेगा और जो फसाद और परेशानियां तकलीफ दुनिया की भी है वो भी दूर होंगी। लेकिन ये दीन का गलबा महज दुनिया के लिए मतलब भी नहीं, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया और ताकि अल्लाह हमसे राजी हो सके, तो इसी इरादे के साथ जो है ये काम करना है, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अगली सूरत सूरह मोमिनून है। अब बंदा मोमिन की बुनियादी सिफात जो है पहले ही रुकों में बयान हो रही है। इस सूरत के हवाले से जो है जामे तिर्मिजी की रिवायत है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त 10 ऐसी आयात नाजिल हुई हैं कि अगर कोई इनके मियाद पर पूरा उतर जाए तो यकीनन जन्नत में जाएगा। और ये हदीस जान करके आपने फिर ये इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई, तो दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमें इसके मिसदाक फरमाए। سورہ مومنون اب یہ طویل ترین جو سلسلہ چل رہا تھا سورہ یونس سے سورہ مومنون تک تقریباً یہ 14 سورتیں ہیں اور یہ مکی سورتیں ہیں ان میں سے یہ آخری سورت ہے اس کے بعد پھر مدنی سورت آ رہی ہے جو سورہ نور ہے اور اس سورت کو سورہ مومنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات بیان ہوئی ابتدائی جو 10 آیات ہیں ان میں ظاہری صفات آ رہی ہیں اور پھر درمیان میں آیات 57 سے 63 تک باطنی صفات آ رہی ہیں موضوع اگر سورت کا دیکھیں تو دنیا اور آخرت میں عزت کا دار و مدار تعلق باللہ کی درستگی پر ہے تو ذرا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صفات اس سورت میں آ رہی ہیں ہمیں پیدا فرمائے جنت الفردوس کے وارث کون تو ان کی جو ہے تقریباً 6 صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہے پہلی اس میں نماز کی حفاظت دوسری وقت کی حفاظت پھر نفس کی حفاظت پھر عصمت کی حفاظت امانت کی حفاظت اور عہد کی حفاظت تو یہ 6 صفات آ رہی ہیں ان پر ذرا غور کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً کامیابی نکال لے گئے اہل ایمان اور فلاح کا لفظ جو ہے پھاڑ نکالنے سے ہوتا ہے تو یعنی یہ جو ہم مادی غلافوں کی گرد جو ہے روح جو ہے ہماری اس کے اندر لگتی ہوئی ہے تو ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر روح تک پہنچ جانا وہ اصل میں کامیاب جس نے اپنے آپ کو ان مادی غلافوں میں دفن کر لیا وہ نامراد ہوتا ہے اور جو اس مادی غلاف سے نکل کر حقیقت تک پہنچ جائے وہ کامیاب ہے تو فرمایا قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان اب ان کی پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں ویسے خشوع کے لوگوں میں معنی جھکنا ہوتا ہے آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اس کے لیے بھی خاشعین کے الفاظ ہیں تو خشوع کے معنی جھکنا نماز میں جھکنے سے کیا مراد ہے تو صحابہ کہتے ہیں اس کا مطلب ساکنین لیا گیا ہے یعنی نماز ایسے پڑھنا بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ جس میں کوئی حرکت نہ ہو صحابہ کے لیے آتا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نماز پڑھتے تھے جیسے کوئی سوکھی لگتی زمین میں گاڑ دی گئی تو پوری کانسنٹریشن اللہ کی طرف اور اب آپ کا ایک بات یہ ہے کہ بلکہ یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد بھری ہوں گی لیکن میں ایک آدمی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا تو یہ علم ہے جو قیامت سے پہلے جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا تو یہ خشوع بھی اسی طرح لوگوں کے کم ہو جائے گا اللہ ہمیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ تھے جنہیں جب نماز پڑھ چکتے ہیں تو انہیں اس کا 10واں حصہ حاصل ہوتا ہے یعنی اجر و ثواب کا بعض کو اس کا 9واں 8واں 7واں 6ٹا 5واں یہاں تک کہ 4تھا 3را یا آدھا حصہ حاصل ہوتا ہے اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ وجہ خشوع میں کمی کی وجہ سے جتنا خشوع زیادہ ہوگا نماز میں اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا تو یہاں بندہ مومن کی پہلی صفت تھی اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرنا ہے اور بہرحال حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرنی چاہیے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں اگر یہ کیفیت داری ہو تو بھی خشوع پیدا ہوتا ہے یا پھر یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا پھر بعض موقع پر یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہوگی تو یہ کیفیت اگر سوچی جائے کہ شاید یہ آخری نماز ہے تو اسی طرح نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کا اگر آدمی غور کرے کہ میں اس میں کہہ کیا رہا ہوں تو اس سے بھی یہ خشوع پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس وقت رکوع کر رہا ہوں میں صرف الفاظ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں میں سجدے میں اب کیا کہہ رہا ہوں میں تیار میں بیٹھ کر میں اللہ سے کیا گزارشات کر رہا ہوں تو اس کا معنی پتا ہو تو بھی یہ خشوع پیدا ہوتا ہے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں تو یہ دوسری چیز آ رہی ہے یعنی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے اللہ یاد سے بچتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو یہ کرنے کے ہیں دوسرے وہ کام جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو بلکہ جن میں نقصان ہو جائے تو دنیا کا ہے آخرت کا ان کاموں سے بچنا چاہیے تیسرے کام وہ ہیں جن میں بظاہر نہ کوئی فائدہ ہو نہ کوئی نقصان ہو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے نہ نقصان جیسے اخبار پڑھنا ہے کوئی کھیل تفریح کر دینا ہے تو اس طرح کے بہت سارے مشاغل ونڈو شاپنگ کرنا ہے تو بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں بھی نقصان ہے کون سا نقصان ہے آخرت میں نقصان اس کی بس ایک روایت سنا کے آگے بڑھوں گا یہ روایت جو ہے نصف دین کہلاتی ہے علماء کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ 500,000 احادیث میں سے انہوں نے 5 احادیث منتخب کی اور اپنے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک روایت یہ بھی. اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے 4800 روایات ان میں سے 4 منتخب کی، اور وہ کہتے تھے یہ کل ہے دین کا، ان میں سے ایک یہ روایت. اور روایت کیا ہے؟ من حسن الاسلام مرئی ترکہ ما لا یعنی، ایک شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کرے، یعنی وہ امور جن میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن انہیں ترک کرے گا تو پھر یہ وقت لگے گا جہاں لگنا چاہیے. اور ٹائم مینجمنٹ بھی جو لوگ دیکھتے ہیں وہاں بھی اس کا ٹرسٹ آف دا میٹر ہی ہے کہ لفظ کاموں سے بچا جائے.
تو بہرحال فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیکار لفظ کاموں سے بچتے ہیں. نمبر 3 والذین هم للزکات فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں.
ایتائے زکات آتا ہے، جو زکات جو ہے سرائی معنوں میں ہوتی ہے، اور یہاں آ رہا ہے وہ زکات کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے تزکیہ. اور تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ عمل ہے جو باغ میں مالی کر رہا ہوتا ہے، وہ پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر وہاں بیج ڈالتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے، یہاں تک کہ ایک پودا نکل آتا ہے، لیکن صرف مطلوبہ پودا نہیں نکلتا بلکہ اس کے ساتھ جھاڑ جھنکار بھی اگنے لگتے ہیں. تو مالی ہاتھ میں ایک جو ہے کھرپی لیتا ہے اور وہ غیر مطلوبہ جو جھاڑ جھنکار ہے اسے کھرچ کھرچ کے نکالتا ہے. یہ عمل تزکیے کا ہے، دل میں اللہ کی محبت کو بڑھانا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے ساتھ بہت ساری غیر اللہ کی محبتیں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، انہیں کھرچ کھرچ کے دل سے نکالتا ہے تاکہ اللہ کی محبت جو ہے وہ بڑھے. تو یہ تزکیے کا عمل ہے اور یہ لوگ یہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا بریک جو ہے یہ مال کی محبت ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جتنا بھی ایکسیلیٹر دیں لیکن بریک دبایا تو گاڑی ہلے گی نہیں. پہلا کام یہ کہ بریک 6 پاؤں اٹھایا جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، تو پھر موقع ہوتا ہے. مال کی محبت کم ہوگی تو پھر اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی، کیونکہ مال جس پر خرچ کیا جاتا ہے اس چیز کی محبت دل میں آتی ہے. تو یہ مال اللہ کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی. تو نمبر 4 والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں کے، فانهم غیر ملومین، کہ ان پر جس کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. جب اسلام آیا تھا تو سب کنیزوں کا عام رواج تھا، تو شروع شروع میں کنیزوں کا معاملہ رکھا گیا، لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ، اور جو ہے ان کی حفاظت کی جائے، اور جو مالک ہوتا تھا وہ جنسی تعلق بھی قائم کر سکتا تھا لیکن وہ دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. اور اگر کنیز کہیں اور شادی کی اسے اجازت دے دی جائے تو مالک کے پاس سے یہ خود اس کے استفادے کی جو اسے اختیار تھا وہ ختم ہو جاتا. تو یہ کہ اگر اس کنیز سے اولاد ہو جائے تو وہ اس مالک کی حقیقی اولاد کی طرح ہوتی ہے اور اس سے وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، اور یہ ام الولد کہلاتی تھی ایسی کنیز، اسے پی ایچ ڈی کی بھی اجازت دی تھی. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ کنیزوں کی اجازت دی گئی، لیکن پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو اس انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا گیا. البتہ اس کی ممانعت قرآن و حدیث میں کہیں واضح نہیں ہے، تو اس کی امکان ہے کہ شاید آخری دور میں دوبارہ شروع ہو جائے، لیکن اس وقت ختم ہو گیا. اب یہ کسی غریب عورت کو نوکری کا بہانہ دے کر کسی ملک میں بھیج دینا، وہاں کنیز بنا کر بھیج دینا، اس پر ان آیات کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اب یہ انسٹیٹیوشن بند ہو چکا ہے اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے جنسی تسکین کا، وہ ہے بیویاں.
تو فرمایا کہ نیک لوگوں کی صفات نہیں کہ وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں.
اب یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو سطح کو کھولتے نہیں ہیں، سطح کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ سطح کا غلط استعمال نہیں کرتے. شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا یہ بھی عصمت کی حفاظت میں سے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری وہ جو تمہارے دو نالوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی ہم ضمانت دیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. فرمایا فمجد دوا ورا ذلك، اور جو کوئی اس کے علاوہ ذریعہ اختیار کرے جنسی تسکین کا، فاولئک هم العادون، بس وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اب موقع نہیں ہے، بس میں ایک فہرست لکھ دیتا ہوں کہ جنسی تسکین کے وہ ذرائع جو درست نہیں ہیں اور جن سے پھر باسکوش ہوگی، اور جو حد سے بڑھنے والے طریقے ہیں، انسسٹ ہے، سالمی ہے، گیزم ہے، لیزبینزم ہے، بیسٹیلیٹی ہے، سیڈزم، موزائچزم، ایگزیبیشنزم، وائرزم، ٹرانسویسٹزم، ٹرانسسیکشوالزم اور ماسٹربیشن، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اس کا عمر اجازت نہیں دیتے ماسٹربیشن میں بھی. ایک روایت میں تو کہا گیا ایسے لوگ جو اپنے ہاتھوں سے جنسی
जज्बे की रस्सियां कहते हैं उनके ये हाथ क़यामत के दिन हावला होंगे।
तो अल्लाह ताला बहरहाल जायज जरियों से हमें अपने जिनसी जज्बे की तस्कीन की तौफीक अता फरमाए। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊ,
और ये वो लोग हैं जो अपनी अमानतों और अपने वादों की भी हिफाजत करते हैं। अब अमानत सिर्फ यही नहीं है कि कोई हमारे पास माल रखवा जाए कि भाई ये मेरा माल रखिए मैं बाद में आपसे देता हूँ, बल्कि किसी का राज हमारे में वो भी अमानत है। कोई हमसे मशवरा मांग रहा है वो भी अमानत है। किसी मजलिस में कोई खास गुफ्तगू की गई है कि भाई ये बात बाहर ना बताइए, तो ये भी अब उस मजलिस की अमानत है। इसी तरह जो हमारे पास इल्म है, इख्तियार है, ये भी अमानत है। फिर ये जो वोट का या राय देने का हमें हक दिया जाता है वो भी अमानत है कि अहले हक को अपनी राय या वोट दें, ये भी अमानत में आ जाता है। तो ये कि ये दीन भी अमानत है, कुरान है, शरीयत है, अहदीस है, ये भी हमारे पास अमानत है जो हमने दूसरों तक पहुंचाना है।
इसी तरह वादा जो है, बहुत सारे वादे तहरीरी होते हैं और बहुत सारे अनरिटन वादे होते हैं। एक वादा आदमी अपने आप से करता है, एक अल्लाह से वादा करता है, फिर इंसानों के दरमियान के जितने मामला आते हैं सब वादों का मिश्रण है।
आपने कहीं किराए पर घर लिया तो उसमें रेंट एग्रीमेंट होता है, आपने तय किया होता है मैं ये इससे फैसिलिटेट करूंगा और इतने मैं जो है तुम्हें दूंगा। कहीं आप जॉब कर रहे हैं वहां एम्प्लॉई एग्रीमेंट होता है, ये सब बात है। तो अगर हम अपने वादों को पूरा करने वाले बन जाए तो बैंकों में इंसान सारे मामला दुरुस्त हो जाए। और इसमें जो अनप्रोडक्टिव इखराजात हैं जो सिर्फ वादा खिलाफी की वजह से ऊपर लगाने पड़ते हैं, सुपरवाइजर्स उनके ऊपर, मैनेजर्स उनके ऊपर जो है एंटी करप्शन खुद करप्शन कर रहा होता है, उसका करप्शन पकड़ने के लिए विजिलेंस के इदारे उनके इतने तुमार खर्चे, ये सब बच जाते हैं आदमी अगर उसे पता हो कि भाई ये आदमी वादा खिलाफी ही करेगा, जो कह रहे ही कहेगा।
तो अल्लाह ताला हमें इन सिफात का फुगर बनाए। फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यानी तमाम नमाजों की हिफाजत करते हैं और उन्हें उसके सही वक्त पर अदा करते हैं। तो आप देखेंगे अव्वल और आखिर नमाजों का जिक्र है,
तो एक मोमिन की जिंदगी की फजील वो नमाज है, उसके सारे मामला नमाज के साथ है। इसलिए जो नमाज में दुरुस्त रहेगा इंशाल्लाह वो आगे मामला में भी दुरुस्त रहेगा। तो रोजे महशर के जहां गुदाज बबल अब बनी कोशिश नमाज बबल, सबसे पहले नमाज के बारे में बात दुरुस्त होगी और जो इसमें सही रहेगा वो इंशाल्लाह बाकी मामला में भी सही रहेगा। और जो अल्लाह ही के साथ सही नहीं है तो बाकी इंसानों और दूसरों के साथ क्या सही होगा।
तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाला बनाए। ऐसे लोगों के लिए बशारत आ रही है, उलाएका हुमुल वारिसून, यही लोग असली वारिस हैं।
और वारिस को फिक्र नहीं होती, उसका हिस्सा तय शुदा है,
वो उसे मिलकर रहेगा। और ये किन किस चीज के वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसून अल-फिरदौस, और यही लोग हैं जो वारिस हैं फिरदौस के, हुम फीहा खालिदून, और उन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ये नेमतें हमें भी अता फरमाए। आगे फिर इंसानी तकलीफ के मराइल आ रहे हैं और ये सब जो है वो अकली दलाइल है तौहीद पर, अल्लाह की कुदरत पर। वलकद खलकना इंसान, और बेशक हमने पैदा किया इंसान को, मिन सुलालतिन मिन तीन, यानी खुलासे से मिट्टी के, जिसे हम नुतफा भी कह देते हैं, या आप कह दें कि इब्तदाई में मादा बईद यही था कि मिट्टी से अल्लाह ने बनाया था। और नंबर दो, सुम्बा जानना हो नुतफा, फिर हमने बना दिया उसको नुतफा, फी करारिम मतीन, एक नहायत महफूज मुकाम में। नंबर तीन, सुम्बा खलकना नुतफता अलाका, फिर हमने बना दिया नुतफे को अलाका, जिसे हमने कहा था कि रहम मादर में जनीन की सूरत में जब इंसान होता है तो रहम मादर से मुतालिक होता है, उससे मुअल्लक होता है। अगर जाहिरी आंख से देखा जाए तो जमे हुए खून की बूंद होता है इंसान। फखलकना अलाका मुजगा, और हमने फिर बना दिया उस अलाका को मुजगा, यानी गोश्त का एक लोटड़ा। तो खलकना मुजगता इजामा, फिर हमने बना दिया उस लोटने में हड्डियां। तो कसाउना लिजामा लाहमा, फिर हमने पहना दिया हड्डियों को गोश्त। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हमने पैदा कर दिया उसे एक नई तकलीफ में, यानी इसमें रूह भी डाल दी गई। और हम ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत हमने पहले भी पढ़ी थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान रहम मादर में 40 दिन नुतफा रहता है और 40 दिन अलाका रहता है और 40 दिन मुजगा रहता है, उसके बाद अल्लाह ताला एक फरिश्तों को भेजते हैं जो उसके जिस्म में उसकी रूह को फूंक देता है। तो ये 40 दिन के गोया 4 महीने का जब वो बच्चा रहम मादर में होता है तो एक फरिश्ता आकर उसके रूह में रूह फूंक देता है उसके जिस्म में। फतबारक अल्लाह अहसन अल खालिकीन, बस कितना बाबरकत है वो अल्लाह जो बेहतरीन पैदा करने वाला है।
सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, अब अगला मरहला भी आ रहा है कि इसके बाद फिर तुम मरने वाले भी हो। अब यहाँ हमेशा की जिंदगी नहीं, बच्चा होकर आदमी यहाँ पैदा हो जाता है लेकिन हमेशा के लिए, बार दफा ये जिंदगी चंद लम्हा करो, पैदाइश के साथ ही मौत हो जाती, बार दफा ये आदमी जवानी अधेड़ उम्र बुढ़ापे तक भी पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद अगला मरहला भी, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, अभी यकीनन क़ियामत के रोज तुम्हें दोबारा उठाए जाओगे। अब ये गोया हमारा पूरा वजीज वजूद भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी दलील है। अब आगे अस्बाब अबकाए इंसानी आ रहे हैं, पहले इंसान की तकलीफ का जिक्र, अब इंसान की जिंदगी की बका के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनका भी बयान, लेकिन ये खुद भी दलाइल है अल्लाह के वजूद में। तो दलील आपा की पहले, वलकद खलकना फौकुकुम सबअ तराइक, और हमने पैदा कर दिए तुम्हारे ऊपर सात तबके, और इससे सात रास्ते, और ये सात आसमान जो है ये गोया फरिश्तों की गुजरगाहें। वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफिलीन, और हम नहीं अपनी मखलूक से गाफिल। वअंज़लना मिनस समाइ माअं बिक़दर, इसी तरह दलील माई, और हमने नाजिल किया आसमान से पानी एक अंदाजे के मुताबिक। फअस्कन्नाहु फिल अर्ज़, फिर हमने ठहरा दिया उसको जमीन में, ये बात नहीं सारा का सारा बहकर भी समंदर में जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने जमीन में ही जौहर बना दी, कहीं चश्मे हैं, कहीं तालाब हैं, कहीं जो है इसी तरह अंडरग्राउंड पानी के बहुत बड़े बड़े जखायर हैं, और फिर पूरे साल इंसान उसे इस्तेमाल करता रहता है। वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और बेशक हम उसके ले जाने पर भी पूरी तरह कादिर हैं। इसी तरह दलील नबाताती आ रही है, फंशाना लकुम बिही जन्नात, फिर हमने पैदा कर दिए तुम्हारे लिए उस पानी के जरिए से तरह तरह के नबातात, तरह तरह के बागात, मिन नखीलों व अनाब, यानी खजूरों व अंगूरों के, लकुम फीहा फवाकिहू कसीरा, इन सब में तुम्हारे लिए बहुत से मेवे, व मिन्हा तअकुलून, और फिर उनसे तुम खाते हो। तो दलील न बताती, व शजरतन तखरुजु मिन तूरी सीना, और एक दरख्त भी जो निकलता है तूर सीना से, ये इशारा है जैतून की तरफ। अतंबुतु बिद्दुहद, क्या वो उगता है लिए हुए रोगन, वसबगिल आकिलीन, और इसी तरह सालन खाने वालों के लिए वो फल भी है और उससे तेल भी निकलता है, वो जैतून का तेल खुद एक पूरी जगह। इसी तरह दलील अनामी आ रही है, व इन्ना लकुम फिल अनामी लाइबरा, और बेशक तुम्हारे लिए इन चौपायों में भी बड़े इबरत का मुकाम है। नुस्की को मिम्मा थी बुतूनिया, हम पिलाते तुम्हें उससे जो उनके पेटों में, इशारा दूध की तरफ। व लकुम फीहा मनाफिउ कसीरा, और इन चौपायों में तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है, ये तो वहीं से मिल जाता है। इसके अलावा फिर ऊन है, फिर उसके चमड़े से क्या कुछ हम नहीं बना रहे, फिर ये चौपाए ऐसे की कोई चीज जाहिर नहीं होती, यहां तक कि इनकी हड्डियों से भी गैलेटस बन रहा है, और क्या क्या जो है चीजें उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उन पर सवारी करना है और बाल बाजारी और दीगर कामों में इस्तेमाल करना है। तो फरमाया कि इन चौपायों में तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं। वमिन ताकुलून, और फिर इनमें से तुम खाते भी, उन्हें जिबा करके फिर गोश्त भी हम इस्तेमाल करते हैं। वालेहा वालल फुल्की तुहमलून, अब दलील फुल्की, और फिर इन चौपायों पर भी और फिर किश्तियों में भी तुम सवार हो गए। अब ये तो थी अकली दलाइल अल्लाह के वजूद पर, अब नकली दलाइल आ रहे हैं इसके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये तकरीबन इनका जिक्र आ रहा है, गोया ये नकली दलाइल है तौहीद पर। फरमाया वलकद अरसलना नूहन इला कौमी, और बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। फकाला या कौम अबुदुल्लाह, बस उन्होंने कहा कि मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अब उनकी दावत जो है बयान हो रही है। मालकुम मिन इलाहिन गैरु, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद सिवाय उस अल्लाह के। अफला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं। फकाला वला अल्लज़ीना कफरू मिन कौमी, बस कहा सरदारों ने उनकी कौम में से जिन्होंने कुफर किया। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, तीन एतराज़ात जड़ दिया उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से। पहले कहा कि ये नहीं है मगर तुम्हारी जैसा एक इंसान। युरीदु अन यतफज़्ज़ल अलैकुम, ये बस चाहता है कि ये फजीलत हासिल कर ले तुम पर। वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ला मलाइका, तो उनके जवाब का सवाल का जवाब दिया जा रहा है, अगर अल्लाह चाहता तो नाजिल कर देता फरिश्तों को। मा समयाना बिहाज़ा, और वो दूसरा उनके एतराज के नहीं सुनी हमने ये बात, ये एक तौहीदी का जिक्र करें। फी आबाइन अल-अव्वलीन, अपने पहले बाप दादाओं से। और तीसरा एतराज, इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्ना, मगर ये तो एक आदमी है जो मजनून है जिस पर जिन सवार हो गया माज़ल्ला। फतरबसु बिही हत्ता हीन, बजरा इंतजार करो कुछ मदद, यानी खुद ही हलाक हो जाएगा।
इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, काला रब्बिन सुन्नी बीमा कर जबो,
समा के मेरा मेरी मदद फरमाई उस पर जो ये मुझे झुटला रहे। वाहु हैना इलाई, बस हमने वही की उनकी तरफ, अनिस्ताइल फुलका बे आयुनेना व बाहियेना, बस आप तैयार कीजिए हमारी जानिब से एक कश्ती हमारी आंखों के सामने यानी हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक। फैजा जा अमरुना फारत तन्नूर, फरमाया जब आ गया हमारा हुक्म और तनूर जो है वो पानी उगलने लगा। फसलुक फीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन, अब कश्ती के मुसाफिरों का जिक्र आ रहा है, तो बिठा लीजिए इसमें हर किस्म के जो है मादा और मानस यानी ये जानवर, ये पहले सवाल है। नंबर दो, वाहलका इल्ला मन सबका अलैहि अल-क़ौलु मिन्हुम, अपने घर वालों को भी सिवाय उनके जिन पर पहले ही से बात तय हो गई है यानी वो पीछे रहने वाले हैं, इशारा उनकी ज़ौजे और एक बेटे की तरफ है। वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, और ना कलाम कीजिएगा मुझसे इन ज़ालिम लोगों के बारे में, इन्नहुम मुग़रक़ून, बेशक ये तो डूबने वाले हैं। फैजस तवई तानता, बस जब अच्छी तरह से बैठ जाइए आप तो। वमम माक, अब ये तीसरे सवाल है, और वो लोग जो आपके हमरा हैं यानी साहिब ईमान लोग, तो कश्ती में कौन कौन सवार थे? तमाम जो जानवर इंसान की जरूरत के उनके नर और मादा, और दूसरे जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर वाले, और तीसरे अहले ईमान। तो फरमाया वमम माक अलल फुल्क, और फिर सवार हो जाइए आप भी और वो लोग जो आपके साथ ईमान लाए हैं इस कश्ती में। अब सवार होते वक्त दुआ तरकीब की जा रही है, फकुल अल्हम्दुलिल्लाह, और तो कहिए कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी नजाना मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, जिसने हमें निजात दी ज़ालिम क़ौम से, और उतरते वक्त की दुआ भी तलकीन हो रही है। वकुल रब्बी अंज़िलनी मुंज़ला मुबारका, और कहिए कि मेरा उतारिए मुझे उतारना बरकत का। वअंत खैरुल मुंज़िलीन, और आप बेहतरीन उतारने वाले। इन्ना फी ज़ालिका लायात, बेशक इस वाक्य में भी निशानियां हैं। वह इन कुंदा ना मुबतनीन, और बेशक हमें तो आजमाना ही था। सुम्मा अंशाना मिन बादहिम क़र्नन आख़रीन, और फिर इसके बाद जो है वो एक और उम्मत को हम ले आए, इशारा है कौम आज की तरफ, इन्हीं में से जो लोग थे उनसे अगली नस्ल पड़ी, और शुरू में वो तौहीद पर गामज़न रहे लेकिन रफ्ता रफ्ता उनमें शिर्क आ गया, और उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। फ़ारसलना फ़ीहिम रसूलन मिन्हुम, फिर हमने भेजा उन्हीं में से एक रसूल, अने अब्दुल्लाह, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत क्या थी कि अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, और नहीं है तुम्हारा कोई माबूद सिवाय उसी के। अफला तत्तकून, बस क्या तुम डरते नहीं? आगे कौम की उनसे जो है जद्दोजहद का जिक्र आ रहा है और उनसे झगड़ने का। वकाल मलाउ मिन कौमी, बस कहा सरदारों ने उनकी कौम के, अल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरा, उनके जराइम भी आ रहे हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुठलाया आखिरत की मुलाकात को। वतरफनाहुम फिल हयात दुनिया, और हमने ऐशो आराम का सामान दिया था, खुशहाली दी थी उन्हें दुनिया की जिंदगी में। आगे उनके अस्बाब इंकार आ रहे हैं कि उन्होंने क्यों इंकार किया। नंबर एक, वो कहने लगे मा हाज़ा इल्ला बशरुन मिस्लुकुम, कि ये नहीं है हूद अलैहिस्सलाम मगर तुम्हारी तरह का एक इंसान। याकुलू मिम्मा ताकुलूना मिन, वो भी खाता है जो तुम खाते हो। वायश्रुबू मिम्मा तशरबून, वो भी वो पीता है जो तुम पीते हो, ये भी खाना खाते पानी पीते, ये कैसे रसूल हो गए माशाल्लाह। वला इन अताअतुम बशरन मिस्लुकुम, और अगर तुमने इताअत की अपने जैसे इंसान की, इन्नकुम इज़ा लखासिरून, तो यकीनन तुम खसारे में हो जाओगे। सही को ये सबक बना होने का तो इंसान है, हमने ये बात समझी है कि अक्सर इंसानों ने यानी नबूवत और बशरियत को एक साथ कबूल नहीं किया, जो जिन्होंने अंबिया को आंखों से देखा उन्होंने उनकी नबूवत का इंकार किया, और हम लोग जिन्होंने अंबिया और रसूलों को आंखों से नहीं देखा हम उनकी बशरियत का इंकार कर देते हैं, हम कहते हैं वो इंसान थोड़ी है। तो दोनों का एक ही नतीजा निकलता है कि पैरवी में फिर आदमी पीछे रह जाता, फिर पैरवी नहीं करता। वो पैरवी क्यों नहीं कर रहे थे कि तो हमारी तरह के इंसान है, हम पैरवी क्यों नहीं कर रहे कि वो तो नबी थे हम इंसान हैं। तो भाई इंसान ही नबी होते हैं और वो हमारे लिए नमूने के तौर पे ही भेजे गए। अब दूसरा सबब आ रहा है कि उन्होंने क्यों रद्द कर दिया हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को, वो मौत के बाद दोबारा जिंदा होने को नामुमकिन समझते। यहां जिक्र है अयायदो को मन्नकुम इज़ा मित्तुम, क्या वो तुम्हें वादा देता है कि जब तुम मर जाओगे, वकुन तुम तो राइदामा हो, तुम हो जाओगे मंडी मंडी हड्डी हड्डी, अन्ना तुम उखराज हूं तो वो तुम्हें दोबारा तुम निकाले जाओगे। हई हाता निमा तुआ दू अन होना जो तुमसे वादा किया जा रहा है, एक मौके पर एक मुशरिक वो एक बोसीदा इंसान की हड्डी ले आया कब्रिस्तान से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर कहने लगा ये जिंदा होगी, ये कैसे मुमकिन है ये जिंदा हो। तो उनके लिए ये बहुत ही अनोखी बात थी कि मौत के बाद जो है वो जिंदा हो सके। आज तो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी से हम ये जानने लगे कि एक डीएनए के अंदर पूरा इंसान जो है मौजूद है और वो अब क्लोनिंग वगैरह की तरफ लोग आ गए, एक सेल से पूरा वो जानवर जो है वो क्लोन हो जाता है। इसी तरह इंसान भी जो है वो क्लोनिंग की जा सकती है, हालांकि अभी इस पर पाबंदी है। तो वो कहने लगे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, बस ये जिंदगी तो बस इस दुनिया की जिंदगी है, नमू तो वनाया, हम यहाँ खुद ही मर जाते हैं खुद ही जीते, वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं। अब तीसरी वजह जो उन्होंने रद्द किया हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम को, कहने लगे इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अल्लाह कदीबा, अब बेशक ये तो एक आदमी है जिसने झूठ बांधा है अल्लाह पर, वमा नहनु लहु बिमोमिनीन, और हम नहीं है इसको मानने वाले, ये उनकी जो है इश्कालात थे। अब इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ, काला रब्बिन सुन्नी बिमा कज़बून, ए मेरा मदद फरमा मेरी इस पर जो ये मुझे झुटलाते, इजाबत दुआ भी है फौरन अल्लाह की तरफ से। काला अम्मा कलील ला युज़बिहुन्ना नादिमी, फरमाया कि थोड़ी अरसे वो रहेंगे जो है वो बचताने वाले, फाखदत हुमुस्सैहतु बिल्हा, और आप पकड़ेगा उन्हें एक बहुत बड़ी बहुत ही भयानक आवाज ने अब के साथ, फजालना हूं गुस्सा, अब वो हो गया खसो खाशाक की तरह, बंदूरी है अल्लाह की रहमत से जालिम लोगों। आगे सुन्नतुल्लाह का बयान, चम्बा इंशाला में बाद कोरोना ना करे, फिर हमने पैदा कर दी उनके बाद और बहुत सी उम्मतें, यानी कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना है इनके बाद, इसी तरह कौम लूत है, कौम अय्यूब अलैहिस्सलाम, कौम शोएब अलैहिस्सलाम होते हैं, आले फिरौन है, जो सब इनके बाद आए। माँ तस्बिकु मिन उम्मतिन अजला, नहीं बढ़ सकती कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्ररा से, वमा यस्ताखिरून, और ना ही उसमें कोई जो है वो कमी की जाएगी या वो पीछे रहेगी। तो अजाब का वक्त गोया मुकर्रर है, ना उसमें एक लम्हा मुकद्दम होगा वो, ना एक लम्हे की ताखीर होगी। सुम्मा अरसलना रुसुलना तत्रा, फिर हमने भेजे कई रसूल तैसर में, कुल्लमा जाअ उम्मतु रसूलुहा, और जब कभी भी आता किसी उम्मत के पास उसका रसूल, कज़्ज़बू, तो वो उसे झुटला देते, फअत्बाना बादहुम बादा, बस पीछे चलाया हमने उनको में से बास को बास के, वजअलनाहुम अहादीस, और बता दिया उनको कहानियां, फबुअदल लिक़ौमिन ला युमिनून, बस दूरी हो अल्लाह की रहमत से उन लोगों की जो ईमान नहीं लाते। आगे फिर मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र, सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना, फिर हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपने मौजजात देकर, व सुल्तान मुबीन, और बहुत रोशन दलाइल देकर, इला फिरऔन व मलाइहि फस्तकबरू, फिरौन के दरबारियों की तरफ बस उन्होंने तकबर किया, व कानु कौमन आलीन, और वो तो थे ही सरकश लोग, फकालू अनुमिनु लिबशरैनि मिस्लिना, अब वजूहात क्या थी इनकार की, वो कहने लगे कि हम ईमान लाए अपने जैसे दो आदमियों पर, वकौमुहुमा लना आबिदून, जिनकी कौम हमारी गुलाम है, ये बनी इसराइल अपने गुलाम कौम के दो अफराद पर हम ईमान लाए, फकज़्ज़बूहुमा, बस उन्होंने उन दोनों को झुटला दिया, फकानू मिनल मुहलकीन, और हो गए हलाक होने वालों में से, वलक़द आतैना मूसा किताब लअल्लहुम यहतदून, और बेशक हमने दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब ताकि वो लोग राह पाते। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, वजअलना इब्ना मरियमा व उम्मुहु आया, और हमने बना दिया ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को एक निशानी, व आबैनाहुमा इला रब्बा, और हमने पना दी इन दोनों के एक ऊंचे मुकाम पर। अब ये बचपन ही में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े थे और लोगों को अंदाजा हो गया ये तो नबी हैं, और यहूदी उनकी जान के दर पर हो गए, चुनाचे एक अरसे के लिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र चली गई और वहां जाके गुमनामी की जिंदगी गुजारी। फिर जब ये लड़प्पन में आए तो फिर ये वापस आई तकरीबन 10-12 साल बाद। मिर्जा कादियानी कहता है शायद कि वो चले गए थे कश्मीर और वहां कब्र भी दिखा दिया था, याद रखा तो फरमाया हुआ मही, और वो जगह क्या थी, बड़े आराम के लायक और पानी वाली, बड़े चश्मे होंगे उस मुकाम पर। तो रिज के हलाल से ही गोया अमले साले की तवक्का मुमकिन है, तो अंबिया को जिक्र करके मुझे और आपको ये बात बयान की जा रही है। फरमाया या अय्युहर रुसुल, ए रसूलों, कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहा, खाओ हलाल पाकीजा चीजें ताकि अमल करो नेक। तो हराम खाकर नेकी की तवक्का जो है ये बड़ा मुश्किल काम। तो नेकी की तवक्का किन्हें करनी चाहिए जो हलाल और तैयब चीजों को इस्तेमाल करते हैं। इन्नी बिमा तअमलूना अलीम, और बेशक जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उससे खूब वाकिफ हूं। आगे जो है सबसे ज्यादा यानी इन सारे दलाइल के बाद अब इसका नतीजा बयान हो रहा है। वइन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और बिला शुबा ये जिनका तमाम जमात अंबिया जिनका जिक्र आया ये तुम्हारी एक उम्मत है, एक ही उम्मत। वादा रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम सबका रब हूं और मुझी से डरो। अब बात ये कि जब सभी अंबिया मवाहिद थे और एक ही उम्मत थे तो ये शिर्क कहां से आ गया, इसका जवाब दिया जा रहा है। फतकत्ताऊ अमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा, बस इख्तलाफ करके कर लिया उन लोगों ने अपने काम आपस में टुकड़े टुकड़े। कुल्लू हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, अब हर गिरोह उन बातों में से जो उनके पास है उसी पर हो जाए। तो अब हमने भी दीन के तीन हिस्से कर लिए, एक जो उसका जाहिरी कानूनी हिस्सा है वो उलमा के पास है, जो बातनी रूहानी हिस्सा है वो सूफिया के पास है, और जो हुकूमत से मुतालिक चीजें हैं वो हुक्मरान आ गए। पहले ये तीनों एक ही जगह थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन के सबसे बड़े फिकही फहम रखने वाले भी वही थे, सबसे ज्यादा रूहानी शख्सियत भी उन्हीं की थी, और वही हुक्मरान थे और पूरा निजाम भी उन्हीं के हाथ में था। फिर रस्ता ये चीजें अलहदा होती गई, फिर बनो मैया बनो अब्बास सलातिन उस्मानिया में हो गया ये कि हुक्मरान अलहदा हो गए और सूफिया और उलमा जो है वो अलहदा तबकात हो गए। लेकिन उस वक्त के हुक्मरान वो थे जो जुमे की इमामत वो कराते थे, ईदैन की नमाज हुक्मरान पढ़ाते थे। फिर आज वो बदतरीन दौर आया है कि उलमा वो है जो देख कर भी कुल वल्ला नहीं पढ़ सकते, और उलमा यानी हुक्मरान वो है जो देख कर भी कुल वल्ला नहीं पढ़ रहे, और उलमा जो है आपस में मसलक परस्ती का शिकार है, एक दूसरे मुसलमानी को कुफर के फतवे दिए जा रहे हैं, और सूफिया इन सबसे अलहदा अपनी खानकाओं में मगन है, उन्हें फिक्र ही नहीं है कि दुनिया में हुकूमत किसकी है और बातिल किस तरह धंधा है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। तो ये आज जो है इस तरह ये सब अलहदा अलहदा हुआ है। तो फरमाया कि पहले तो सब एक ही उम्मत थे और सब एक ही उस पर कायम थे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और हर एक जो हिस्सा उसके पास है उसी पर खुश है। फजल हम थी गमरत हिम हताही, पर छोड़ दीजिए इन्हें इनकी मदहोशी में कुछ मदद तक। अया सगून अन्नामा नुमिर तो हम भी, क्या वो ख्याल करते हैं कि हम जो उनकी मदद कर रहे हैं मैं माली हुआ बनी माल देकर औलाद के जरिए नुसारे ओम फिर खैरा, तो हम जल्दी कर रहे हैं उनके लिए भलाइयां देने में। बदला या शोर हो, बल्कि वो समझ नहीं रखते। इन लदीन हम इन खशियत रबीम मोशे हो, आगे जो है गोया ये हिकमत हमारे मुजरिमीन बयान हो रही थी कि अल्लाह जो इन्हें मोहलत दे रहा है वो इसलिए कि वो तौबा कर ले और खैर के कामों में आगे बढ़े, लेकिन जो इससे फायदा नहीं उठाता वो गोया उस मोहलत को जाय कर रहे हैं। आगे फिर जो है आप देखेंगे कि ये बंदा मोमिन की बातें सिफात आ रही है। यहां जो नुसारे लहुम फिल खैरात का जिक्र आया, और हम जल्दी कर रहे हैं उनके लिए भलाई देने में। बल्ला या शुरून, बल्कि वो समझते नहीं। तो ये मुसारे इन फिर खैरात के असाफ क्या होने चाहिए वो आगे बयान हो रहे हैं, यानी जिन्हें से भलाई जल्दी हासिल होती है। नंबर एक, इन लजीन खशियत रबीम मुश्किल, ये वो लोग हैं जो अपने रब से मुस्तकिल रहते रहते हैं। नंबर दो, वह लजीन में आयात रबीम योमिन, और ये वो लोग हैं जो अपने रब की आयात पर ईमान रखते हैं। और नंबर तीन, वह लजीन बे रबीम ला युशरी कौन, और ये वो लोग हैं जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। और नंबर चार, वल्लज़ीना युतूना मा आतौ, और ये वो लोग हैं जो उसमें से अल्लाह की राह में देते हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया होता है। और नंबर पांच, वक़ुलूबुहुम वजिला, और उनके दिल जो है वो डरते रहते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और वो अपने रब के पास लौट कर जाने वाले हैं। गोया वो सब कुछ देकर भी डरते रहते हैं कि अल्लाह कबूल करेगा या नहीं। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या ये वो लोग हैं जो शराब पीते हैं और चोरियां करते हैं कि वो अपने अमाल से डरते रहते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो हैं जो रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सदकात देते हैं, और डरते रहते हैं कि कहीं इनके ये अमाल नामकबूल ना हो जाए, ठुकरा ना दिए जाए। तो इस हवाले से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौन है, वो फरमाते कि मोमिन नेकी करता है और डरता रहता है कि पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे, और मुनाफिक जो है वो बड़े बड़े गुनाह करता है और बड़ा मतमईन रहता है कि जन्नत तो मेरे लिए लिख दी गई।
तो ये कैफियत मतलूब है कि आदमी नेकी करे और फिर उसे ख्याल हो कि पता नहीं नेकी कबूल हुई या नहीं। तो बहरहाल इस रुकू पर हम इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे, आगे रुकू आ रहे हैं। एक बहरहाल किस्सा जहन में था वो सुनाई देता हूँ मुख्तसर करके। तो एक बाबा जी थे, बहुत ही जो है नफातुल्ला बस जो है वो इस्तेमाल करते थे, और एक काफी अच्छे से ख्वाहिश थी मीठा खाने। तो एक दिन एक आदमी ने चंद सिक्के दे दिए, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने मिठाई वाले के पास पहुंच गए, हलवाई के पास, कहा कि ये बर्फी दे दो। तो उन्होंने बर्फी तोड़ ली और पैसे जो लिए तो उन्होंने कहा बाबा जी ये तो खोटे हैं लिखे। तो बाबा जी ने रोना शुरू कर दी। तो हलवाई ने कहा कि बाबा जी आप रोए नहीं, मैं वैसे ही आपको मिठाई दे देता हूँ, आप बेफिक्र है मिठाई का आप। तो बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारी मिठाई को नहीं रो रहा, मैं इसको रो रहा हूँ कि क़यामत के दिन जो मैं अपने अमाल लेकर जाऊंगा कहीं अल्लाह ताला ये ना कहते ये खोटे। तो अदबी से डरना चाहिए आदमी को, हम अपने खोटे सिक्कों को ही समझ लें कि बहुत कुछ है, मतलब खोटा सिक्का किसी काम का नहीं होता, उससे कोई चीज खरीदी नहीं जा सकती, वो फेंक दिया जाता है वापस कर दिया जाता है। तो अपने अमाल की फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन्हें कबूल कर ले और इनमें इखलास पैदा फरमा दे। तो मैं उलाए का ही उसार हूं ना फिर खैरात, और यही लोग हैं जो जल्दी करते हैं नेकी के कामों में। और नंबर छह वह लहा साबिकून, और इनमें आपस में सबकत करते हैं। तो यहाँ ये जो छह जो है सिफात आ गई मोमिन की बात नहीं। नंबर एक रब की नाराजगी का खौफ रखते हैं, नंबर दो आयात पे ईमान रखते हैं, नंबर तीन शेख से इज्तनाब करते हैं, चार अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, पांच नेकियों में तेजी दिखाते हैं, और छह नेकियों में आपस में मुसाफत करते हैं। हजरत उमर अपने घर का आधा सामान ले आया, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पूरा समेट कर गया। तो ये सबकत होनी चाहिए आगे बढ़ने नाम अमाल का जिक्र आ रहा है। वला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और नहीं तकलीफ देते हम किसी नफ्स को मगर उसकी ताकत के मुताबिक। वला दैना किताबुन यंतिकु बिल्हा, और हमारे पास एक किताब है जो बयान कर देगी तमाम चीजें हक के साथ, यानी नाम अमाल। वहुम ला युज़लमून, और पर हरगिज़ ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। तो गोया इस किताब बता देगी कि हमारी सलाहियतें और माल और दौलत कहां लगती रही, दुनिया ही नहीं आखिरत में। आगे दूसरे मशागिल का जिक्र आ रहा है कुरान से गफलत का असल सबक। बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हाजा, बल्कि उनके दिल गफलत में रहते हैं इससे, यानी कुरान से। बलहुम आमालुन मिन दूनि ज़ालिक, और वजह क्या है कि उनके और दीगर मशागिल हैं इस कुरान में तवज्जा देने के बजाय। हम लहा आवेलून, जो वो करते रहते हैं। ये घरेलू मसाइल भी हो सकते हैं, कारोबार भी हो सकते हैं, सामाजिक चीजें भी हो सकती हैं, और खुदा ना खास्ता दर्स कुरान की महफिल में बैठकर सोशल मीडिया भी हो सकता है। आदमी समझ रहा है ये मोबाइल पर कुरान पढ़ रहा है, वो अपना फेसबुक पर लगा हुआ है, व्हाट्सएप देख रहा है, मैसेजेस कर रहा है, और कुछ नहीं तो और इस तरह के मशागिल में कितनी बड़ी महरूमी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कुरान की जब तरफ तवज्जा देने की जगह दीगर मशागिल की तरफ बनाकर रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और जो है हमें कुरान की तरफ तवज्जा देने की तौफीक अता फरमाए, उससे गफलत से बचाए। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाब, यहां तक कि जब हम पकड़ लेंगे उन्हें यानी आसूदा हालों को अजाब में। इज़ा हुम यजअलून, तो वो फौरन चीखने चिल्लाने लगेंगे। ला यजरउ यौम, कहा जाएगा चिल्लाओ नहीं आज, इन्नकुम मिन्ना ला तुंसरून, यकीनन तुमको हमारी तरफ से आज मदद नहीं दी जाएगी। सबब अजाब भी बयान हो रहा है। कद कानत आयाती तुतला अलैकुम, बेशक पढ़ी जाती थी तुम पर हमारी आयतें। फकुन तुम अला अकाबिकुम तनकिसून, तुम अपनी एड़ियों के बल फिर फिर जाते थे, बजाय उन आयात पर तवज्जा देते उन पर अमल करते उनसे रोक नहीं लेते। कुरान से एराज की पांच वजूहात भी आगे बयान हो रही है, जो यानी आप ये कहें कि ये वो वजूहात हैं जिनसे इंसान महरूम रह जाता है और कुरान की तरफ इल्तफात नहीं करता। तो फरमाया मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, और अकड़ते हुए और उसे एक महज अफसाना और बकवास समझते हुए। नंबर एक अफलम यतदब्बरुल कौल, क्या उन्होंने गौर नहीं किया इस कौल पर यानी कुरान पर। तो वो लोग कुरान से महरूम रहते हैं जो कुरान पर गौर फिक्र नहीं करते। नंबर दो अम जाहुम मालम जाती आबाउमुल अव्वलीन, या आई उनके पास वो बात जो कुरान यानी जो ना आई थी उनके आबा और अजदाद के पास, यानी तौहीद पर आकर जो है शक करने लगते हैं और तौहीद के बारे में झगड़ते हैं और शिर्क पे आलूदा होते हैं, वो भी कुरान से दूर रहते हैं। नंबर तीन अम लम तारिफु रसूलहुम, और नहीं पहचानते जो लोग जिन लोगों ने अपने रसूलों को अपने रसूल को। फहुम लहुम मुनकिरून, और वो उसके इंकारी करते रहते हैं। तो जो रसूल से बुग़्ज़ रखता है
رسول سے دعوت رکھتا ہے, منکرین حدیث جو ہے وہ بھی قرآن سے دور ہی رہتا ہے,
وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور نمبر چار, اب یقولون بہ جنہ, یا وہ کہتے ہیں اس کو کہ یہ مجنون ہے, یعنی رسول سے ایک بغض رکھنے کی یہ بھی کیفیت ہے کہ تو مجنون ہے جن پر قرآن نازل ہوا. بل جاءہم بالحق, بلکہ وہ تو لائے ان کے پاس حق, واکثرہم للحق کارہون, بلکہ ان میں سے اکثر حق کا انکار کرنے والے, اسے ناپسند کرنے والے. ولم اتبع الحق اہواءہم, اگر پیروی کرتا اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کی, لفسدت السماوات والارض وما فیہن,
تو فساد مچ جاتا آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے.
بل آتیناہم بذکرہم, بلکہ دیے ہم نے ان کو ان کی نصیحت, فہم عن ذکرہم معرضون, بلکہ وہ اس نصیحت سے جو ہے اعراض کر رہے ہیں, منہ موڑ رہے ہیں. اور پانچویں رضا آ رہی ہے, ام تسالہم خرجہ, کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی ہے, فخراج ربی کا خیر,
بس اللہ کی طرف سے جو آپ کو اجرت ملنی ہے وہی کہیں بہتر ہے,
وہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ ہم پر کوئی تاوان نہ آ جائے, قرآن پڑھیں گے کوئی مطالبہ نہ آ جائے, کوئی پیسے نہ خرچ کرنے پڑ جائے, تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی قرآن سے دوری کی. میں نہ کہا لاتا تو وہ میرا صراط مستقیم, اور بے شک آپ تو بلاتے ہو انہیں سیدھے راستے کی طرف یعنی اسلام کی طرف. میں الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناقبون, اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ اس راستے سے منحرف ہوتے رہتے.
قوم کی ہمدردی کا ذکر,
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور اگر ہم رحم کریں ان پر اور دور کر دیں ان سے وہ کچھ جو انہیں تکلیف پہنچی ہے, لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, تو وہ پھر بھی اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. اللہ تکلیف سے دور کرتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور ہم فرمایا یقیناً ہم انہیں پکڑ چکے ہیں عذاب میں, اس یعنی اس سے پہلے بھی, اور اشارہ ہے یہ قحط سالی اور یہ جو نقصانات ہوتے رہتے ہیں مشرکین کو. فمس تکانو لے ربہم, بس نہ تو انہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے, وما یتضرعون, اور نہ ہی وہ اس کے سامنے گڑ گڑائے. حتی اذا فتحنا علیہم بابا, یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان کا دروازہ, عذاب شدید, شدید عذاب کا, اذا ہم فیہ مبلسون, تو پھر وہ یک یک بالکل مایوس ہو گئے. تو یہ نافرمان قوموں کا یہی حال رہتا ہے, قرآن سے اعراض کرتے ہیں, جو انبیاء ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کا تمسخر کرتے ہیں, اور وہ جو نصیحت کی عمدہ باتیں بتائی جاتی ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے, تو بدترین انجام تک پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. آج ویکینڈ ہے جناب, تھوڑا سا وقت اضافی آپ سے درخواست ہے, ویسے بھی 12 دن تقریباً رہ گئے.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول کریم, اما بعد, سورہ مومنون کا 5واں رکوع ہم شروع کریں, آیت نمبر ہے 78, اور شکر کی ترغیب دلائی جاری.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, وہی اللہ ہے جس نے پیدا کر دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل, قلیلاً ما تشکرون, لیکن تھوڑا ہی تم شکر کرتے. انذار آخرت, وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اب وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ. اسی طرح اب آخرت پر دلائل آ رہے ہیں, اور دلیل عقلی آ رہی ہے آخرت کے حوالے سے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, اب وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کے قبضے میں بدل کا آنا رات اور دن کے, افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ جو اللہ رات کے بعد دن لے آتا ہے, پھر دن کے بعد رات لے آتا ہے, وہ اللہ موت کے بعد زندگی اور زندگی کے بعد موت کو بھی لا سکتا ہے. وہی ان کا اعتراض آخرت کے حوالے سے, پرانی چال بے ڈھنگی, وہی کیفیت. تو فرمایا, بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ وہ کہتے ہیں ویسے ہی جیسے کہا کرتے تھے پہلے مشرک. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما, اور وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی مٹی اور ہڈی, انا لمبعوثون, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, بے شک وعدہ دیا گیا تھا ہمیں ہمارے باپ دادا کو اس سے پہلے, ان هذا الا اساطير الاولين, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر پہلوں کی کہانیاں. آگے پھر ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے, اور یہ سرچنگ کوشچنس کے انداز میں, جس میں جو ہے دلائل کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ اندر سے خود جواب جو ہے وہ انسان کے زبان سے نکلتا ہے. تو
तो पहला आ रहा है कि ये जमीन किसकी है, कुल्ले मनिल आदो वमन फीहा, अरबी इनसे पूछिए किसकी ये जमीन है जो कुछ इसमें है, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो, सयकूलूना लिल्लाह बस वह तरीक कहेंगे कि अल्लाह ही कहे, फुला फला तज़क्करून ए नबी इनसे पूछे तुम फिर गौर फिक्र नहीं करते। अगला सेटिंग क्वेश्चन, कुल मर रब्बुस समावाति सबअ, ए नबी पूछे कौन है सातों आसमानों का रब, व रब्बुल अर्श अज़ीम और अजीम अर्श का रब, सयकूलूना लिल्लाह बस यह तरीक कहेंगे अल्लाह ही है, कुल अफला तत्तकून ए नबी इनसे पूछिए फिर तुम क्या तक्वा इख्तियार नहीं करते उस अल्लाह से डरते नहीं। तीसरा सर्चिंग क्वेश्चन, कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्ली शय, ए नबी इनसे पूछिए किसके हाथ में हुकूमत है शय की, वह हुआ युजीरू वला युजारू अलैहि, अब वही पना देता है उसके खिलाफ पना नहीं दी जा सकती, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो, सयकूलूना लिल्लाह पसंद करी वो कहेंगे अल्लाह ही है, कुल फाना तो सारोन है नबी इनसे पूछे फिर कहां से तुम पर जादू किया जाता है, बल आते ना हम बिल्हा सरदनिश की जा रही है, बल्कि हम तो लाए उनके पास हक यानी ये सच्चा दीन ये कुरान, व इन हम लकाजिबून लेकिन यकीन वो झूठे हैं, मत तखज अल्लाह में वलद और नहीं इख्तियार किया अल्लाह ने कोई औलाद, वमा काना माहु मिन इलाह और ना ही उसके साथ कोई माबूद है, इज़ल लज़हबा कुल्लु इलाहिम बिमा खलक तब तो ले जाता हर माबूद जो कुछ उसने पैदा किया, वला अला बाज़ुहुम अला बाज़ और ग़ालिब आता उनमें से एक दूसरे पर, सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून अल्लाह पाक है उन सबसे जो उसके बारे में ये मनगढ़ंत बातें बयान करते हैं, कमाल इल्म बारी ताला आलिमुल ग़ैबी वश्शहादा वो जानता है सब छुपी और खुली बातों का, वतआला अम्मा युशरिकून अब बहुत बुलंद और बदतर है और शिर्क से जो वो करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब ख़ुसूसी ख़िताब आ रहा है, तलकीन दुआ और तबलीग का तरीका बयान हो रहा है, कुल ए नबी आप यूं दुआ कीजिए, रब्बी इम्मा तुरियन्नी ए मेरे रब अगर आप दिखा दीजिए मुझे वो आजाब, मा युआदून जिसका आपने उनसे वादा किया है, रब्बी फला तजअलनी तो ए मेरे रब ना मुझे शामिल कीजिए इनमें, फिल कौमि ज़ालिमीन इन जालिम लोगों में, और कमाल कुदरत का जिक्र, व इन्ना अला नुरियक और यकीनन हम इस बात पर कि आपको दिखा दें, मा नअदुहुम यानी वो जिसका हमने इनसे वादा किया है यानी आजाब, लकादिरून उस पर हम पूरी तरह कादिर हैं, इत्फा बिल्लती या अहसनुस सैया तरीका तबलीग बताया जा रहा है कि आप हटाइए ऐसे तरीके से जो बहुत अच्छा है बुराई को, नहनो आलम बिमा यसिफून और हम खूब जानते जो कुछ वो बयान कर रहे हैं, यानी ये नहीं कहा बुराई के मुकाबले में, देखिए एक तरीका ये बुराई के मुकाबले में बुराई करना ये बदला है और ये मना नहीं, लेकिन एक है बुराई के मुकाबले में खामोश रहना ये उससे भी बेहतर है, लेकिन यहाँ हुक्म दिया जा रहा है बुराई के मुकाबले में अच्छाई कीजिए, यानी लोग गाली दें आप दुआ दें, लोग छीने आप अता करें, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है और इसकी तरफ तरगीब दिलाई जा रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका सिखाया जा रहा है, और फरमाया नहनो आलम बिमा यसिफून और हम खूब जानते हैं जो वो बयान करें, वकुर रब्बी आऊज़ु बिक और ए नबी यूं दुआ कीजिए कि मेरे रब मैं आपकी पनाह चाहता हूं, मिन हमज़ात शैतान यानी वसवसों से शैतानों की, वा आऊज़ु बिका रब्बी और मैं पनाह चाहता हूं अल्लाह आपकी, अय्यहज़ुरून कि वो मेरे पास आए। तो बहरहाल ये बड़ी मुजल्लब जो है जो दुआएं हैं यहाँ बुखारी मुस्लिम में रिवायत है, आपने फरमाया मैं एक कलमा जानता हूं अगर वो मरीज कहे तो इसकी सब तकलीफें जाती रहें, और वो है तआवुज़ यानी अल्लाह की पनाह इख्तियार करना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना। बाज लोगों ने ये जिन वगैरह के हवाले से जो है इलाज भी बयान किया, इसी तरह गुस्से का भी इलाज जो है वो साहिब इन लोगों ने इन आयात का पढ़ना और समझ कर पढ़ना बयान किया। आगे क़यामत सुग़रा का मंजर खींचा जा रहा है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुम अल-मौत यहाँ तक कि जब आई जाएगी उनमें से किसी एक की मौत, काला रब्बे जियाउन तो वो कहेंगे अल्लाह मुझे वापस लौटा, लाली अमलु सालिहन फीमा तरक्तु ताकि मैं वो नेक अमल करूं जो पहले मैंने तर्क किया हुआ था, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा बल्कि ये बस उनके मुंह की बातें हैं, वमिन वराइहिम बरज़ख और उनके वरे जो है वो या उनके पीछे एक बरज़ख है पर्दा है, इला यौमि युबअसून उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे,
तो ये गोया क़यामत सुग़रा के बाद अब क़यामत कुबरा का बयान। फ़ैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर, और जब फूका जाएगा सूर में, फला अंसाब बैनहुम यौमैद, तो नहीं रहेंगे कोई रिश्ते नाते उनके दरमियान, वला यतसालून, और ना ही वो एक दूसरे से गोया बात ही पूछेंगे। अंजाम मुत्तकीन बयान हो रहा है। फमन सकुलत मवाज़ीनो, फिर जिसके होंगे भारी आमाल के पलड़े, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही कामयाबी में होंगे। और इसके बाद अंजाम में कुफार बयान हो रहा है। वमन खफ्फत मवाज़ीनो, और जिसके हल्के होंगे आमाल के पलड़े, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, बस वही लोग होंगे जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, फी जहन्नम खालिदून, वो जहन्नम में रहेंगे हमेशा हमेशा। आगे कैफियत आजाब, तलफहु वुजूहहुमुन नार, और झुलस देगी उनके चेहरों को आग, वहम फीहा कालिहून, और उसमें इंतहाई बदशकल हुए खड़े रहेंगे। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि ये इंतहाई आपके हैं कि कमजोरी का मामला होता है कि जब आदमी अपने चेहरे को भी ना बजा सके, वरना आदमी सब कुछ लगा देता है चेहरा बजाने के, लेकिन ऐसी जिल्लत और कमजोरी होगी कि वो अपने चेहरों को आग से नहीं बचा सकेंगे, और इंतहाई बदशकल जो है वो बने हुए जहन्नम में पड़े होंगे। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या नहीं मेरी आयतें पढ़ी जाती थी तुम पर। अब ये सबब क्यों हुआ, आज यहाँ क्यों पढ़े हो, आज ये जिल्लत रुसवाई अजाब क्यों भुगत रहे हो, तो उसकी वजह पूछी जा रही है। क्या नहीं आई थी तुम्हारे पास मेरी आयात जो पढ़ी जाती थी तुम पर, फकुन तुम बेहा तो कर दे, तो तुम उन्हें झुटलाते थे। इस पर आप इकरार है जुर्म है उनकी तरफ से, कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, वो कहेंगे हमारे रब गालिब हो गई हम पर हमारी बदबख्ती, वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, और हम तो थे ही गुमराह लोग। आगे इल्तिजा करेंगे, रब्बना अख्रिजना मिन्हा, ऐ हमारे रब हमें निकाल दे इससे, फइन उतना फइन्ना ज़ालिमून, फिर अगर हम दोबारा ऐसा करें तो हम ज़ालिम। लेकिन पहले आ चुका कि जो पुराना ये मामला होता है वो ऐसे ही रहता है, अल्लाह ताला ने कहा कि हम निकाल भी देंगे फिर दोबारा वही गुनाह करें। इस पर हमारी अपनी जाती मिसाल हमारे लिए काफी है। बार दफा आदमी गुनाह करते हुए ऐसा फंसता है कि वो अल्लाह से इल्तिजा करता है कि अल्लाह इस दफा बस मुझे बचा ले, आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह बचा लेता है तो फिर क्या करते हैं, फिर वही गुनाह करते हैं। यही यहाँ पर भी मामला है कि वो इल्तिजा करेंगे कि अल्लाह हमें निकाल लें, और जो है हम दोबारा जो है वो ऐसा नहीं कर दोबारा करें तो बेशक हम जालिम होंगे। आगे रद्द इल्तिजा आ रही है, कालखसाऊ फीहा, और फरमाएगा अल्लाह के दूर हो जाओ तुम और इसी में रहोगे, वला तो कर ले मोन, और मुझसे बात ना करो, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी, और बात ये कि था एक गिरोह मेरे बंदों में से, यकुलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, जो कहते थे कि हमारे रब हम ईमान ले आए बस आप बख्श दीजिए हमें, वरहमना वअंता खैरुर राहिमीन, हम पर रहम फरमाइए और आप सबसे बेहतरीन रहम फरमाने वाले हैं, यानी नेक बंदों की अब दुआएं। इन पर सबब अज़ाब बयान हो रहा है, फत्तखज़्तुमहुम सिख़रिया, बस तुमने उन्हें बना लिया था तमस्कुर का, यानी उन्हें तमस्कुर का निशाना, हत्ता अंसाउकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि उन्होंने यानी उन्होंने भुला दी तुमको मेरी याद, यानी इसी मशगले में लगे रहे, अल्लाह को भुला दिया, वकुन तुम मिनहुम तज़हकुम, अब तुम उनसे गोया मजाक किया करते थे, हंसा करते थे, इन्नी जज़ाइतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, और यकीनन मैंने बदला दिया उनको आज उनके सबर की वजह से, वअन्नहुमुल फायज़ून, और वही लोग आज जो है वो बामुराद हुए। आगे बेसबातीय दुनिया का बयान आ रहा है और शिद्दत भी है जो क़यामत की हौलनाकी के हवाले से, काला कम लबिस्तुम फिल अर्ज़, अब पूछा जाएगा कि कितनी मुद्दत तुम रहे हो जमीन में, अदद सिनीन यानी सालों की गिनती के हिसाब से, कालू लबिस्ता यौमन औ बाज़ा यौम, वो कहेंगे हम ठहरे वहां एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अभी कई दफा हमारे सामने आया कि दुनिया की तवील जिंदगी भी आखिरत में आदमी कहेगा बस एक दिन, बल्कि उससे भी कम सोचेगा कि शायद दिन का भी कुछ हिस्सा वहां ठहरे। फसअलिल आदीन, बस पूछ लीजिए गिनने वालों से, काला इल्लबिस्तुम इल्ला कलीला, और फरमाएगा कि नहीं तुम ठहरे हो मगर बहुत थोड़ी मदद, दव अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश कि तुम ये बात जानते, दुनिया की जिंदगी आरजी है मुख्तसर है, आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। आगे जिंदगी क्यों दी गई उसकी वजह, अफ हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा,
کیا تم نے خیال کر لیا ہم نے تمہیں بس ایسے ہی بے مقصد پیدا کیا؟
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ،
اور تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے، تو زندگی عبث نہیں ہے، بیکار نہیں. یہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی جانا ہے کیا بوڑھا یا ہو، بالکل بوڑھا ہو جاتا تھا کہ سواری کے اور گوشت کے استعمال کے لائق نہ ہو تو ایسے ہی چھوڑ دیتے، جہاں مرضی چل چک لے اپنے زندگی کے دن پورے کر لے، اسے عبث کہا جاتا. تو کہا تم نے بھی یہ سمجھ لیا بس جو مرضی کرتے رہو اس دنیا میں، اور جیسے چاہے زندگی کے دن پورے کر لو، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. تو یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے، حقیقت کیا ہے وہ آخرت ہے. تو آگے فرمایا عظمت باری تعالیٰ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بہت ہی بلند و برتر ہے بادشاہ حقیقی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سوائے اسی کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، رب العرش الکریم، اور وہ رب ہے نہایت ہی عظیم عرش کا. مشرکین کے لیے وعدہ وعید ہے. فرمایا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بھی، کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس اس کی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور بے شک فلا نہیں پاتے کافر لوگ. اور آخر میں تلقین دعا پر جو ہے یہ سورت مکمل ہو رہی ہے. بات وہی ہے کہ دنیا کے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو انعام دیتے ہیں، اپنے نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، تو جو بادشاہ حقیقی ہے وہ نہیں کرے گا، بس تم ایسے ہی چھوڑ دیا جو مرضی اس کی نافرمانیاں کرتے رہو، بس آخر میں تمہارا انجام بھی وہی ہو جائے گا جو فرما برداروں کا. تو ایسی بات نہیں، بلکہ یہ فرق ہے. فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے نبی یوں دعا کیجئے کہ میں رب بخش دیجئے اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ہی سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. یعنی اس میں یعنی آپ رحم فرمائے ہمارے معاش میں بھی، اور ہماری توفیق اطاعت میں بھی، اور نجات آخرت میں بھی، عطا جنت میں بھی آپ رحم فرمائے، آپ بھی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. تو جناب الحمدللہ یہاں 14 جو ہے مسلسل جو مکی صورتیں تھیں ان کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ سورت مکی صورت آ رہی ہے. اس میں تو سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ آس، سورہ ابراہیم، اس کے بعد سورہ ہجر، پھر سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، ابھی سورہ مریم، سورہ طہٰ، اور ابھی ہم نے پھر آج سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون مکمل کی. تو یہ 14 سورتیں ہوں گی. اس کے بعد ایک ہی مدنی سورت سورہ نور آ رہی، اور اس کے اعتبار سے جو ہے سورہ نور کے اپنے تقریباً 7 قسم کے مضامین اس سورت میں آ رہے ہیں. اور پہلا ہے احکام انسداد بد اخلاقی، یعنی معاشرے سے بد اخلاقی ختم کرنے کے حوالے سے 4 احکامات جو ہیں پہلے ہی رکوع میں پڑھیں گے. پھر واقعہ افکار ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جو ہے وہ الزام لگایا، اس کا اللہ کی طرف سے ان کی برات کا اعلان آیا. تیسرا مضمون آ رہا ہے احکام معاشرت اور حجاب. انشاءاللہ کل جو ہے احکام معاشرت کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، آج انشاءاللہ ابتدائی رکوع کر لیں گے. پھر چوتھا ایمان، بندہ مومن کے دل میں ایمان حقیقی کی ایک بڑی جو ہے بلیغ مثال بیان کی گئی ہے، اسے ایک جلتے ہوئے چراغ سے تشبیہ دی گئی. پھر پانچواں مضمون آ رہا ہے ترغیب الی القرآن، قرآن کی طرف رغبت دلائی جا رہی. چھٹا احکام حجاب آ رہا ہے، سورہ نور کے اندر گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہے. پھر انشاءاللہ ہم سورہ عذاب پڑھیں گے، وہاں گھر سے باہر کے پردے کے احکامات ہیں. اور پھر ساتواں مضمون اس میں اجتماعیت سے اخلاص کی علامات بیان ہو رہی ہیں. تو بہرحال اللہ ہمیں پڑھنا سمجھنا اس کا آسان کرے. تو شروع ہی میں اس میں جو ہے بڑے آپ دیکھیں گے اس سورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. تو اس میں خواتین سے متعلق کئی احکامات آ رہے ہیں. تو بالکل شروع میں انسداد بد اخلاقی کے اعتبار سے 4 احکامات آ رہے ہیں، اور اس سے پہلی آیت میں جو ہے سورت کی اپنی عظمت کا بیان ہے. ایسا جو ہے یہی ایک سورت ہے جس میں خود اس سورت کی عظمت کی ذکر سے بات شروع کی جا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا. وفرضناها، اور اسے ہم نے فرض قرار دیا. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے نہایت واضح آیتیں نازل کی. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. حکمت انزال کیا ہے؟ تاکہ اس سے نصیحت حاصل. اب پہلا حکم آ رہا ہے انسداد بد اخلاقی کے حوالے سے، وہ ہے حد زنا. الزانیت والزانی، اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ،
तो लगाओ इनमें से हर एक को 100 कोड़े। वला ताखुज कुम बिहिमा राफा, और ना है तुम्हें इन दोनों पर जो है वो रहम मेहरबानी, फी दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन में। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वल यशहद अज़ाबहुमा, और मुशाहिदा करे ऐ मुसलमान तुम में से जो है इनके अजाब का, ताइफतुम मिनल मोमिनीन, यानी मोमिनीन का एक गुरु।
तो ये पहला हुक्म है, अगर जिना करने वाला मर्द या औरत जो है वो गैर शादी शुदा हो तो 100 कोड़ों की सजा है इस आयत से। अलबत्ता अगर उनमें से कोई एक भी शादी शुदा है तो जो शादी शुदा होगा उसकी रजम की सजा है। वो सजा यूं कुरान में तो नहीं है लेकिन अहदीस में आपने ये सजा दी भी है। और गामिदा खातून का एक बहुत मशहूर वाक्या आता है कि उनसे जिना हो गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि आप मुझे पाक कर दीजिए, आपने चेहरा फेर लिया। वो दूसरी तरफ आई कि मुझे पाक कर दीजिए, आपने फिर चेहरा फेर लिया। वो तीसरी तरफ आई, फिर आई तीसरी बार कि मुझे अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, आपने फिर चेहरा मोड़ लिया। अब सहाबा ने कहा चौथी दफा जाओगी तो ये सजा सुना देंगे अल्लाह के रसूल, अभी मौका है चले जाओ, अल्लाह से तौबा करो अल्लाह बख्श देगा। लेकिन वो आई, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझसे जो है गलती हो गई, मुझे पाक कर दिए। तो आपने कहा कि हमल तो नहीं है, उन्होंने कहा है, कहा कि इस बच्चे की क्या खत है, जाओ इसे आने दो, फिर आना। चुनाचे वो गई है, फिर ऐसी थी कि वापिस आगे गोद में बच्चा है कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, ये पैदा हो चुका। आपने कहा ये तो अभी तुम्हारा मोहताज है, तुम्हारे दूध का मोहताज है, जब रोटी खाने लगे फिर आना। चुनाचे चली गई, अब दोबारा आई है तो बच्चे के हाथ में रोटी है वो खाया और कहा कि मुझे पाक कर दें। तो आपने रजम का हुक्म दिया और जो है सहाबा ने फिर इस पर अमल किया और जो है उन्हें ये सजा दी गई। अलबत्ता बाद में चंद लोगों ने इन खातून का जरा जिक्र किया नेगेटिव, तो आपने उन्हें मना किया, आपने कहा इसने वो तौबा की है, अगर तमाम अहले मदीना में बांट दी जाती सबके लिए काफी होती। तो बहरहाल इससे रजम की सजा साबित है, उसका इनकार कर देना ये गुमराही। तो ये सजा जो है इस्लाम में जुर्म के ऊपर नहीं है बल्कि एक डेटोनेंट है, एक आदमी को सजा होती है, लाखों को इबरत होती है और हिम्मत नहीं होती है जुर्म करने। और जाहिर है इस तरह के माशरे जहां इस्लाम है नहीं और बिगड़ा हुआ है वहां सिर्फ सजाए नाफिज कर देना ये मुनासिब महसूस नहीं होता, क्योंकि जब इस्लामी निजाम आता है पहले लोगों की एजुकेशन होगी, फिर जिना के तमाम रास्तों का सद्देबाब किया जाता है, निकाह आसान किया जाता है, और उसके बाद भी कोई ऐसा रजील हो और शरारती हो जो फिर भी बाद में आए तो उसे ये सब सजाएं दी जाती ताकि लोग जो है वो इससे दूर रहें। आगे अब दूसरा हुक्म आ रहा है यानी निकाह जवानी, और ये इखलाकी लिहाज से हुक्म है। फरमाया जानी ला यनकहु इल्ला जानियतन औ मुशरिका, जानी मर्द निकाह ना करे मगर जानिया औरत से या मुशरिका औरत से। वजानियतो ला यनकहु हा इल्ला जानिन औ मुशरिक, और जानिया औरत नहीं निकाह करे मगर जानी मर्द से या मुशरिक मर्द से। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मोमिनीन, और हराम है ये यानी जिना करना अहले ईमान पर। तो ये जिना इतना बदतरीन है कि लायक नहीं है ऐसे लोग जो है वो नीक लोगों के, यानी उसका दिल लगेगा तो इसी तरह की जो है आदात रखने वालों से लगेगा। तो बहरहाल शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तो लिखते हैं कि जानी मर्द और जो है वो जानी मर्द और यानी वो कह रहे हैं कि जानी मर्द औरत के लायक नहीं है मगर जानी या मुशरिक, अलबत्ता इससे ये नहीं लिया गया कि मुशरिक से निकाह ही नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ कबाहत और इखलाकी गिरावट के लिए बयान किया गया कि ये ऐसा गुनाह है कि ये इसी काबिल है कि मुशरिक से निकाह। आगे फिर चौथा बल्कि तीसरा हुक्म आ रहा है हद कजफ। वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात, और फरमाया वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं तोहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों पर। मोहसिनात वो पाक दामन औरतें हैं जिन पर शरण जिना साबित ना हो, चार गवाहों के खिलाफ जिना की गवाही देने वाले ना वो सब मोहसिनात हैं। सुम्मा लम यातू बिअरबाती शुहदा, फिर वो नहीं लाते जो है वो अपने इस इल्जाम पर चार ऐनी गवाह। फजलदूहुम समानीना जल्दा, तो फिर लगाओ उन्हें 80 कोड़े। तो फर्ज करें तीन ले आए वो गवाह, एक नहीं है, तो अब जितने लोग इल्जाम लगाने वाले हैं उन सबको 80 कोड़े लगेंगे। वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, और ना कबूल करो उनकी शहादत कभी भी। वा उलाए कहुमुल फासिकून, और यही लोग फासिक हैं। तो मामलात में मामला यह है कि तौबा के बाद भी इनकी शहादत कबूल नहीं होती अगर वो कलह के जो है सजा याफ्ता है। तो एक जना कहलाते हैं, एक हद कजफ कहलाती है। हद कजफ किसी पर जिना का इल्जाम लगाना कहलाता है। आगे भी चौथा हुक्म आ रहा है नियान का, और इससे पहले एक तरकीब तौबा भी है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिक, मगर वो लोग जो तौबा कर लें इसके बाद, वास्लहू इस्लाह कर लें, फइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला मुसलसल रहम करने वाला। तो अब लियान का मामला ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा जो है, बहरहाल हिलाल बिन उमैया के हवाले से आता है, बुखारी में रिवायत है कि उन्होंने बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया, तो आपने फरमाया कि सबूत लाओ वरना तुम पर कज़फ की हद लगेगी। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरी बीवी है। आपने कहा नहीं, चार शहादतें लेकर आओ। उनका मेरे पास तो शहादत नहीं। तो राय यह है कि इस वाक्य पर ये लियान वाली आयत नाज़िल हुई। इसमें ये कहा गया कि शौहर जो है चार दफा कसम खाए कि मैंने देखा है, और ये औरत जो है ये मुलव्वस है, और पांचवी दफा कह करके मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसी तरह आप इस इल्जाम को रद्द कर सकती है, वो औरत भी चार दफा कसमें खाकर कि झूठ बोल रहा है, और पांचवी दफा कसम खाएगी कि अगर मैं झूठी हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, ये लियान कहलाता है। तो फरमाया वल्लज़ीना यलमूना अज़वाजहुम, और जो लोग तोहमत लगाते हैं अपनी बीवियों पर, वलम यकुल लहुम शुहदा इल्ला अन्फुसुहुम, और नहीं होते उनके पास चार गवाह सिवाय अपने आप के, फशहादतु अहदिहिम अरबाउ शहादातिन बिल्ला, तो गवाही होनी चाहिए किसी एक की उनमें से चार बार शहादत जो है वो अल्लाह की कसम खाकर, इन्नहु लमिनस सादिकीन, वो कहेगा कि अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूं, वल खामिसतु, अब पांचवी बार वो जो है वो शहादत देगा, अन्ना लानत अल्लाह अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन, कि उस पर अल्लाह की लानत होगा वो झूठों में से, वयदरऊ अनहल अज़ाब, और वो औरत जिस पर इल्जाम लगाया गया है वो हटा सकती है अपने पर से अज़ाब, अंता शहदा अरबा शहादातिन बिल्ला, अगर वो चार बार गवाही दे अल्लाह की कसम खाकर, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, कि वो शख्स झूठा है, वल खामिसा, पांचवी दफा वो कसम खाए, अन्ना गज़ब अल्लाह अलैहा इन काना मिनस सादिकीन, कि अल्लाह का गजब हो उस पर अगर वो मर्द जो है सच्चे में से। तो इसमें लियान अगर हो जाए और दोनों तरफ से कसमें हो जाए तो फिर इनमें जुदाई डाल दी जाती है, वो मियां बीवी कैसे थे नहीं ऐसे, तो उनमें एक तरह का तफरीक हो जाती है। और अगर औरत खामोश है, शौहर ने इल्जाम लगाया जिना का, वो खामोश है, तो उसे रजम की सजा होगी, क्योंकि वो उसका एक इकबाल जुर्म है, वो मान लीजिए कि हाँ उससे ऐसा हुआ, हद में माफी नहीं। तो हदूद जो है वो चार है, एक तो जिना करने की सजा, दूसरा कदम की सजा, और तीसरा चोरी, और चौथा शराब नोशी, ये सजाएं अल्लाह ने फिक्स की हैं, इसमें माफ नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं माफ करता हूं, चले मेरी बीवी थी तो माफ किया, या इसने मेरे यहां चोरी की चले मैंने माफ किया, तो माफ ही नहीं होती। एक दफा सजा यानी एक दफा साबित हो जाए कि जो हुआ है, तो फिर अल्लाह की हद नाफिज होती। आप पकड़े जाने से पहले कोई तौबा कर ले तो हद साबित हो जाती, और फिर सिर्फ जो है हक अब्द रहता है, यानी जो अगर माल माल चुराया किसी का हक रहता है वो उसे बटाया जाएगा, हद साबित हो जाती है। तो ये लियान का मामला आ गया। अब आगे जो अगले रुकू में वाकया इश्क है, और हुआ ये कि सन 690 में गजवा बनी मुस्तलिक में आप तशरीफ ले गए, और आपके साथ जो है वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के काफिले में थी। होता ये था कि काफिला चलता रहता था, फिर जब थकन हो जाती थी तो पड़ाव डालते थे, तो इसी तरह ये काफिला थका कर रुका, पड़ाव डाला गया, आयशा जो है वो कजा हाजत के लिए जरा चली गई, वहां उनका कोई हार जो है वो गायब हो गया, उसकी तलाश में वक्त लग गया, और इतनी हल्की फुल्की थी कि काफिले के चलने का वक्त आ गया और उन्होंने होदज उठाकर ऊंट पर रख दिया, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि ये खाली। और जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आई है तो काफिला जा चुका था, वहां कोई नहीं था, वो वहीं बैठ गई, उन्हें पता था कि अब आएंगे, जैसे ही पता चलेगा मैं नहीं हूं तो मेरे तलाश में आएंगे, वहीं उनकी आंख लग गई। और पीछे हजरत सफान बिन मौतल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था कि वो पीछे चलते थे काफिले के, कि कोई जरा वा कोई सामान वगैरह तो उठाकर लाए, वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो पहचान लिया, पर्दे के आकमान से पहले देखा हुआ था, तो उन्होंने जोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस पर आयशा की आंख खुल गई, उन्होंने अपना चेहरा छिपा लिया, और इन्होंने जाकर उनके सामने ऊंट बिठा दिया, खुद पीछे होकर खड़े हो गए, आयशा ऊंट पकड़ गई और उसकी रस्सी पकड़कर हजरत सफान बिन मौतल काफिले में शामिल हो गए। बस ये बात थी। इस पर अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन उसे मौका मिल गया, उसने कहा खुदा की कसम ये बचकर नहीं आई है माजल्ला सुनना। और ये बात फिर जो है इससे जो है माशे में तीन तरह के गिरोह हैं। एक गिरोह वो था जो तोहमत लगा रहा था अब्दुल्ला बिन उबई उनमें आगे आगे था, दूसरे कुछ सच्चे मुसलमान थे लेकिन जो इस बातों से इसमें मुतासिर हो गए और उन्होंने इस बातों को ले लिया। उनमें हजरत मिस्ता रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हमना बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनका भी जिक्र आगे आ रहा है। और इसी तरह फिर बड़ी अक्सरियत होती जो खामोश है, तो अम्मा आयशा को पता भी नहीं चला कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। उनकी तबीयत खराब थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर छोड़ दिया। वो कहती है एक दिन मैं कजा हाजत से निकली, उनकी एक बुआ भी थी जो उनका ख्याल करती थी, तो उसे ठोकर लगी, उसने कहा बर्बाद हो मिस्ता। उन्होंने कहा भाई तुम माँ होकर बेटे को जो है बद्दुआ दे रही। तो उन्होंने कहा बेटी तुम्हें नहीं मालूम वो क्या कह रहा है। कहने मुझे नहीं मालूम क्या कह रहा है। तो उन्होंने बताया भाई तुम्हारे बाबू का तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है। तो अम्मा आयशा कहती है मैं तो भूल गई जिस मकसद से निकली थी, आंसुओं की झड़ी मेरी आंखों को लग गई। मैं जाकर नबी अकरम से इस्लाम को बुलाया कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में और आप क्या कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जो है बहुत ही इस पे रंजीदा हूँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो फरमाती है कि मैंने फिर जो है खाना पीना सब मेरा तर्क हो गया और मैं इंतहाई परेशानी में आ गई, यहाँ तक कि अल्लाह ने ये आयात नाज़िल की जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीजगी का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो वाकया बजाय तो उनके खिलाफ था लेकिन ये उनके हक में साबित हो गया और क़यामत तक अब लोग इन आयात को पढ़ते रहेंगे, उनकी पाकीज़गी का जो है वो आके खुदाबंदी ऐलान करते रहेंगे। तो बहरहाल इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आए और ये आयात सुनाई गई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आयशा शुक्रिया अदा करो नबी अकरम का। उन्होंने कहा मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने ये आयात नाजिल किया, थोड़ा सा खफगी दिखाई। तो बहरहाल ये अब हम आगे पढ़ने फरमाया इन्ना लजीना जाओ बिलिस्क, और यकीनन वो लोग जिन्होंने तुहमत लगाई थी उस पर तुम मिनकुम वो एक गुरोह था तुम में से, ला तहसबूहु शर्र लकुम और ना समझो इस मामले को अपने लिए बुरा, बल हो खैरु लकुम बल्कि ये वाकया जो है बेहतर है तुम्हारे लिए, इसकी वजह से बंदे के अहकाम बयान हो गए। लिकुल्लि इम्रिइन मिन्हुम मक्तसबा मिनल इस्म, और हर एक के लिए इसमें इस पूरे वाक्य में वही कुछ है जो कुछ उसने कमाया यानी गुना में से, जिसने जितना हिस्सा लिया उसका उतना ही जो है बबाल उसने गोया अपने लिए करार दिया। आगे काजिफीन की सरजनिश हो रही है वल्लज़ीना तवल्ला किब्रहु मिन्हुम, और जो शख्स सबसे बड़ा जिम्मेदार था इस तोहमत का उनमें से लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए बहुत अजीम अज़ाब। तो ये सुना दिया गया अब्दुल्ला बिन अबी को भाई को कि इसके लिए सबसे बड़ा अज़ाब तैयार है। आगे अब ये तीन तरह के जो गुरु हो गए थे उनमें से खामोश रहने वालों को पहले तंबीह की जा रही है, लौला इस समय तुमू, और क्यों नहीं ऐसा हुआ जब तुमने इस तोहमत को सुना था, जन्नल मोमिनूना वल मोमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरा, तो गुमान करते मोमिन मर्द और मोमिन खवातीन अपने नफ्सों पर नेक, वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन, और वो कहते ये तो खुद ही खुदा झूठ है। और ऐसा हुआ भी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बीवी से ये वाकया पूरा सुना तो कहा कि सिद्दीक की बेटी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा पर तुम सबसे ज्यादा वो जो है पाकीज़ा और ये सरी बोला है, तो इसे अल्लाह ने पसंद किया और कहा कि ये कहना चाहिए था सबको कि सर ही झूठ और गलत है। लौला जाओ अलैही बिअरबाती शुहदा, तो क्यों ना लाए वो इस पर चार गवाह, अगर इतना बड़ा इल्जाम लगाए थे तो ये तो बात है कि फिर उसका गवाह लेकर आओ वरना जबान खामोश रखो। तो फरमाया फइज़लम यातू बिशुहदा, बस जब वो नहीं लाए गवाह फउलाइका इंदल्लाही हुमुल काज़िबून, तो वही अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। अब दूसरा गुरोह जो मुतासिर होने वाला था और जो है वो इस बात को ले रहा था हालांकि वो मुसलमान ही था, तो फरमाया बलाउला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरा, अगर ना होता उस अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत दुनिया और आखिरत में, लमस्सकुम फीमा अफस्तुम फी अज़ाबुन अज़ीम, तो पहुंचता तुम्हें उस बारे में जो तुम जो है जिस बात का चर्चा कर रहे थे एक बहुत अजीम अज़ाब। इस तलक़ौनहु बिअलसिनतिकुम, जबकि तुम ले रहे थे उस बात को अपनी जबानों पर, वतक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम,
और तुम कह रहे थे अपने मुंहों से माला ही सलकों में इल्म,
वो बात जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं था।
वह सबूना हो हयना, और तुम समझ रहे थे उसे मामूली बात। वह इंदल्लाह अजीम,
हालांकि अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम बात थी।
वलौला इस समय तुम हो, और क्यों नहीं जब तुमने सुना था इस बात को। कुल तुम मा यकून लना, तो कह देते कि नहीं है हक हमारा। अन न तकल्लमा बिहाजा,
कि हम कलाम करें इस बात पर, हमें खुद पता नहीं है, हमने देखा नहीं है, तो हम क्यों इस पर बात करें, ये कहना चाहिए था।
सुभाना का हाजा बोहतान नजीम,
और क्यों नहीं तुमने कहा कि पाक है अल्लाह, और ये तो वाकई बहुत बड़ा बोहतान है जो लगाया जाए।
आगे नसीहत बारी ताला है, याइज़ुकुम अल्लाह, अल्लाह नसीहत करता है तुम्हें, अंताउदो ने मिसलही अबदा, कि इस बात की कि तुम दोबारा ऐसा काम कभी ना करो। इनकुन तुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन। आगे फिर जो पहला ग्रुप बोहतान लगाने वाला था उनको वही सुनाई जा रही। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अब खोल कर बयान कर देते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह सबको जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। अब बोहतान लगाने वाला जो पहला ग्रोह उसका जिक्र। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल-फ़ाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि तशीर व बेहयाई की उन लोगों में जो ईमान वाले हैं। लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमा, और तायबीन पर अल्लाह की शफकत है, जो इस सब के बाद जिन्होंने तौबा कर ली उसमें ये सालिम मोमिनीन भी थे, जिनके नाम शुरू में लिए गए वो मुतासिर हो गए थे, लेकिन जब ये आयात आई तो उन्होंने अल्लाह से तौबा की। तो फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतु, अगर ना होता उस अल्लाह का फजल तुम पर उसकी रहमत। وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, और अल्लाह बहुत मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। तो बहरहाल आज भी यही मामला है कि ये जो मुनाफिकीन है और जो दीन दुश्मन है वो मुसलमानों में फहाशी और यादी फैलाना चाहते हैं, और इसके बड़े जो है जदीद नाम है जिन इस्तलाहों से ये काम किया जाता है, उसमें फैशन शो, कैटवॉक, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, फैंसी ड्रेस शो, आर्ट एंड कल्चर, ये इसके नाम पर जो है ये सब बेहूदगियां हो रही होती। तो अल्लाह ताला जो हमें समझ अता फरमाए। मेरे साथ एक हुआ था एक दफा, ये मैं कुछ ऐसे गुलशन अखबार में रहा हूं, वहां एक केबल ऑपरेटर था, तो उसके पास कैनेडा से मेहमान आए, तो बड़ा परेशान आया मेरे पास, जी क्या हुआ? कहने लगा जी वहां एक बच्ची है उनके साथ 14 साल, उसने मेरे घर खाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, वो ईमानी कैफियत देखे, उसने कहा तुम केबल चला दो, ये सारा तुम्हारा पैसा वैसा जो है केबल से। उसने कहा देखा मैं तो खाऊंगी नहीं, सब आराम है तुम्हारी काम दे। तो ऐसा उसने दिखाया, वो परेशान हो गया, आया भाई मैं आराम तो नहीं करवा, मैं कभी ये सारा काम तो खराब है और इसमें जो आमदनी है वो जायज नहीं है, सही कह रही हो। तो ऐसे भी ईमान वाले होने चाहिए, तो अल्लाह ताला हमें भी जो है ये ईमान अता फरमाए। और ये असल में बात कहने की ये थी कि ये भी ख्वाहिशी फैलाने का जरिया ना बने, और इस चेन में कहीं हमें जो है होना नहीं चाहिए। जिस तरह चोरी का, लूट का माल हराम है, सूद का माल हराम है, तो इसी तरह इस तरह बेहयाई फैलाकर जो लोग कमा रहे हैं वो भी नाजायज आमदनी, और वो जायज नहीं है, और बल्कि उल्टा अल्लाह उसके रसूल के गजब का जरिया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन तमाम इस तरह की चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आगे शैतान का रास्ता बयान हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, पैरवी ना करो शैतान के नक्शे कदम की। वमन यत्तबि खुतुवाति शैतान, और जो कोई पैरवी करेगा शैतान के नक्शे पा की, फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर, तो बेशक वो तो हुक्म देता ही बेहयाई का और नाफरमानी का। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर ना होता उस अल्लाह का तुम पर फजल और उसकी रहमत, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो कभी भी पाक ना रह सकता तुम में से कोई भी कभी। तो ये आदमी की कोई शान नहीं है कि वो इन चीजों से बच जाए, ये शैतान के सबसे खतरनाक वालों में से वार है, बेहयाई और यानी इसमें लगा देना। तो अल्लाह ही की तौफीक से आदमी बच सकता है। हम पहले सूरह यूसुफ भी पढ़ चुके कि अल्लाह अपने मुखलस बंदों को फिर बचा लेता है, वो इस तरह की बेहूदगियों गंदगियों में नहीं पड़ते। लेकिन अगर हम नहीं बच पा रहे और हम इसी तरह की चीजों में आलूदा है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की वो रहमत वो हमें हासिल नहीं है, और शैतान के हाथों में खेल। एक नेक इंसान जो है वो अमूमन हराम से बचता है, हराम कमाई से बचता है, चोरी नहीं करता, डाके नहीं डालता, सूद नहीं लेता, लेकिन वो फिर शैतान के पास दूसरा ये जाल है वो इसमें लगा देता है। आदमी समझ जाता है मैं बहुत नहीं तो उसकी सारी नेकी खत्म हो जाती। और वो हदीस हमने पढ़ी है कि ईमान और हया साथ साथ है, एक उठता है दूसरा भी उठा लिया जाता है। तो दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हम सबको ये तस्किया अता फरमाए और हमें जो है जस्ती अता फरमाए। तो फरमाया वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, और लेकिन अल्लाह ही पाक करता है जिसे वो चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। तरगीब अफू व दरगुजर भी है। अब इसमें बात इस तरह थी कि हजरत मिस्ता गरीब आदमी थे, उनके पूरे खानदान की किफालत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे। जब उन्हें पता चला कि ये आदमी मैं इसकी मदद करता हूँ, मेरे रिश्तेदारों में से यही आगे बढ़कर मेरी बेटी पर तोहमत लगाता, तो उन्होंने जो है इरादा कर लिया कि मैं आइंदा इसकी मदद नहीं करूंगा। तो अक्सर जो मुफस्सिरीन है उन्होंने यही शान नज़ूल बयान की, अब शायद की यानी तरगीब अफू व दरगुजर है। फरमाया वला या अतली उलिल फजली मिनकुम वसाह, और नहीं कसम खानी चाहिए तुम में इज्जत वाले लोगों को और मकदूरत रखने वाले खुशहाल लोगों को, उलिल कुर्बा, इस बात से कि वो दे माल रिश्तेदारों को, वल मिस्कीना वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, और मिस्कीनों और हिजरत करने वालों को अल्लाह की राह में, वल याफू वल यस्फहू, बस उन्हें चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर कर दें। अला तुहिब्बूना यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि माफ कर दे अल्लाह तुमको। तो ये जब आयत आई है आगे फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला मुसलसल रहम करने वाला है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब था बला या रब्बना अना नुहिब्बू अना नुहिब्बू, क्यों नहीं है मैं अल्लाह मैं ये पसंद करता हूँ, मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ करे। चुनाचे उन्होंने दोबारा से वो जो किफालत का मामला था वो जारी कर दिया और जो माली इमदाद करते थे वो करते रहे। आगे तफसीली वईद आ रही है ऐसे लोगों के लिए, इन्नल्लज़ीना यर्मूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, यानी वो लोग जो इस बुराई में मुलविस थे उनके लिए तफसीली वईद, और यकीनन जो लोग तोहमत लगाते हैं पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर, लुअनू फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब बहुत अजीम अजाब, यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, और वक्त वही जिक्र हो रहा है जिस दिन शहादत देंगी उन पर उनकी जबाने, वाईदीहिम वाजुलुहुम, और उनके हाथ और उनके पांव, तो उनका खुद वजूद बता रहा होगा कि इन्होंने क्या क्या गलत काम किए इनसे, बीमा कानू या अमलून, उन तमाम अमाल की जो करते रहे। तो ये हम समझ रहे हमारा जैसा ना, लेकिन ये अल्लाह का है, ये अल्लाह की अमानत है जो हमारे पास, तो हाथों से पैरों से जबान से जो गुनाह किए होंगे ये बताएंगे आजा कि हमसे ये गुनाह किए हैं करवाए हैं साथ में। तो ये और किसी गवाही की क्या होगी जब इंसान का अपना वजूद उसके खिलाफ गवाही दे रहा हो। तो फरमाया यौम अज़ीम वफ़ी हिमुल्लाहु दीनहुमुल हक, और उस दिन पूरा देगा उन्हें अल्लाह बदला जो है वो हक के मुताबिक, वयालमून अन्नल्लाहु वल हक्कुल मुबीन, और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही बरहक है और वो बिल्कुल वाज़े हक पर रहने वाला है। आगे यानी इसमें यह समझ लें कि बुखारी और मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि सात गारतगर गुनाहों से बचो, यानी तबाह बर्बाद करने वाले सात गुनाह, और फिर आपने वो गुनवाए, नंबर एक शिर्क, नंबर दो सहर जादू करना करवाना, नंबर तीन कत्ल कर देना, नंबर चार सूद, नंबर पांच माले यतीम खा जाना, नंबर छह मैदान कताल में पीठ दिखाकर भाग जाना, और नंबर सात भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना, उन्हें पता ही नहीं होता क्या बात है और उनके बारे में ऐसी चीजें मंसूख कर दी जाती, और ये बड़ी चलती अब तो बिकते हैं अखबार में इस तरह की चीजें, होता तो कुछ नहीं उसे नमक में ऐसे लगा के जो बातें करते हैं, और खानदानों में भी जो भोली भाली बच्चियां उसके कहा जाता है भोला ना हमें तो बहुत तेज है उसकी तरफ से लगा दिया कि इसके उससे ताल्लुक आते हैं, हम इसे शुगल समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक और बड़ा बड़ी वईद है, कज़फ की सजा है, यहां तो इस्लामी निजाम ही नहीं है, जिस पे मर्जी जो मर्जी कह दो, वरना लेकर आओ चार गवाह, वरना ऐसी बात कही क्यों है जबान से। तो ये कोई मामूली चीजें नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें बहरहाल अपने अल्फाज की अपने आमाल की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अब नापाक औरतें और पाक मर्दों यानी अब नापाकी और पाकी की बड़ी बड़ी मिसाल बयान हो रही है। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیباتوں للطیبین، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ بری ہیں ان تہمتوں سے جو وہ تہمت لگانے والے کہتے ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے، بہت عزت والی روزی ہے۔ تو اصل میں اسی میں بات یہ ہے کہ بری عورتیں برے مردوں کے پاس ہوتی ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے پاس ہوتی ہیں، اور بری عادتیں برے لوگوں کے لائق ہوتی ہیں، اور پاک عادتیں پاک لوگوں کے لائق ہوتی ہیں۔ اسی طرح بری باتیں برے لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں، اور پاک باتیں پاک منہ سے نکلتی ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں ہم کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کیسی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور کسے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے جو ہے پردے سے متعلق احکامات آ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں لیں گے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ایمان حقیقی کی بہت عمدہ زبردست ایک مثال آ رہی ہے، بندہ مومن کے دل میں جلتے ہوئے چراغ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے، ایمان حقیقی کا وہ دیا ہم سب کے سینوں میں منور فرمائے۔ انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ دعا فرما لیجیے، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما، اس قرآن کو ہم امام بنا دیجئے، نور بنا دیجئے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللهم ذکرنا منهما نسينا، اللہ ہمیں یاد کرا دیجئے اس میں سے جو ہم بھلا بیٹھے، وعلمنا منهما جهلنا، اور ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے، وارزقنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات کے حصوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی، وجعله لنا حجتا یا رب العالمین، اس قرآن کو ہمارے اپنی حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار، آمین یا رب العالمین۔